शरद ऋतु के शिकार की पूर्व संध्या पर झाओ बुजियांग ने लगन से साधना की। सच्चे यांग हॉट सूत्र की उसकी समझ गहरी होती गई। लियू रुयांग की मदद से भले ही उसकी ताकत अभी भी रैंक 6 मार्शल कलाकार की थी, लेकिन अब उसे रैंक 5 के आम विरोधियों से डर नहीं लगता था।
इसके अलावा लिंग किंगसू से सीखी गई मिरर फ्लावर वाटरमून तकनीक ने उसकी खुद की रक्षा करने की क्षमता को काफी बढ़ा दिया। इसी समय उनके पिता के व्यक्तिगत निर्देश से उनकी मैं ही सर्वोच्च हूँ तलवार तकनीक को नई प्रगति करने का अवसर मिला। शरद ऋतु के शिकार के करीब आने पर अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। भयानक रूप से मजबूत वह किसी को भी हरा सकता था सिवाय उन लोगों के जिन्हें वह नहीं हरा सकता था। पिछले कुछ दिनों में ली युनई भी अक्सर वांग मनों में जाते थे। उनके मार्गदर्शन में ली युनई की पवित्र ड्रैगन कला ड्रैगन रोअर ने बहुत तेजी से प्रगति की, जबकि झाओ वुजियांग ने खुद पहले से ही पवित्र ड्रैगन कला ड्रैगन फॉर्म के दूसरे स्तर की खेती शुरू कर दी थी और ड्रैगन क्लॉ हैंड में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने एक ही उद्देश्य के लिए इतनी लगन से साधना की, अच्छी तरह से जीवन जीना। वह गहराई से समझते थे कि उनके जैसे खलनायक को अपनी इच्छानुसार कुचले जाने से बचने के लिए नायक की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। समय उड़ गया और पलक झपकते ही शरद ऋतु के शिकार का समय आ गया। महान जिया राजवंश के तियान्यू के 13वें वर्ष में 14 सितंबर बलिदान आशीर्वाद के लिए प्रार्थना और पशुधन अधिग्रहण के लिए उपयुक्त दिन था। एक भव्य और शक्तिशाली जुलूस शाही शिकारगाह की ओर बढ़ा। शिकार के मैदान इंपीरियल सिटी की उत्तरी चट्टान के उत्तर में एक पहाड़ी जंगल में स्थित थे जो इंपीरियल सिटी से ऊंचाई में काफी अंतर पर था। उत्तरी चट्टान पर खड़े होकर कोई भी पूरे शिकार के मैदान को देख सकता था और हर चीज का पूरा नजारा ले सकता था। तियायो का 13वां वर्ष, जिया चेन ड्रैगन का वर्ष, महान जिया राजवंश के भाग्य से संबंधित वर्ष था। चाहे वह 7वीं राजकुमारी ली युनरुई की शादी हो या आज का शरद ऋतु का शिकार यात्रा कार्यक्रम, महान जिया राजवंश के भाग्य से संबंधित था। इसलिए महान जिया राजवंश की समृद्धि और लोगों के साथ खुशी साझा करने वाले सम्राट की उदारता को प्रदर्शित करने के लिए ली ज़ायुआन ने शाही रईसों के अलावा राजधानी के भीतर से युवा प्रतिभाओं और धनी व्यापारियों को इस शरदकालीन शिकार में भाग लेने की विशेष अनुमति दी। इसके अलावा पिछले शरदकालीन शिकार में जिन बहुमूल्य जंगली जानवरों को सौंपना पड़ता था अब वे शिकारियों के ही होंगे, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, और उन्हें सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि प्रकृति के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए इस शरदकालीन शिकार में आग के हमलों की अनुमति नहीं थी। वसंत का अर्थ है पालन पोषण, इसलिए गर्भवती जंगली जानवरों का शिकार करना वर्जित है। ली युनरुई गाड़ी में बैठ सकती थी लेकिन वह झाओ वुजियांग के साथ घोड़े पर सवार होना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बाहों में झुक गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में वह खुशी से उछल पड़ी और खुशी से उछल पड़ी। झाओ वुजियांग के साथ यह उनकी पहली सैर थी और यह एक शरद ऋतु का शिकार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। उसने रास्ते में झाओ वुजियांग को शिकार के मामलों के बारे में विस्तार से बताया ताकि झाओ वुजियांग को प्रथम स्थान जीतने में मदद मिल सके। गर्मी का मौसम पौधों के लिए होता है, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जो आम लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें घायल कर देते हैं। शरद ऋतु में शिकार करना भी शरद ऋतु में हत्या करना है, विशेष रूप से जंगली जानवरों को मारना जो मुर्गी पालन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये शरद ऋतु का शिकार एक क्षेत्र में शिकार नहीं है बल्कि जंगल में है, इसलिए कोई वर्जना नहीं है। जब तक शिकारी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक बाकी सब ठीक है। ली युनरुई ने झुककर ली युनरुई की कही हुई हर बात एक सांस में पूरी कर दी। क्या मैंने तुम्हें इतना बातूनी होने के लिए कहा था? ली युनरुई ने भौहें सिकोड़ी, मुंह बनाया और अपने भाई को तीखी नजरों से देखते हुए शिकायत की। हमारा पीछा मत करो, ली युनई ने मुस्कुराते हुए कहा। महारानी जानती हैं कि आप शरारती हैं और संभवतः शिकार के मैदान में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन इस शरदकालीन शिकार में चाहे वह शाही राजकुमारियां हों या उन प्रमुख परिवारों की युवतियां, उन्हें शिकार के मैदान में कदम रखने की अनुमति नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। महारानी डोवगर ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था। ली युनरुई ने मुंह बनाया और झाओ वुजियांग की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि झाओ वुजियांग उसके लिए बोलेगा। झाओ वुजियांग ने सिर हिलाया। ली युनई सही कह रही है, ये बहुत खतरनाक है। चाहे जंगली जानवर हों या इंसान, वे खतरा पैदा कर सकते हैं। देखा, ली युनई ने विजयी भाव से मुस्कराते हुए देखा कि झाओ वुजियांग उसके लिए बोल रहा है। उसने इधर उधर देखा और झाओ वुजियांग की ओर एक छोटी पुस्तिका फेंकी। अंदर शिकारगाह का नक्शा है। जब यूरिन ने सर्वेक्षण किया और सीमाओं को विभाजित किया तो मैंने उनसे इसे मेरे लिए खींचने को कहा। यूरिन, पहाड़ों, झीलों और उद्यानों के प्रभारी अधिकारी, तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? ली युनरुई ने नाकभान से कोड़ी। उसने झाओ वुजियांग के लिए पहले ही नक्शे की एक प्रति प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये यूरिन द्वारा बनाया गया नया नक्शा नहीं था बल्कि पिछले साल का नक्शा था। वैसे भी पहाड़ और जंगल ज्यादा नहीं बदलेंगे। झाओ बुजियांग मुस्कुराए और बोले, परिवार का होना अच्छी बात है। शिकार के मैदान में मिलते हैं। ली युनई ने घोड़े के पेट पर अपने पैर दबाए, घोड़े को आगे बढ़ाया और शाही परिवार की पंक्ति में शामिल हो गया। ली युनई ने अच्छे इरादे रखे थे, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनके इरादे बुरे थे। झाओ बुजियांग को घृणा भरी नजरों का एहसास हुआ। उसने नजर घुमाई और पाया कि वह लॉन्गझान था जो कुछ ही दूरी पर था। लॉन्गझान ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लॉन्गझान उसे नीचे लाकर मार डालना चाहता था और वह निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। शिकार के मैदान की ओर जाने वाला जुलूस मोटे तौर पर तीन समूहों में विभाजित था। सबसे आगे वाले समूह में शाही परिवार की पुरानी पीढ़ी या उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे, साथ ही हरम की रखेलें भी शामिल थीं। पुरानी पीढ़ी के लोग खूब बातें कर रहे थे। झाओ बुजियांग दूर से कई अधिकारियों की आवाजें सुन सकता था जो ली ज़ायुआन की तारीफ कर रहे थे, और बेशक उनके पिता झाओ टिंगजियाओ की तारीफ करने वाली आवाजें भी थीं। उनके पिता को उनकी सैन्य शक्ति से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनकी नामात्र शक्ति अब प्रथम श्रेणी के ड्यूक की थी, और ली ज़ायुआन के साथ उनके शपथबद्ध भाईचारे के साथ उनके पिता बाहरी तौर पर शाही परिवार से अधिक करीब थे। केवल उसके पिता ही ली ज़ायुआन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे, और दोनों हंसते और बातें करते थे। जहां तक हरम की रखेलों का सवाल है, हालांकि वे 100 फूलों की तरह खिली हुई दिखती थीं, एक दूसरे को बहने कहती थीं, झाओ बुजियांग, जो मानव स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था, एक नज़र में ही साजिश और अंदरूनी लड़ाई को समझ सकता था। 10 लोगों के पास 18 दिमाग थे। बेशक जिस चीज पर झाओ बुजियांग ने सबसे अधिक ध्यान दिया वह थी यून जिनशु, जो आज शेंग जुआंग पहने हुए थी और उपपत्नी के रैंक के करीब थी। उन्होंने आज के शरदकालीन शिकार में यून जिनशु को देखने की उम्मीद नहीं की थी, और वह तो अग्रिम पंक्ति में थी और उसका दर्जा भी ऊंचा था। यून जिनशु किस प्रकार की चाल चल रहा था? तीनों समूहों में मध्य समूह झाओ बुजियांग जैसी युवा पीढ़ी का था, जिनमें से लगभग सभी शिकारी थे जो शिकार के मैदान में प्रवेश करने वाले थे। हालांकि झाओ बुजियांग के विपरीत अन्य युवा पीढ़ी 3 या 5 के समूहों में थे, जो संभवतः एक साथ शिकार करने के लिए छोटे घेरे बनाते थे। झाओ बुजिंग के साथ जाने के लिए केवल ली युनरुई ही तैयार थे, और ली युनई भी, जो नक्शा देने के लिए आई थीं। वह थोड़ी शांति और चुप्पी पाकर खुश था। आराम से ली युनरुई को चिड़िया की तरह चहकते हुए सुन रहा था, जो बिना थके उसके साथ अपनी खुशियां साझा कर रही थी। शायद इस खोज में भाग लेने वाले अन्य युवा प्रतिभाओं ने झाओ बुजियांग को नीची नजर से देखा। लॉन्गझान और ली युनई के अलावा झाओ बुजियांग को आंकने वाली ज्यादातर निगाहें तिरस्कार और उपहास से भरी थीं। लॉन्गझान अलग था। लॉन्गझान बस उसे मारना चाहता था। जहां तक अंतिम समूह का प्रश्न है, इसमें धनी व्यापारी और कुछ बलि सामग्री ले जाने वाले कर्मचारी शामिल थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद जुलूस अंततः शाही शिकारगाह पर पहुंचा। झाओ बुजियांग को केवल शरद ऋतु का दृश्य, उदासी का दृश्य दिखाई दे रहा था। जुलूस रुक गया और कुछ बलि सामग्री ले जाने वाले कर्मचारी जल्दी से आगे बढ़े, निर्देश पूछने के लिए घुटनों के बल बैठे और ली ज़ायुआंग की सहमति से पहले से व्यवस्थित वेदी में कुछ सामान जोड़ दिया। जब एक दरबारी अधिकारी ने एक भूतिया और रहस्यमय बलि नृत्य किया जिसे झाओ बुजियांग समझ नहीं सका, तो ली ज़ायुआंग घोड़े से उतर गया। सभी ने उसका अनुसरण किया और घोड़े से उतर गए। ली ज़ायुआंग ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत ही आधिकारिक अंश कहा, जिसमें स्वर्ग को उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने, महान जिया को आशीर्वाद देने तथा अच्छे मौसम के साथ 7 वर्ष और 13 वर्ष बिताने के बारे में कुछ कहा गया। फिर शरद ऋतु का शिकार शुरू हुआ। भीड़ ने जयकारे लगाए। झाओ बुजियांग ने प्रतीकात्मक रूप से 2 बार ओह कहा। ली युनरुई ने उसे गुंडे की तरह व्यवहार करने के लिए डांटा, जैसे कि वह जागा ही नहीं था, और उसे उत्साहित होकर भीड़ पर हावी होने के लिए कहा। ली ज़ायुआन ने शरदकालीन शिकार की शुरुआत की घोषणा की और फिर घोषणा की कि जो भी आज के शरदकालीन शिकार में शीर्ष स्थान जीतेगा वह ल्यूजियांग साम्राज्य की राजकुमारी यून जिनशु से शादी कर सकता है और ल्यूजियांग का जीवनसाथी बन सकता है। भीड़ ने जयकारे लगाए। झाओ बुजियांग ने 2 बार असमंजस में आह कहा, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और यून जिनशु के इरादों का अनुमान लगा लिया। यून जिनशु ल्यूजियांग को पुनः प्राप्त करना चाहती थी और वह संभवतः इस शरदकालीन शिकार का उपयोग लॉन्गझान को उससे विवाह करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहती थी। आखिरकार मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉन्गझान की ताकत ने उसे जीतने का सबसे बड़ा मौका दिया। पुरानी पीढ़ी भी सम्राट के अचानक निर्णय से आश्चर्यचकित थी और इसके बारे में अटकलें लगा रही थी, लेकिन केवल कुछ ही लोग सच्चाई जानते थे। शरदकालीन शिकार की पूर्व संध्या पर यून जिनशु ल्यूजियांग की राजकुमारी के नाम पर आत्मसमर्पण करने के इरादे से सम्राट से मिली, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह ग्रेट जिया के साथ विवाह गठबंधन बनाएगी और सम्राट उसके लिए एक अच्छा पति चुनेगा। ये शरद ऋतु का शिकार था, इसलिए सम्राट ने युन जिनशु के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि जो भी शरद ऋतु के शिकार में शीर्ष स्थान जीतेगा वह उसका पति युन जिनशु होगा, और दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए उसे उससे शादी करने का आदेश दिया जाएगा। ली ज़ायुआन ने अनुष्ठान मंत्रालय द्वारा सौंपा गया लंबा धनुष लिया और लगातार 3 तीर छोड़े जो सभी निशाने पर लगे। 100 कदम दूर से विलों को भेदते हुए शिकार के मैदान के बाहरी किनारे पर 3 जंगली जानवरों को मार गिराए। भीड़ की चापलूसी के बीच ली ज़ायुआन का चेहरा परोपकारी मुस्कुराहट से भरा था क्योंकि उसने शिकार के मैदान की ओर धनुष का इशारा किया था। शरद ऋतु हत्या और शिकार खेल शुरू करते हैं। युवा शिकारियों ने अपने घोड़ों को चाबुक से दौड़ाया और पूरे उत्साह के साथ शिकार के मैदान में दौड़ पड़े। ली युनरुई ने झाओ वुजियांग को एक विदाई चुंबन दिया और अनिच्छा से उतर गए। झाओ वुजियांग ने अपने घोड़े को तेज किया और धीरे धीरे शिकार के मैदान की ओर भागा। उसका लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह केवल उस युवा राजा जानवर को पकड़ना चाहता था जो मूल उपन्यास में मूल रूप से लॉन्गझान का था। झाओ वुजियांग और अन्य युवा शिकारी शिकार के मैदान में दौड़ पड़े। ली ज़ायुआन, झाओ टिंगशियाओ और अधिकारियों का एक समूह शिकार महल की ओर चल पड़ा। शरदकालीन शिकार न केवल एक परंपरा है, बल्कि महान जिया राजवंश की शक्ति और जीवन शक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका भी है। जीवन शक्ति की बात युवा पीढ़ी के लिए छोड़ दी गई है। पुरानी पीढ़ी अपने जीवन के अधिकांश समय कड़ी मेहनत करने के बाद मौज मस्ती करने में क्या बुराई है? मुझे आश्चर्य है कि कौन सा युवक इस शरदकालीन शिकार में शीर्ष पुरस्कार जीतेगा और रियुकु साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। दयालु चेहरे वाले एक वृद्ध मंत्री ने तेज दौड़ते घोड़ों और धूल उड़ाते युवाओं को देखा, जिससे उन्हें अपनी युवा शक्ति और ऊर्जा की याद आ गई। अन्य लोगों ने भी उनकी भावनाओं का समर्थन किया। शिकार मुख्यतः घुड़सवारी तीरंदाजी की प्रतियोगिता है। घुड़सवारी तीरंदाजी कौशल की बात करें तो इस बार शिकार के मैदान में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ी में जनरल लॉन्गझान को शीर्ष 3 में होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि लॉन्गझान के पास प्रथम स्थान जीतने का अच्छा मौका है। क्या मंत्री यू का सबसे बड़ा बेटा लॉन्गझान जितना अच्छा नहीं है? मंत्री यू युद्ध मंत्रालय के प्रभारी हैं और उनका बेटा भी बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। पिछले साल सर्दियों के शिकार के दौरान उसने दूसरे सबसे अधिक जंगली जानवरों का शिकार किया था। प्रथम स्थान पर प्रथम राजकुमार था, लेकिन इस वर्ष प्रथम राजकुमार आधिकारिक कर्तव्यों के कारण भाग नहीं ले सका। मंत्री यू के बेटे को और कौन दबा सकता है? लॉन्गझान आखिरकार एक उभरता सितारा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लॉन्गझान साहित्यिक और मार्शल दोनों है। हालांकि वह एक उभरता हुआ सितारा है, लेकिन दरबार में कौन नहीं जानता कि वह सक्षम है और उसके पास मार्शल आर्ट का अच्छा ज्ञान है। उसे झाओ वुजियांग ने पीटा था। उस दिन की प्रतियोगिता सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला था। लॉन्गझान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्या उसे झाओ वुजियांग ने पीटा था या नहीं, वारिस झाओ की ताकत राजकुमार में निहित है। आप ये कह रहे हैं कि वह हार गया या नहीं? आप, शरद ऋतु का शिकार एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं है, ये घुड़सवार तीरंदाजी पर जोर देता है। ठीक है ठीक है, आप दोनों सहकर्मियों को अतीत में घटी किसी बात पर इतनी तीखी बहस क्यों करनी पड़ रही है? मुझे विश्वास है कि महामहिम छठे राजकुमार इस बार शीर्ष पुरस्कार जीतने में सक्षम होंगे, राजस्व मंत्रालय के उप मंत्री ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। जब महामहिम ने 3 बाण छोड़े तो प्रत्येक बाण अपने निशाने पर लगा और जानवर दब गए। मैंने देखा कि छठे राजकुमार की धनुष के साथ मुद्रा कुछ हद तक महामहिम की मुद्रा के समान थी। इस समानता के साथ शिकार के मैदान में प्रवेश करना दैवीय सहायता के समान होगा तथा पूरी तरह से लदे हुए वापस लौटना एक स्वाभाविक और आसान कार्य होगा। मास्टर कियान ने जो कहा वह स्वाभाविक रूप से वही है जो मैं कहना चाहता था। जनरल लॉन्गझान वास्तव में उत्कृष्ट हैं, लेकिन उन राजकुमारों पर सम्राट का गहरा अनुग्रह है। ऐसे प्रभाव के तहत वे स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद प्रतिस्पर्धी हैं। वास्तव में चाहे वह जनरल लॉन्गझान हो या वे राजकुमार, इससे क्या फर्क पड़ता है कि शीर्ष पुरस्कार कौन जीतता है। वे सभी महामहिम द्वारा बहुत प्यार किए जाते हैं और उनके द्वारा मूल्यवान माने जाते हैं। जो कोई भी शीर्ष पुरस्कार जीतता है वह महामहिम के प्यार के कारण होता है। यह सही है यह सही है, अधिकारी सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। ली ज़ायुआन बाघ की खाल से ढकी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा परोपकारी मुस्कान से भरा हुआ था। हालांकि वह झाओ टिंगशियाओ से बात कर रहा था, लेकिन उसने अधिकारियों की आवाजें भी सुनी। उसने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना और स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शीर्ष पुरस्कार कौन जीतेगा। मुझे नहीं पता कि शीर्ष पुरस्कार कौन जीतेगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि कौन सबसे अधिक शांत और सहज है। वारिस झाओ का धैर्य अद्वितीय है। झाओ वुजियांग वास्तव में शांत है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झाओ वुजियांग ने पहले ही हार मान ली है। अकेले ही घुड़सवारी करना, अन्य युवाओं के साथ मिलकर काम न करना, लेकिन मैं वारिस झाओ को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार वारिस झाओ को खुद का आनंद लेने की आदत है। वह हर साल शिकार में भाग नहीं लेता है और वह घुड़सवारी तीरंदाजी में अच्छा नहीं है। शिकार के मैदान में प्रवेश करके वह अन्य युवाओं के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये जानते हुए कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, उम्मीदों से भरा होने के बजाय इसे शरद ऋतु के दृश्यों का आनंद लेने के लिए शिकार के मैदान में प्रवेश करने के रूप में मानना बेहतर है, ताकि वह असफलता के बाद बेहतर महसूस कर सके। निश्चित रूप से झाओ वुजियांग अकेले दूसरों के संयुक्त प्रयासों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। अधिकारी खुलकर बातचीत करते रहे। झाओ टिंगशियाओ ने गर्म शराब का घूंट लिया। स्वाभाविक रूप से उसने अधिकारियों की अपने प्यारे बेटे झाओ वुजियांग के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनी। अब जब वो अस्थायी रूप से पक्ष से बाहर हो गया है तो ये अधिकारी वुजियांग का मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं। शायद कुछ अधिकारियों के दिलों में वह अब शिकार के मैदान में उन बूढ़े दंतहीन बाघों की तरह हैं, जिनमें अभी भी कुछ शक्ति बची हुई है, लेकिन उनके शब्दों में उपहास का भाव छिपाना असंभव नहीं है। वुजियांग के प्रथम स्थान जीतने की संभावना नहीं है। एक पिता के रूप में वह इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अधिक उम्मीदें नहीं हैं। वह केवल यही आशा करते हैं कि वुजियांग स्थिर रहेगा, एक समय में एक कदम उठाएगा, खतरे से बचेगा और शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। और शायद पिता और पुत्र एक ही सोच रखते हैं। शिकार के मैदान में कदम रखते समय वुजियांग की इत्मीनान भरी अभिव्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया। उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा न करना अच्छी बात है, अपनी तीक्ष्णता को नियंत्रित करना और चोट लगने से बचना जानना। शिकार के मैदान के अंदर बाहरी घेरा अचू झाओ वुजियांग ने अपने कपड़े कसते हुए छींकी। शरद ऋतु की हवा तेज और ठंडी थी। लॉन्ग झान और युवा प्रतिभाओं का समूह इतनी तेजी से भाग रहा था कि वह केवल घोड़ों द्वारा छोड़े गए धुएं को ही देख पा रहा था, जो कोहरे की तरह पीले और धूल भरे थे। उसने धीरे से अपनी काठी से एक नक्शा निकाला। नक्शे की तीन प्रतियां थीं, एक युन रुई के लिए, एक ली युनई के लिए और एक सबसे बड़ी राजकुमारी के लिए। झाओ वुजियांग ने सबसे बड़ी राजकुमारी द्वारा दिया गया नक्शा फैलाया। यह नक्शा सबसे विस्तृत था, आखिरकार यह विद्रोह के लिए सबसे अधिक संभावना थी।
कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने शिकारगाह की दिशा पहचान ली और उसे अपनी स्मृति में मूल उपन्यास की विषय वस्तु के साथ जोड़कर उसने पशु राजा की मांद की ओर जाने वाली दिशा की खोज की। मूल उपन्यास में लांग झान को प्रारंभिक कुत्ते लेखक द्वारा जानवर राजा की मांद में संयोग से एक किशोर जानवर राजा को खोजने के लिए व्यवस्थित किया गया था। सही दिशा पाकर झाओ वुजियांग धीरे धीरे नक्शे पर चिन्हित रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह दूर के पहाड़ों और जंगलों से आती धनुष बाणों की ध्वनि, उड़ते हुए तीरों की सनसनाती ध्वनि, साथ ही लोगों की दहाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट को धीरे धीरे सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग झान और अन्य युवा प्रतिभाओं ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी, न केवल शिकार करना बल्कि लोगों पर हमला भी करना। उसने अपने घोड़े को पहाड़ों और जंगलों के बाहर एक पेड़ से बांध दिया और अकेले ही जानवर राजा की मांद में चला गया। यदि घोड़ा उसके साथ जाता तो उसकी गति बहुत तेज होती, लक्ष्य बहुत बड़ा होता और उसके लिए कार्य करना सुविधाजनक नहीं होता। वह पहाड़ों और जंगलों के बीच से होते हुए रास्ते पर चल पड़ा। हाल के दिनों में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जो उछाल आया था, उसे देखकर उसकी गहरी समझ को तुरंत एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ नहीं पता और धीरे धीरे चलता रहा। जब वह पहाड़ों और जंगलों के बीच सड़क पर एक दोराहे पर पहुंचा तो उसने दिशा पहचानने के लिए नक्शा निकाला। जब वह नक्शा देख रहा था तभी पीछे से एक तेज हथियार के हवा में फटने की आवाज आई, साथ ही हत्या की धमकी भी दी गई। वह अचानक घूमा, अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया। तलवार की ऊर्जा अद्वितीय थी। चाकू पकड़े हमलावर की बांह पर सीधे वार किया। एक कर्कश ध्वनि हुई, पहाड़ों और जंगलों में हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। हमलावर का हाथ उलट गया, जिससे खून से सनी हड्डी दिखाई देने लगी और उसके हाथ में पकड़ा छोटा चाकू फिसल कर गिर गया, जिससे दर्दनाक चीख निकली। झाओ वुजियांग ने हमलावर के आक्रामक प्रहार को फिर से चकमा दिया और उसने हमलावर के दाहिने घुटने पर लात मारी। हमलावर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर पीली मिट्टी की खूनी धार फैल गई। झाओ वुजियांग के चेहरे पर उदासीनता थी और वह आगे बढ़ा, हमलावर के फ्रैक्चर वाले और उल्टे दाहिने हाथ पर पैर रख दिया, जिससे हमलावर दर्द से चीख उठा। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, झाओ वुजियांग ने अपने पैरों के नीचे जोर लगाया, जिससे हमलावर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हल्के से कहा, आप स्विफ्ट कैवेलरी कैंप से हैं, है ना? लॉन्ग झान के अधीनस्थ। हमलावर का चेहरा सोने के कागज की तरह सफेद हो गया था। वह हिलने में असमर्थ था, उसके मुंह से खून बह रहा था और वह बोल नहीं पा रहा था। वास्तव में उसे जनरल लांग द्वारा झाओ वुजियांग को रोकने के लिए भेजा गया था। जनरल लॉन्ग झाओ वुजियांग की गैर प्रतिस्पर्धी स्थिति से सहज नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे झाओ वुजियांग को रोकने और झाओ वुजियांग की शिकार प्रगति को बाधित करने के लिए कहा। कौन जानता था कि झाओ बुजियांग इतना संवेदनशील था। उसने उसके छिपे हुए हमले का बचाव किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर आप नहीं बोलते हैं तो भी कोई बात नहीं। झाओ बुजियांग ने अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और लॉन्ग झांग के अधीनस्थ के एक्यूपॉइंट्स पर इशारा किया और फिर उसने मुड़े हुए हाथ को पकड़ लिया और मुस्कुराया। मैं आपकी मदद करूंगा। आह, लॉन्ग झांग के अधीनस्थ ने विलाप किया। गंभीर दर्द ने उसे चुपचाप रोने पर मजबूर कर दिया। झाओ बुजियांग ने अपना हाथ आगे खींचा जिससे खून के धब्बे पूरे शरीर पर फैल गए। वारिस, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। आह, वह दया की भीख मांगता रहा। उसकी बांह से अधिक खून बह रहा था और उसके एक्यूपॉइंट बंद हो गए थे जिससे वह विरोध करने में असमर्थ हो गया। ठीक है, शिकार के मैदान के नियमों के अनुसार आप लोगों को नहीं मार सकते। झाओ बुजियांग मुस्कुराया, एक पत्थर उठाया, उसे पास ही में दो शेरों पर फेंका जो एक जंगली हिरण को खा रहे थे और फिर उसने उस व्यक्ति का हाथ छोड़ दिया। बाकी रास्ता आप खुद ही चल सकते हैं। शेर को चोट लगी, उसका खाना खराब हो गया। उसने झाओ बुजियांग को देखा, खून की गंध सूंघी और तेजी से भाग गया। झाओ बुजियांग फुर्ती से आगे बढ़ा, पेड़ पर चढ़ गया और अपने गंतव्य की ओर चढ़ता रहा। उसके पीछे हमलावर की हताश दहाड़ और चीख सुनाई दी। झाओ बुजियांग ने बगल से देखा, हमलावर खून से लथपथ था और शेर उसके साथ खेल रहा था। शेर ने दुर्लभ शिकार को देखा और प्रत्येक हथेली को जोर से नीचे पटका जिससे हमलावर की सांस कुछ हथेलियों से टूट गई और वह अब आवाज नहीं कर सका। झाओ बुजियांग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दया से नहीं। वह उन लोगों पर कभी दया नहीं दिखाता था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह बस उस व्यक्ति का स्वरूप याद रखना चाहता था। रास्ते में वह बंदर की तरह फुर्तीला था, लगातार चढ़ता जा रहा था। यहां तक कि उसे असली बंदर भी मिले। एक आदमी और एक बंदर एक दूसरे को घूर रहे थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे लॉन्ग झान के अलावा भाग्य से धन्य किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात होगी। अंततः पहाड़ी जंगल के शिखर पर पहुंचकर उसने दूर तक देखा और देखा कि पहाड़ की तलहटी में युवा प्रतिभाओं का समूह भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जंगली जानवरों पर स्वामित्व के लिए होड़ कर रहा था और अधिक प्रतियोगियों को हराने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग झान भीड़ के बीच से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा था, अजय, जोश और दबंगता से भरा हुआ। झाओ बुजियांग ने अपनी नजर हटा ली और पहाड़ की तलहटी की ओर भागा। बेलों पर चढ़ता हुआ घने जंगल में प्रवेश किया। वह जानवरों के राजा की मांद के करीब और करीब पहुंच रहा था और वह अधिक से अधिक सावधान होता जा रहा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि जानवर राजा अनुपस्थित हो, अन्यथा प्रवेश करके युवा जानवर राजा को छीनना मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। घने जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर जंगली जानवरों की कई सफेद हड्डियां पड़ी थीं और हवा में खून की तेज गंध फैली हुई थी। ये गंध गाढ़े, ताजा खून और सालों से जमा हुए खून की सड़ी हुई बदबू का मिश्रण थी। झाओ बुजियांग ने एक छोटा सा पत्थर फेंका और जानवर राजा को प्रकट होने से रोकने के लिए पीछे हट गया, लेकिन वह छोटा पत्थर जानवरों के राजा को बाहर नहीं खींच पाया। इसके बजाय एक रोएदार बर्फ सफेद छोटा जानवर गुफा से बाहर निकला जिसकी बड़ी नीलम जैसी आंखें तेजी से घूम रही थीं। झाओ बुजियांग का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने मूल उपन्यास से प्राप्त ज्ञान को संयोजित किया और निष्कर्ष निकाला कि यह प्यारा सा दिखने वाला छोटा जानवर निस्संदेह युवा राजा जानवर था। बचपन से ही उसकी यही आकर्षक सुंदरता थी जिसने बाद में लॉन्ग झांग को कई महिलाओं को आकर्षित करने में मदद की। उदाहरण के लिए, मेरा राजा जानवर बैकफ्लिप कर सकता है, क्या आप देखना चाहेंगे? ये पुष्टि करने के बाद कि यह जानवर वास्तव में युवा राजा जानवर था जो बड़ा होकर एक दबंग जानवर राजा बनेगा, झाओ बुजियांग ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसने एक और पत्थर फेंका, फिर से पीछे हट गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह जल्दी से भाग सके। लॉन्ग झान के लिए अवसर का लाभ उठाना महत्वपूर्ण था, लेकिन एक खलनायक की आत्म साधना ने उसे सुरक्षित खेलने के लिए कहा। जब तक वह जीवित रह सकता है वह बाद में बड़े मंच तक पहुंच सकता है। उसे अवसर की खातिर अपनी सुरक्षा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां तक खतरे में रहकर धन और वैभव की खोज का सवाल है, तो ऐसा तभी हुआ जब कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि वह इसे बिना जोखिम के प्राप्त कर सकता है तो फिर बिना किसी लाभ के जोखिम क्यों उठाए। मनमोहक युवा राज जानवर उस छोटे पत्थर की ओर आकर्षित हुआ जो अचानक प्रकट हुआ। अपनी गोल आंखों से बाईं और दाईं ओर देख रहा था। कोई हलचल न देखकर झाओ बुजियांग ने अपनी जेब से सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे फेंक दिया। ये सूखा मांस विशेष रूप से मूल उपन्यास में राजा जानवर के पसंदीदा भोजन के अनुसार बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज सब कुछ सुचारू रूप से चले। सचमुच युवा राज पशु ने उस सुगंध को सूंघ लिया और सूखे मांस को कुतरने के लिए दौड़ पड़ा। झाओ बुजियांग ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वयस्क जानवर राजा को नहीं देखा, न ही उसे कोई खतरा महसूस हुआ। उसने अनुमान लगाया कि जानवर राजा शायद लॉन्ग झान और अन्य लोगों की लड़ाई के शोरगुल से आकर्षित हुआ था। तभी वह धीरे धीरे उस युवा पशु की ओर बढ़ा, जैसे कोई कुत्ता कुछ चुरा रहा हो। युवा राजा जानवर ने इस हरकत को देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। एक आदमी और एक जानवर एक दूसरे को घूर रहे थे। छोटे दोस्त, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? झाओ बुजियांग ने अपनी आवाज़ कम की और सूखे मांस का एक और टुकड़ा निकाला। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। शराबी युवा राजा जानवर उत्सुकता से झाओ बुजियांग को देख रहा था। ये सीधा खड़ा बंदर कितना अजीब था, वास्तव में कुछ ऐसा छिपा रहा था जिसे वह खाना पसंद करता था। झाओ बुजियांग पहले से ही युवा राजा जानवर के बहुत करीब था। किसी भी देरी से डरते हुए उसने सीधे हमला किया, लेकिन वह चूक गया। युवा राजा जानवर फुर्ती से चकमा देकर उससे सिर्फ एक कदम की दूरी पर था। सूखे मांस को अपने मुंह में पकड़े हुए उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने अपने छोटे छोटे पैर हिलाए और झाओ बुजियांग के चारों ओर चक्कर लगाया। झाओ बुजियांग की नजरें इधर उधर घूम गईं। उस समय जब प्यारा सा जानवर उत्सुक था, उसने तेजी से काम किया, अपनी फुर्तीली जीभ बाहर निकाली और जानवर के रोएदार सिर को चाटने लगा। छोटा सा जानवर वहीं जम गया, स्तब्ध। फर चाट रहा है। यह ऐसा काम था जो केवल एक वरिष्ठ ही अपने अधीनस्थ के साथ कर सकता था। क्या ये हो सकता है कि यह ईमानदार बंदर ही उसका मालिक था? चाटने के बाद झाओ बुजियांग ने दो बार थूका, आगे बढ़कर चकित युवा राज जानवर को गले लगाया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, घूम गया और घने जंगल में कूद गया। पहले तो वह शोरगुल मचाने के डर से सावधानी से भागा, लेकिन बाद में वह और अधिक तेजी से भागने लगा, पहाड़ी जंगल में उत्पात मचाता हुआ, मानो कोई घोड़ा 500 वर्षों से दबा हुआ हो और अभी अभी आजाद हुआ हो, या मानो कोई भयंकर भूत उसका पीछा कर रहा हो। उसे नहीं पता था कि वह कितनी दूर भाग गया था, लेकिन वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। प्यारा सा जानवर उसकी बाहों से अपना सिर बाहर निकालकर उत्सुकता से उसे घूर रहा था। उसके दोनों पंजे अभी भी सूखे मांस को पकड़े हुए थे और वह उसे कुतर रहा था। झाओ बुजियांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। जानवर राजा ने उसका पीछा नहीं किया। उसने इस युवा राजा जानवर को सफलतापूर्वक रोक लिया था। उसने लॉन्ग जान से एक और मौका छीन लिया था। लेकिन जल्द ही उसने दूर से एक चौंकाने वाली दहाड़ सुनी और पहाड़ी जंगल कांप उठा। वह तुरंत एक बड़े पेड़ के सहारे नीचे झुक गया और सतर्कतापूर्वक आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने महसूस किया कि जानवरों के राजा की मान से कंपन आ रही है। उसने नजर घुमाई और पाया कि उस क्षेत्र में बहुत सारे पौधे और पेड़ गिर रहे थे, मानो कोई क्रूर जानवर अपना गुस्सा निकाल रहा हो, एक के बाद एक वनस्पतियों को रौंद रहा हो। और ढहती हुई वनस्पति के निशान पहाड़ से नीचे तक फैले हुए थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि क्रूर जानवर ने पहाड़ से नीचे तक उसका पीछा किया था। उसी समय दूसरी तरफ लॉन्ग जान और अन्य लोग उनके सामने क्रूर जानवर की अचानक उपस्थिति से चौंक गए। ये क्रूर जानवर 10 फुट से अधिक लंबा था, जो एक भयंकर बाघ और एक राजसी सिंह दोनों जैसा दिखता था। इसकी आभा भयानक रूप से भयंकर थी। जानवर राजा, ये तो बीस्ट किंग है, एक युवा प्रतिभा ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। हमने जानवरों के राजा का सामना किया है, अगर हम उसे पकड़ सकें तो ये सबसे बड़ी फसल होगी। क्या तुम पागल हो? शिकार के इतने वर्षों में कौन जानवर राजा से भिड़ने की हिम्मत करेगा? ये जानवर राजा अचानक हमारे दरवाजे पर क्यों आया और इतनी हिंसा के साथ? ये हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अभी बच्चे हुए हैं और वह नहीं चाहता कि हम उसके करीब आएं? क्या वह हमें रोकने के लिए यहाँ आया है? ये तो समझ में आता है, अन्यथा जानवर राजा गुस्से में हमारे दरवाजे पर आने की पहल कैसे कर सकता था? इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर लॉन्ग जान की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। जब उसने सुना कि जानवर राजा के बच्चे हुए हैं, तो उसे अचानक लगा कि युवा जानवर राजा ही उसका अवसर होगा, उसे पाने का मौका। हम वयस्क जानवर राजा को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम युवा राजा जानवर को प्राप्त कर सकें और उसका अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकें, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। हाँ, अच्छा अवसर है। जब तक हमें छोटा सा राजा जानवर मिल जाए, ये यात्रा सार्थक रहेगी। कई युवा प्रतिभाओं ने लॉन्ग जान के विचारों को साझा किया और तुरंत युवा राजा जानवर पर अपनी नजरें गड़ा दी। उनके दिल उत्साह से भर गए। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। सब लोग, क्यों न हम सब मिलकर इस जानवर राजा को मार गिराएं? जब तक हम इसे पकड़ लेंगे, हमें राजा जानवर शावक को पकड़ने का मौका मिलेगा। हम इसे कैसे विभाजित करेंगे? डिवीजन इंतजार कर सकता है। आइए पहले बीस्ट किंग को मार गिराएं और फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी ने शीघ्रता से चर्चा की और वर्तमान रणनीति पर सहमति व्यक्त की। वे सभी युवा प्रतिभावान थे और प्राथमिकता तय करने के महत्व को जानते थे। अब आंतरिक कलह का समय नहीं था। जब हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि जानवर राजा से कैसे निपटा जाए और युवा राजा जानवर को कैसे पकड़ा जाए, जानवर राजा की क्रूर निगाहें और भी मजबूत होती गईं। उसे पता था कि उसके सामने खड़े इन घृणित मनुष्यों ने ही उसके बच्चे का अपहरण किया होगा। यह इन घृणित चोरों को मार डालने वाला था। रॉयल शिकार मैदान। जानवर राजा ने कई मनुष्यों को अनदेखा कर दिया। उसका आभामंडल लगातार भयंकर और हिंसक होता जा रहा था। वह उन चोरों को मारना चाहता था जिन्होंने उसके बच्चे को चुराया था और सीधे एक हथेली नीचे पटक दी। ताड़ के पेड़ से हवा निकल रही थी जो दरवाजे जितनी बड़ी थी। उसके तीखे पंजे लंबे ब्लेड जैसे थे। जिस व्यक्ति पर हमला होने वाला था वह जल्दी से चकमा देकर भागा। तेज हवा के झोंके से कई गज पीछे की ओर उड़ गया, लगभग जमीन पर गिर गया। उसने खुद को संभाला, क्रोध बढ़ रहा था और एक तीर को तीर से तेजी से चलाया। ताइवान उपन्यास नेटवर्क TWKN.COM। इस जानवर को मार गिराओ, युवा प्रतिभाएं चिल्लाईं। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। कुछ ही दूरी पर पहाड़ की चोटी पर झाओगुजी ने आसन और तीव्र युद्ध के मैदान को देखा। उसकी नजर में ये युद्ध का मैदान एक छोटे चींटियों के समूह की तरह था जो एक टोट को घेर रहा था। वह पहले ही युवा पशु राजा को प्राप्त कर चुका था और अब वहां और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने पहले शिकार के मैदान को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसने युवा जानवर राजा को पकड़े हुए केवल दो कदम ही चला था कि वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अभी अभी उसने लॉन्ग जान के घोड़े पर रीगल हेवनली स्वॉर्ड की एक झलक देखी थी। स्वर्गीय तलवार की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने लॉन्ग जान को रोककर उसका आधा हिस्सा छीन लिया था, लेकिन बाकी आधा हिस्सा अभी भी लॉन्ग जान के हाथ में था। लॉन्ग जान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। स्वर्गीय तलवार के सिर्फ आधे हिस्से के साथ भी वह उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले जिस व्यक्ति ने उस पर घात लगाया था वह लॉन्ग जान का अधीनस्थ था, निश्चित रूप से लॉन्ग जान के निर्देश पर। लॉन्ग जान ने बार बार उसे दबाने की कोशिश की थी और यहां तक कि उसकी हत्या की मंशा भी थी। वह ऐसे ही नहीं जा सकता था। चूंकि लॉन्ग जान और अन्य लोग जानवर राजा के साथ भीषण युद्ध में लगे हुए थे, तो क्या यह एक अवसर नहीं था? झाओगुजी के दिमाग में एक योजना के बारे में विचार चल रहा था। उसने युवा जानवर राजा को अपनी बाहों में दबाया, कुछ मुट्ठी भर फर तोड़े, उन्हें अपने हाथ में पकड़ा और फिर युद्ध के मैदान की ओर भागा। वह तेजी से और अधिक तेजी से दौड़ने लगा। जंगल में बंदर की तरह फुर्तीला, उसके रूप में जबरदस्त परिवर्तन हुए और उसके शरीर में भी साधारण अंतर आ गया। जैसे जैसे तीरों की ध्वनि, उन युवा प्रतिभाओं की गालियां और जानवर राजा की दहाड़ करीब आती गई, वह अचानक लुढ़क गया जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचने वाला था। उसके कपड़े जमीन पर रगड़ खाकर फट गए और उन पर ढेर सारी पीली मिट्टी और सूखी टहनियां लग गईं। वह जानवर राजा मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने लगा और भीड़ में शामिल हो गया। युवा प्रतिभाओं के संयुक्त प्रयासों से जानवर राजा को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार वह मांस और रक्त का शरीर था और इतने सारे तीरों का सामना नहीं कर सकता था। भीड़ ने कहा कि संख्या में ही ताकत होती है। वहां मौजूद हर कोई मार्शल आर्टिस्ट था और ज्यादातर घुड़सवारी तीरंदाजी में माहिर थे। अब ऐसा लग रहा था कि एक जानवर राजा से निपटने के लिए एक साथ काम करना मुश्किल नहीं था। भीड़ ने तीरों की बौछार का एक और दौर शुरू कर दिया। ये परिष्कृत स्टील के तीर साधारण तीर नहीं थे। इन्हें शरद ऋतु के शिकार के लिए मौजूद उच्च श्रेणी के परिवारों के युवा स्वामियों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था। हालांकि महंगे थे, लेकिन उनकी शक्ति काफी थी। कई तीर सीधे जानवर राजा के मांस में घुस गए और खून बहने लगा। जानवर राजा को लगातार पीछे धकेला जा रहा था, पागलपन के लक्षण दिखा रहा था। भीड़ ने लाभ उठाया और लगातार आगे बढ़ते हुए हमला किया। उन्होंने मूल रूप से यह निर्धारित किया था कि जानवर राजा अपने शावक की रक्षा कर रहा था, अन्यथा वह उनकी प्रगति को रोक नहीं रहा होता। और लॉन्ग जान ने भी धीरे से शाही स्वर्गीय तलवार निकाली। वह उस शावक को पाने के लिए दृढ़ था जिसे जानवर राजा बचा रहा था। जैसे ही लॉन्ग जान ने रीगल हेवनली स्वॉर्ड निकाला, झाओगुजी, जो लॉन्ग जान की हरकतों पर ध्यान दे रहा था, अचानक भीड़ में से चिल्लाया, जनरल लॉन्ग, आपका क्या मतलब है? कौन नहीं जानता कि आपकी यह तलवार महामहिम द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय तलवार है। इसकी शक्ति अपार है। हम सभी घुड़सवार तीरंदाजी के साथ शिकार करने के लिए सहमत हुए। यदि आप इस स्वर्गीय तलवार को निकाल लेते हैं, भले ही आप अंत में जीत जाते हैं, मुझे डर है कि यह एक शानदार जीत नहीं होगी, है ना? ये सही है, मैंने हमेशा भाई लॉन्ग जान की प्रशंसा की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब हर कोई घुड़सवारी तीरंदाजी का उपयोग कर रहा है तो आप वास्तव में स्वर्गीय तलवार निकाल लेंगे। क्या आप हमें एक तलवार न होने के लिए धमका रहे हैं? अनुचित, ये स्वर्गीय तलवार बहुत शक्तिशाली है। यदि आप जीत भी गए तो भी हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। झाओगुजी ने एक वाक्य चिल्लाया और फिर अपनी जगह बदलने के लिए नीचे झुका। उसने अपनी आवाज भी बदल दी। कई युवा प्रतिभाओं को याद दिलाया गया और उन्होंने लॉन्ग जान के हाथ में स्वर्गीय तलवार देखी और एक के बाद एक उन्होंने भौहें सिकुड़ी। लॉन्ग जान, हर कोई जानवर को वश में करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। ये देखते हुए कि लाभ हमारे पक्ष में है, आप स्वर्गीय तलवार क्यों निकाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से ही उस शावक को गुप्त रूप से लेने की योजना बना ली है जिसे जानवर राजा संरक्षित कर रहा है? अभी तक सफलता नहीं मिली है और लॉन्ग जान, तुमने पहले ही अपनी तलवार खींच ली है। क्या तुम हमसे सावधान हो या बाद में हमें अचानक मार डालने की योजना बना रहे हो? या फिर आप हमें पीछे हटने और जीत पर एकाधिकार करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? उपस्थित युवा प्रतिभाओं में से कई शाही परिवार या उच्च पदस्थ अधिकारियों के बेटे थे। उन्हें आमतौर पर लाड़ प्यार दिया जाता था और विशेषाधिकार प्राप्त थे। आज ये देखते हुए कि जानवर राजा को पीछे धकेला जा रहा था और वे जानवर राजा के शावक के और करीब आ रहे थे, लॉन्ग जान ने स्वर्गीय तलवार निकाली। इसका क्या मतलब था? क्या आज केवल लॉन्ग जान को ही विशेषाधिकार प्राप्त थे? क्यों? ठीक है, क्यों? सभी ने प्रयास किया है और आप इस पर एकाधिकार करना चाहते हैं? झाओ बुजी ने अपनी आवाज दबाई, क्रोधित होकर भीड़ में चिल्लाया। सभी की नजरें लॉन्ग जान पर थी और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लॉन्ग जान का चेहरा लगातार उदास होता जा रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब वह जनता को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा, यदि आप नहीं चाहते कि मैं इसका उपयोग करूं, तो मैं नहीं करूंगा। मैं स्वर्गीय तलवार के बिना भी अपनी क्षमता से जीत सकता हूं। ये कहना कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, इसका मतलब है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। कौन जानता है कि तुम इसका इस्तेमाल किसी महत्वपूर्ण क्षण में करोगे या नहीं? तलवार तुम्हारे हाथ में है। भीड़ से तुरंत एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी आई। लॉन्ग जान ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वह वक्ता को नहीं देख पाया। अचानक एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया। वह सतर्क हो गया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। ये व्यक्ति अन्य युवा प्रतिभाओं में से कोई नहीं था, बल्कि उसका अधीनस्थ था जिसे झाओ बुजी के साथ हस्तक्षेप करने के लिए भेजा गया था। जनरल, झाओ बुजी ने अपनी मुट्ठी बांधी, फिर इन युवा प्रतिभाओं को घूरा जो अपने जनरल लॉन्ग जान के साथ उसी तरह की नफरत साझा करते प्रतीत होते थे। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसकी अभिव्यक्ति सम्मानपूर्ण थी। मेरा जनरल ईमानदार और सत्यनिष्ठ है। ये कहना कि वह इसका प्रयोग नहीं करेगा, इसका अर्थ है कि वह सभी को धमकाने के लिए स्वर्गीय तलवार का प्रयोग नहीं करेगा। जनरल, इसे सुरक्षित रखने के लिए इस विनम्र व्यक्ति को सौंप दें और जानवर राजा से निपटने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और अवसर का लाभ उठाएं। जनरल की योग्यता के साथ स्वर्गीय तलवार का उपयोग न करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अकेले ही आप नेतृत्व कर सकते हैं। लॉन्ग जान ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और पीली मिट्टी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि झाओ बुजी से निपटना कठिन काम था। उसने अपनी आवाज कम कर ली। वह काम जो मैंने तुमसे करने को कहा था। जनरल, बस निश्चिंत रहें। झाओ बुजी ने अपनी भौहें नीची कर ली और सिर हिलाया, साथ ही अपनी आवाज भी धीमी कर ली। इस शिकार में झाओ बुजी निश्चित रूप से फिर से आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा और आपके लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा नहीं करेगा। लॉन्ग जान को वह जवाब मिल गया जो वह चाहता था और वह अपने दिल में खुश था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या झाओ बुजी आराम करना और बेकार बैठना चाहता था? क्या उसने उससे पूछा था? वह सबसे पहले जानवर राजा के शावक को प्राप्त करेगा और फिर झाओ बुजी की दबंग स्वर्गीय तलवार को जब्त करेगा। स्वर्गीय तलवार उसकी है, लॉन्ग जान। हम्फ, ऐसा लगता है कि भाई लॉन्ग जान स्वर्गीय तलवार को नीचे रखने के लिए अनिच्छुक है। क्या वह हमारे साथ निपटने के लिए स्वर्गीय तलवार का उपयोग करने के बारे में सोच रहा है? भीड़ ने देखा कि लॉन्ग जान के अधीनस्थ ने सही बात कही, लेकिन लॉन्ग जान का युद्ध के मैदान से स्वर्गीय तलवार को अस्थायी रूप से हटाने का कोई इरादा नहीं था। और एक और उपहास आया, ये कैसी प्रतिभा है, ये तो सिर्फ पक्षपात पर निर्भर है। आप क्या कह रहे हैं? यदि आप फिर से मेरे जनरल का अनादर करते हैं तो हमारी पिछली दोस्ती पर विचार न करने के लिए मुझे दोष न दें। झाओ बुजी ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की जिसने अपने दिल में लॉन्ग जान का उपहास किया और आग्रह किया, लेकिन उसका चेहरा भयंकर था। लॉन्ग जान ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि अनिच्छुक, रीगल हेवनली स्वॉर्ड ने पहले ही उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह अधीनस्थ उसे धोखा देगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका अधीनस्थ ऐसा नहीं कर सकेगा और ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसलिए उसने स्वर्गीय तलवार अपने अधीनस्थ के हाथों में सौंप दी। झाओ बुजी ने सोच समझकर घोड़े की पीठ पर पड़े मुलायम गद्दे को ठीक किया, फिर दोनों हाथों में स्वर्गीय तलवार पकड़ ली। जनरल निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और सबको बताएंगे कि स्वर्ग का असली गौरव कौन है। अपने अधीनस्थ की चापलूसी सुनकर लॉन्ग जान को अपने दिल में राहत महसूस हुई। उसने भीड़ पर ठंडी आवाज में कहा, अपने घोड़े को तेज किया और जानवर राजा का पीछा किया। ये देखकर भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी और एक के बाद एक अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। जानवर राजा पहले से ही घायल था और लॉन्ग जान को नेतृत्व करने और शावक को जब्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। झाओ बुजी ने तलवार थाम ली। उसके बगल में पीली रेत और घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में पीली रेत कोहरे की तरह उसके शरीर को ढकने लगी। किसी ने यह नहीं देखा कि जब वह घोड़े की पीठ पर नर्म गद्दी को ठीक कर रहा था तो उसने उसमें युवा पशु राजा के फर के कुछ गुच्छे ठूंस दिए थे। धुंधला पीला कोहरा पहाड़ों और जंगलों में जानवर राजा के घोंसले की ओर बढ़ गया और छंटते पीले कोहरे के अंत में झाओबुजी की आकृति गायब हो गई थी। वह घोंसले की विपरीत दिशा में बेतहाशा भाग रहा था। हालांकि वह धूल से ढका हुआ था और अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन उसने युवा जानवर राजा को अपनी बाहों में गहरी नींद में सोता हुआ देखा था और उसकी बगलों और भुजाओं ने राजसी स्वर्गीय तलवार को कसकर पकड़ रखा था। आसपास कोई न होने पर वह खुशी से झूम उठा। अंततः अब वह छिप नहीं सका बल्कि मुस्कुरा दिया। युवा राज जानवर झाओबुजियांग के बाहरी वस्त्र के अंदर लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। ये शराब विशेष रूप से बनाई गई थी और झाओबुजियांग ने पहले ही इसमें नशीली दवा मिला दी थी। झाओबुजियांग घने जंगल में बैठ गया और धीरे धीरे राजाओं की स्वर्गीय तलवार नीचे रख दी। राजाओं की स्वर्गीय तलवार से पानी जैसी नीली चमक निकल रही थी और बस उस रोशनी को महसूस करके झाओबुजियांग को और भी ज्यादा शांति महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह राजाओं की स्वर्गीय तलवार के चमत्कारी प्रभावों में से एक था। सामान्य परिस्थितियों में भले ही वह राजाओं की स्वर्गीय तलवार को धोखा दे, वह वास्तव में इसे दूर नहीं कर पाएगा। आखिरकार राजाओं की स्वर्गीय तलवार ने पहले ही लॉन्ग जान को अपना स्वामी मान लिया था। हालांकि मूल कहानी की अपनी यादों के आधार पर वह मूल रूप से निश्चित था कि वह राजाओं की स्वर्गीय तलवार को फिर से अपने स्वामी के रूप में पहचानने में सक्षम बना सकता है। आखिरकार राजाओं की स्वर्गीय तलवार और अत्याचार की स्वर्गीय तलवार मूल रूप से एक ही थी। चूंकि वह अत्याचार की स्वर्गीय तलवार का स्वामी था, इसलिए वह राजाओं की स्वर्गीय तलवार को नियंत्रित करने के लिए योग्य था। इसके अलावा मूल कहानी में लॉन्ग जान ने स्वर्गीय तलवार को बाद के चरणों में अलग कर दिया था, इसे राजत्व और अत्याचार में विभाजित किया था। उसने अपने हरम में एक महिला को अस्थायी रूप से राजाओं की स्वर्गीय तलवार उधार दी, जिससे राजाओं की स्वर्गीय तलवार ने उसे फिर से अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया और दुश्मनों से बचाव करने में महिला की मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन प्लॉट में लॉन्ग जान दिखाई नहीं दिया। उधार दी गई स्वर्गीय तलवार ने अकेले ही खलनायकों के एक समूह को मार डाला, उन्हें घबराहट में भागने पर मजबूर कर दिया, बहुत दिखावा किया, दुश्मन को डरा दिया और महिला को उसका बिस्तर गर्म करने और खुद को पेश करने के लिए मजबूर किया। झाओबुजियांग ने अब और संकोच नहीं किया। उसने सीधे अपनी हथेली काट ली, फिर राजाओं की स्वर्गीय तलवार को कसकर पकड़ लिया, जिससे राजाओं की स्वर्गीय तलवार ने उसे फिर से अपना स्वामी मान लिया। शायद फिर से पहचानना सटीक नहीं था। सटीक रूप से कहें तो ये राजाओं की स्वर्गीय तलवार को उसके दूसरे स्वामी को पहचानने की अनुमति देना था। तभी झाओबुजियांग ने अपना हाथ उठाया और जिस जगह उसने अपना घोड़ा बांधा था, घोड़े के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। जंगल को चीरती हुई एक रक्तलाल तलवार उसके हाथ में आ गिरी। उसके हाथ में अत्याचार की स्वर्गीय तलवार थी। अत्याचार की स्वर्गीय तलवार के स्वामी के रूप में उन्होंने राजाओं की स्वर्गीय तलवार को अत्याचार पूर्वक नियंत्रित किया। राजाओं की स्वर्गीय तलवार की जल नीली रोशनी और भी मजबूत होती गई। शुरू में उसका खून उससे चिपक नहीं पाया और सीधे फिसल गया, लेकिन धीरे धीरे उसका खून चिपचिपा हो गया, तलवार के शरीर से चिपक गया और धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे कि उसे अवशोषित किया जा रहा हो। झाओबुजियांग की हथेली से खून बह रहा था, लेकिन तलवार की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और ये देखा जा सकता था कि उसकी आंखें उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि आज उसे राजाओं की स्वर्गीय तलवार को बताना था कि इस घर का असली मालिक कौन है। समय बीतता गया और झाओबुजियांग का खून धीरे धीरे राजाओं की स्वर्गीय तलवार में समा गया। राजाओं की स्वर्गीय तलवार का कांपना और भी मजबूत होता गया, जब तक कि धीरे धीरे राजाओं की स्वर्गीय तलवार कांपना बंद नहीं हो गया और पानी की नीली रोशनी ने झाओबुजियांग के पूरे हाथ को रोशन कर दिया। उसकी हथेली का घाव तेजी से ठीक हो रहा था। इस समय वह जानता था कि राजाओं की स्वर्गीय तलवार ने उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया है। एक विचार के साथ राजाओं की स्वर्गीय तलवार और अत्याचार की स्वर्गीय तलवार धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गईं, सभी दिशाओं में प्रकाश बिखेरने लगी और अंततः एक साधारण और अलंकृत लंबी तलवार में परिवर्तित हो गईं। इस लंबी तलवार ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। इसकी तलवार की हड्डी तीखी और भयंकर है, मानो ये दुनिया के सभी दुश्मनों को एक ही वार में चकनाचूर कर देना चाहती हो। तलवार की मूठ असमान थी, इसके पैटर्न भयंकर थे, मानो यह चाहती हो कि तलवार चलाने वाले को लगातार हल्का दर्द महसूस हो और वह हर समय जागता रहे और दर्द के कारण उसे अत्याचारी तरीके से पकड़ना चाहता हो। राजसत्ता और अत्याचार एक हो गए, तलवार में मिल गए। ये तलवार स्वर्गीय तलवार। झाओबुजियांग ने पूरी स्वर्गीय तलवार पकड़ ली और मूठ पकड़े हुए उसके हाथ की हथेली से दर्द की आवाज आई। उसने स्वर्गीय तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया और उसके दिल में असीम वीरता जाग उठी। फिर एक जोरदार प्रहार के साथ उसने तलवार को उस फटे हुए बाहरी वस्त्र में डाल दिया, जिसे अस्थायी रूप से कपड़े में बदल दिया गया था, और उसे लपेट दिया। फिर वह बिना रुके शिकार के मैदान के बाहर की ओर भाग गया। उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, इसलिए उसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। दूसरी ओर लॉन्ग जान और अन्य लोग राजा जानवर की मांद के बाहर पहुंचने वाले थे और अपने दिलों में युवा राजा जानवर के और करीब पहुंच रहे थे। जब तक उन्हें युवा राजा जानवर प्राप्त हो जाएगा, ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि खून से लथपथ राजा जानवर धीरे धीरे पागल हो गया। एक ही हथेली से दो लोगों को मारने के बाद भीड़ को आखिरकार एहसास हुआ कि राजा जानवर पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हो सकता है कि वह अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब वे घोंसले के बहुत करीब थे और राजा जानवर को एक मजबूत खतरा महसूस हुआ और वह पागल हो गया। असलियत ये थी कि राजा जानवर ने पहले सोचा था कि इंसानों का ये समूह चोर है, लेकिन उसे अपनी संतान का कोई सुराग नहीं मिला। इंसानों के इस समूह द्वारा घेर लिए जाने के बाद उसे लगा कि इंसानों के इस समूह की ताकत बहुत मजबूत है और वह पीछे हटने का इरादा रखता था। लेकिन जब राज जानवर फिर से घोंसले में लौटा तो उसे अभी भी अपने शावक का कोई पता नहीं चला, लेकिन उसने भीड़ में अपने शावक की आभा को सूंघ लिया। इस समय उसे पूरी तरह से यकीन था कि लोगों के इस समूह ने उसके बच्चे को चुराया है और अपराधी मनुष्यों के बीच लंबे घोड़े पर सवार वह आदमी था जिसका नाम लॉन्ग जान था। यह आभा लॉन्ग जान से आ रही थी। दहाड़, राजा जानवर दहाड़ने लगा, उसके पंजे खून से सने हुए थे। वह पहाड़ों और जंगलों से होते हुए जोर से चिल्लाया और लॉन्ग जान की ओर जोरदार थप्पड़ मारे। लॉन्ग जान ने भौहें सिकोड़ी। उसे बार बार राजा जानवर की निर्दयी निगाहें महसूस हो रही थी, एक ऐसी नजर जो उसे चीर कर रख देना चाहती थी। वह थोड़ा हैरान था, वहां इतने सारे लोग थे, राजा जानवर अकेले उसे कैसे घूर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति असाधारण थी और राज पशु को उससे सबसे अधिक खतरा महसूस हुआ। उसके नीचे का घोड़ा बेतहाशा सर पर दौड़ने लगा और वह राज पशु की हथेली से बच निकला। यदि यह हथेली उस पर लगती तो निस्संदेह वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। राज जानवर लगातार उसका पीछा करता रहा और लॉन्ग जान पर प्रहार करता रहा। अन्य युवा प्रतिभाएं आश्चर्यचकित थीं, लेकिन उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उन्होंने एक के बाद एक तीर चलाए। राज जानवर तीरों से ढका हुआ था और भी अधिक हिंसक हो गया, लेकिन उसने तीर चलाने वाले मनुष्यों के समूह को नजरअंदाज कर दिया और लगातार दहाड़ते हुए लॉन्ग जान का पीछा करना जारी रखा। धरती हिल गई और लॉन्ग जान के नीचे का घोड़ा चौंक गया और उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसके अलावा पहाड़ का जंगल खड़ी चढ़ाई वाला था और कुछ जगहों पर कई गड्ढे थे। अंत में घोड़े की एक हिनहिनाहट के साथ घोड़ा घबराहट में जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ पर लॉन्ग जान भी गिर गया, कई बार जमीन पर लुढ़क गया। धमाका, राजपशु के तीखे पंजे आसमान से नीचे उतरे और एक ही हथेली से घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मांस और खून हर जगह उड़ने लगा। उसकी दो भयंकर रक्तलाल आंखें स्थिर होकर उस दिशा की ओर देख रही थीं, जिस ओर लॉन्ग जान भाग रहा था, घास और पेड़ों को रौंदता हुआ और भागता हुआ। इसके पीछे बाणों की अराजक वर्षा हो रही थी जो इसके शरीर में भर गई थी और खून बह रहा था जो एक विशाल खून बहते हुए हाथी की तरह लग रहा था। लेकिन जितना अधिक खून बहा उतना ही वह कमजोर महसूस करने लगा और उतना ही अधिक हिंसक हो गया। लॉन्ग जान भाग गया और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा कि राजा जानवर उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे यह बात कहने में कठिनाई हो रही थी और वह अपने हृदय में दहाड़ता रहा। नहीं, क्या मैं ही तुम्हें मार रहा हूं? वे भी तुम्हें मारते हैं। मुझे अकेले पकड़कर पीटने का क्या मतलब है? मैंने तो अभी तक उस छोटे से राज जानवर को भी नहीं देखा है। क्या तुम्हें अपने बच्चे के प्रति इतना सुरक्षात्मक होने की आवश्यकता है? डोंग, लॉन्ग जान ने फिर से राजा जानवर के हथौड़े को चकमा दिया। इस बार वह पिछली किसी भी बार से ज्यादा करीब था। आवाज आसमान से गरजने जैसी थी और उसके कान के पर्दे चुभ रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा जब तक वह उस स्थान तक पहुंच सका। जब तक वह वहां पहुंचता, वह अपने अधीनस्थों से स्वर्गीय तलवार प्राप्त कर सकता था ताकि दुश्मन से बचाव कर सके। जल्द ही मैं स्वर्गीय तलवार की दूरी को महसूस करने वाला हूँ। एक और हमले में लॉन्ग जान को राजा जानवर के पंजे से खरोंच दिया गया था। यह एक सामान्य खरोंच की तरह लग रहा था, लेकिन इससे उसकी बांह पर गहरा घाव हो गया और वह लगभग हड्डी देख सकता था। अंततः वह पहाड़ी जंगल से बाहर निकलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके अधीनस्थों ने पहले स्वर्गीय तलवार रखी थी। पीली मिट्टी, हर जगह तीर, खून और खूनी पीली मिट्टी के ढेर में मिल गई। बाकी दृष्टि का क्षेत्र खुला था, लेकिन उसके अधीनस्थों का कोई निशान नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। राजा जानवर उसके पीछे पीछे और करीब आ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और राजाओं की अपनी स्वर्गीय तलवार को बुलाया। तलवार, आओ! वह क्रोध और तत्परता दोनों के साथ दहाड़ा। हवा बह रही थी, मृत घास को लुढ़का रही थी। हवा की आवाज और उसके पीछे राज जानवर की भारी सांसों और धरती के हिलने की आवाज के अलावा उसे स्वर्गीय तलवार की थोड़ी सी भी हलचल महसूस नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजपशु उसके सामने एक पहाड़ी की तरह खड़ा था। उसकी रक्त लाल आंखें बड़ी बड़ी लालटेनों की तरह थीं, मोटी लार टपक रही थी और दुर्गंध में लिपटी एक हिंसक आभा थी। मेरी स्वर्गीय तलवार कहाँ है? लॉन्ग जान की मानसिकता फट गई, वह हताश हो गया, दहाड़ने लगा, एक शोकाकुल चेहरे के साथ एक रोल मुश्किल से राजा जानवर के पंजे को चकमा दिया। लेकिन अब भागना जरूरी था और वह गाली देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इलाका खुला था और राज जानवर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वह विशाल रेगिस्तान में छिपकली द्वारा पीछा की गई चींटी की तरह था। उसका शरीर घबराया हुआ और शर्मिंदा था। मेरी स्वर्गीय तलवार कहाँ है? शू शू शू, हवा में सीटी बजाते हुए तीर बरसने लगे। युवा शिकारियों के एक समूह ने दूर से अपने धनुष चलाए। अब जानवर राजा तीरों से लथपथ था, उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी भयंकर और हिंसक आभा दूर से भी महसूस की जा सकती थी। इस बीच लॉन्ग जान का अभी भी लगातार पीछा किया जा रहा था। उनकी तीरंदाजी का उद्देश्य लॉन्ग जान को बचाना नहीं था, बल्कि जानवर राजा की मृत्यु सुनिश्चित करना था। अंत में जब जानवर राजा का खून बहने लगा, धीरे धीरे उसे कमजोर कर दिया, उसकी गति धीमी हो गई। लॉन्ग जान, जो बेतहाशा भाग रहा था, को आखिरकार अपनी सांस पकड़ने का मौका मिला और उसने इस अवसर का उपयोग दूरी बढ़ाने और जानवर राजा की नजरों से ओझल होने के लिए किया। गर्जन, जानवर राजा ने एक भयंकर अनिच्छुक दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया, उसका पहाड़ जैसा शरीर हिल गया, जिससे उसके मांस में धंसे हुए तीर निकल गए। वह अपने घावों को चाटने लगा, उसकी भयंकर निगाहें कभी कभी उसके पीछे घूम जाती। कुछ ही दूर पर युवा शिकारी जोर जोर से निगल रहे थे। किसी ने नेतृत्व संभाला और वे सभी दिशाओं में बिखर गए। जानवर राजा को बहुत सारे तीर लगे थे। एक सामान्य जानवर बहुत पहले ही खून से लथपथ हो जाता, लेकिन जानवर राजा थोड़ा कमजोर होने के अलावा ज्यादातर सुरक्षित लग रहा था। अपने शरीर को हिलाकर उसने तीरों को उखाड़ फेंका। ऐसी शक्ति को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? अफसोस, जानवर राजा बहुत ताकतवर था। उसके घोंसले में नवजात शावकों में बहुत क्षमताएं होंगी। यह अफसोस की बात थी कि युवा जानवर राजा उनकी पहुंच से बाहर था। शिकार के मैदान में प्रवेश करने वाले युवा शिकारियों में से अभी भी किस में जानवर राजा के घोंसले के पास जाने की क्षमता थी। यहां तक कि एक साथ आने पर भी क्रोधित पशु राजा ने उन्हें भगा दिया। अकेले जाना आत्मघाती होगा। इससे पहले जब बीस्ट किंग लॉन्ग जान का पीछा कर रहा था, तो कुछ लोगों ने चुपके से अंदर घुसने के बारे में सोचा था, लेकिन एक साथ इकट्ठा होने पर किसी में हिम्मत नहीं थी और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई और हिम्मत करे। वे सभी एक दूसरे से सावधान थे। उसी समय लॉन्ग जान ने अपने घाव को पकड़ लिया और एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गया, जो वनस्पति से छिपा हुआ था। उसने एक बार फिर स्वर्गीय तलवार को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह अनुत्तरदायी रही। उसका दिल भारी हो गया। शायद दूरी बहुत ज्यादा है, स्वर्ग की तलवार इसे महसूस नहीं कर सकती। लॉन्ग जान ने खुद को सांत्वना दी और अपने घावों को भरने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही वह बीस्ट किंग के खिलाफ बढ़त हासिल न कर पाए और युवा बीस्ट किंग पर उसका कोई मौका न हो, लेकिन उसे कम से कम शिकार में पहला स्थान तो जीतना ही था। झाओ बुजियांग भारी पट्टियों में लिपटी हुई स्वर्गीय तलवार पर भारी झुकाव रखते हुए अपने फटे हुए कपड़ों के साथ शिकार के मैदान से बाहर चला गया। उसकी बाहों में युवा जानवर राजा भी जाग गया था। यद्यपि पशु राजा अभी भी युवा था, लेकिन इसकी अपार क्षमता के कारण वह नींद की दवा, जो एक बैल को दिन और रात अच्छी नींद में सुला सकती थी, युवा पशु राजा को केवल आधे घंटे तक ही सोने देती थी। शिकार के मैदान के किनारे खड़े पहरेदारों ने आश्चर्य से झाओ बुजियांग को देखा। पहले तो वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह कौन है, तो उन्होंने तुरंत उसे सलाम किया। नमस्कार महामहिम, महामहिम और राजकुमार सभी शिकारगाह पर हैं, पहरेदार ने रास्ता दिखाया। इस तरफ महाराज, झाओ बुजियांग ने स्वर की तलवार पर इस तरह झुककर काम किया मानो वह कोई बेंत हो और शिकारगाह की ओर चल दिया। जैसे ही वह शिकारगाह में दाखिल हुआ, रेशम और बांस के वाद्ययंत्रों और गिलासों की खनक की ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। युवा पीढ़ी शिकार करने गई थी, जबकि पुरानी पीढ़ी आनंद ले रही थी। झाओ बुजियांग की उपस्थिति ने पूरे कमरे को एक पल के लिए खामोश कर दिया। बूढ़े लोग आश्चर्यचकित थे, बाकी सभी लोग शिकार कर रहे थे। झाओ बुजियांग अचानक वापस क्यों आ गया था? तभी उन्होंने झाओ बुजियांग के फटे कपड़े देखे और कुछ लोग हंसने से खुद को रोक नहीं सके। महाराज, क्या आप शिकार करने गए थे या आपका शिकार किया गया? हाहा, शाही रिश्तेदार और अधिकारी हंसे जब उन्होंने झाओ बुजियांग की बाहों में पकड़े हुए छोटे बर्फ सफेद जानवर को देखा, जो बिल्ली के बच्चे जैसा दिख रहा था। महाराज, क्या आप वहां गए और केवल एक बिल्ली का शिकार करने में कामयाब रहे? दूसरे लोग शिकार करते हैं, आप बिल्लियों के साथ खेलते हैं। महाराज की रुचियां बहुत परिष्कृत हैं। अधिकारी जोर जोर से हंसने लगे जिससे माहौल में हलचल मच गई। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि झाओ बुजियांग कुछ भी शिकार नहीं कर पाएगा। युवा पीढ़ी के अन्य सदस्य 3 या 5 के समूहों में जोश और ऊर्जा से भरे हुए शिकार के मैदान में प्रवेश कर चुके थे। केवल झाओ बुजियांग अकेला था, आराम से टहल रहा था। वह संभवतः किसी चीज का शिकार कैसे कर सकता था। बिल्ली के बच्चे को वापस लाना बुरा नहीं था, कम से कम उसे खाली हाथ लौटने पर उपहास तो नहीं किया जाता था। ये केवल दुख की बात थी कि ऐसा कहा जाता था कि बाघ पिता का कोई कुत्ता पुत्र नहीं होता, लेकिन उत्तरी राजा इस शेर का एक पुत्र था जो एक बिल्ली का बच्चा था। बिल्कुल उस बिल्ली के बच्चे की तरह जो झाओ बुजियांग की बाहों से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। नर्म, हानिरहित, आंखों को भाने वाला, लेकिन बहुत उपयोगी नहीं। झाओ बुजियांग नाराज नहीं था। उसने आज पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। दूसरों के शब्दों में ठंडे तानों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। बिना दिखावे के शान से घर लौटना रात में ब्रोकेट पहनने जैसा था, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि शान से घर लौटने के बाद आपको दिखावा करना होगा, है ना? गरीबों को तुच्छ समझना, अमीरों से डरना, जिनके पास है उनसे घृणा करना, जिनके पास नहीं है उन पर हंसना। वह अब केवल कम प्रोफाइल रखना चाहता था और बेहतर होगा कि कोई भी उस पर ध्यान न दे, ताकि वह गुप्त रूप से विकसित हो सके और प्रतियोगिता का समापन करने के लिए अंत में उभर सके। ली युनरुई चिंतित भाव से दौड़ी और झाओ बुजियांग को सीट पर ले गई। ये जानने के बाद कि झाओ बुजियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसने झाओ बुजियांग की बिल्ली के बच्चे को सहलाया। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी। झाओ बुजियांग ने चुपचाप अपना खाना खाया, गर्म शराब पी, संगीत सुना और दूसरों को आनंद लेते, बातें करते, पिच पॉट खेलते, शतरंज खेलते या नृत्य करते देखा। पुरानी पीढ़ी जो झाओ बुजियांग का मजाक उड़ाती थी ने तब रुचि खो दी जब उन्होंने देखा कि झाओ बुजियांग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लीजा युआन और झाओ टिंगाजियाओ ने केवल झाओ बुजियांग को देखा, एक को परवाह नहीं थी, दूसरे को चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लॉज में शांतिपूर्ण दृश्य के विपरीत प्रतिभाशाली युवक शिकार में व्यस्त थे। रात करीब आ रही थी और उन्हें अंधेरा होने से अधिक जानवरों का शिकार करना था। शिकार के मैदान में तीर चल रहे थे, खुरों की आवाजें आ रही थीं और जानवर दहाड़ रहे थे। लॉन्ग जान कम समय में स्वर्गीय तलवार को नहीं बुला सका, लेकिन खाली हाथ होने पर भी उसके पास अत्यंत मजबूत युद्ध शक्ति थी जिसने पीड़ा में चिल्ला रहे जानवरों के एक समूह का वध कर दिया और उसने इस दौरान जमा हुआ सारा गुस्सा जानवरों पर निकाल दिया। उसकी बड़ी बहन द्वारा उसे धोखा देने और झाओ बुजियांग के साथ घुलने मिलने की घृणा, झाओ बुजियांग द्वारा उसकी स्वर्ग तलवार का आधा हिस्सा ले लेने से घृणा, झाओ बुजियांग की नफरत उसकी वरिष्ठ बहन की शक्ति का उपयोग पैतृक अदालत में उसे अनुचित स्थिति में हराने के लिए करती है, और झाओ बुजियांग की नफरत ने उसके राजकुमार बनने के रास्ते को काट दिया जिससे वह शीर्ष पर पहुंच गया। लॉन्ग जान हत्या के इरादे से भर गया और अधिक से अधिक जानवर उसके चारों ओर गिर पड़े। आसमान में अंधेरा छाने लगा। जैसे ही शिकार की घंटी बजी, इसका मतलब था कि सभी शिकारियों को आधे घंटे के भीतर शिकार के मैदान से निकल जाना था और अपने द्वारा शिकार किए गए जानवरों की संख्या गिननी शुरू करनी थी। जो लोग देर से पहुंचते, उनके शिकार किए गए जानवर जब्त कर लिए जाते। शिकार के मैदान के सभी भागों से लोगों की एक विशाल धारा बाहर निकलने की ओर दौड़ी। पुरानी पीढ़ी के लोग पेट भर खाकर, शराब पीकर और 1-2 घंटे की झपकी लेकर घंटी बजने के कुछ देर बाद ही धीरे धीरे इंतजार करने लगे। कौन प्रथम स्थान जीतेगा? लियुजियांग की राजकुमारी से शादी करेगा? क्या ये लॉन्ग जान था? क्या वह कोई राजकुमार था? या फिर वह किसी उच्च अधिकारी का बेटा था? या शायद किसी धनी व्यापारी का बच्चा? वैसे भी ये झाओ बुजियांग नहीं होगा। पुरानी पीढ़ी ने झाओ बुजियांग को देखा जिसमें किसी भी तरह की हताशा की भावना नहीं थी। झाओ बुजियांग उनसे भी ज्यादा उत्साहित लग रहा था। क्या उसे नहीं पता था कि उसने एक प्यारे और बेकार छोटे जानवर के अलावा किसी और चीज का शिकार नहीं किया था? एक साधारण व्यक्ति शर्मिंदा होता और दूसरों का सामना करने में असमर्थ होता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि झाओ बुजियांग की चमड़ी काफी मोटी थी। जैसे ही दूर से धूल उड़ती हुई निकट आई, घोड़े पर सवार होकर लौट रहे युवा प्रतिभावानों का जयघोष के साथ स्वागत किया गया और उन्हें घोड़ों से उतार दिया गया। कनिष्ठ अधिकारियों ने शिकार की गिनती शुरू कर दी। छोटे जानवरों को, जिन्हें खींचना आसान था, सामान्यतः संख्या के आधार पर गिना जाता था, जबकि बड़े जानवरों को, जिन्हें खींचना कठिन होता था, उनके कटे हुए कानों की संख्या के आधार पर गिना जाता था तथा केवल बाएं कान को पहचाना जाता था, ताकि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के शिकार को उठाकर ये दिखावा न कर सके कि उसने ही शिकार करके संख्या पूरी कर ली है। लॉन्ग जान प्रतिभाशाली युवाओं के समूह के बीच खड़ा था। उसकी आभा असाधारण थी, उसका पूरा व्यक्तित्व अत्यंत आत्मविश्वासी था। जैसे ही गिनती समाप्त हुई, संस्कार मंत्री ने सूची ली और भीड़ की उत्सुक निगाहों के सामने जोर से घोषणा की कि लॉन्ग जान ने सबसे अधिक जंगली जानवरों का शिकार किया है। जैसे ही ये शब्द निकले, कई अधिकारियों ने सिर हिलाया, उनकी आंखें लॉन्ग जान के प्रति संतुष्टि और आशावाद से भर गईं। हालांकि कई प्रतिभाशाली युवा कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थे, ये सोचकर कि अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए तो वे लॉन्ग जान से आगे निकल सकते हैं, वे अभी के लिए इसे केवल स्वीकार कर सकते थे। लॉन्ग जान की मार्शल ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी और एक जनरल के रूप में उनके घुड़सवारी और तीरंदाजी कौशल बहुत कुशल थे, जिससे शिकार करना दैवीय सहायता प्रतीत होता था। अधिक से अधिक लोग लॉन्ग जान की प्रशंसा करने लगे और कई अधिकारियों ने ली जायुआन की प्रशंसा करने का अवसर लिया और कहा कि सम्राट की आंखें बहुत समझदार थीं और वे लॉन्ग जान की क्षमता को महत्व देते थे। लॉन्ग जान ने विनम्रता और नम्रता से व्यवहार किया, हर किसी को जवाब दिया, झाओ बुजियांग की ओर देखा और अपने दिल में गुनगुनाया। इस बार वह झाओ बुजियांग से बहुत आगे निकल गया था। ली जायुआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, अपने शपथ ग्रहण भाई झाओ टिंगजियाओ को देख रहा था और एक मुस्कान प्रकट की। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हमेशा लॉन्ग जान का पक्ष लिया था और झाओ बुजियांग को नापसंद किया था, इसलिए वह इस समय प्रसन्न था। इस समय उपस्थित सभी लोगों में लॉन्ग जान और ली जायुआन के अलावा सबसे प्रसन्न व्यक्ति यून जिनशु था, जिसने ली जियांग की राजकुमारी के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया था। यून जिनशु अब बहुत खुश थी, उसका सुंदर चेहरा उसकी मुस्कान को छुपाने में असमर्थ था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो वह अंततः अपने छोटे भाई लॉन्ग जान से विवाह कर लेगी। यून जिनशु की आंखें कांप उठी जब उसने भीड़ में उत्साही लॉन्ग जान को देखा। यदि केवल जूनियर भाई लॉन्ग जान उससे शादी कर ले तो वह और जूनियर भाई परिवार बन जाएंगे, घनिष्ठ और अविभाज्य बन जाएंगे और वह लियू जियान को बहाल करने में उसकी मदद कर पाएंगे। यून जिनशु की नज़र लॉन्ग जान ने महसूस की और भीड़ के पार उसकी नज़र उससे मिली। अब जब वह प्रथम स्थान जीत चुका था तो उसने यून जिनशु से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। सीनियर सिस्टर यून दुबली पतली और आकर्षक थी और आज की भव्य पोशाक ने उनकी मूल सुंदरता में कुलीनता का स्पर्श जोड़ दिया था। उसकी नाजुक विशेषताएं, कोमल भौहें और आंखें ये दर्शाती थीं कि विनम्र और परिष्कृत वरिष्ठ बहन उसकी बहुत परवाह करती थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने, लॉन्ग जान ने, अन्य वरिष्ठ बहनों से कभी महसूस नहीं किया था। लिंग किंगक्सु हमेशा उसके प्रति उदासीन रही थी, वह उसके साथ रहने के बजाय झाओ बुजियांग के साथ रहना पसंद करती थी, कभी उसकी परवाह नहीं करती थी। इसके अलावा सीनियर सिस्टर यू की मार्शल आर्ट की समझ बहुत अधिक थी, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। सीनियर सिस्टर की मदद से वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। सीनियर सिस्टर की पिछली अस्वीकृति केवल इसलिए थी क्योंकि लियू जियांग को बहाल करना बहुत मुश्किल था और वह अभी भी हिचकिचा रहा था, इसलिए नहीं कि सीनियर सिस्टर अच्छी नहीं थी या उसे उसकी परवाह नहीं थी। जब अनुष्ठान मंत्री ने घोषणा की कि लॉन्ग जान ने सबसे अधिक शिकार किया है तो उसने जानवरों या उनके कानों को देखा और अचानक आह भरी। पुरानी पीढ़ी के कई लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने संस्कार मंत्री को आहें भरते देखा। महामहिम, आप क्यों आह भर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जानवरों का शिकार होते हुए नहीं देख सकते? ऐसा नहीं है, संस्कार मंत्री ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और भावुक होकर कहा, यह अधिकारी केवल इस बात पर विलाप कर रहा है कि इस शरदकालीन शिकार में अभी भी केवल साधारण जानवर ही हैं। इस अधिकारी को आज भी कई साल पहले की बात याद है, जब यह अधिकारी संस्कार मंत्रालय में एक छोटा सा अधिकारी था। उस साल शरद ऋतु के शिकार के दौरान किसी ने शिकार के मैदान से एक युवा राजा जानवर को पकड़ लिया था। राजा जानवर राजाओं की सवारी बनने के लिए पैदा होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा जानवर का दिखना महान जिया साम्राज्य की समृद्धि का संकेत है। यह अफसोस की बात है कि इस अधिकारी ने कई सालों से राजा जानवर के शावक को पकड़ा हुआ नहीं देखा है। यहां तक कि एक राजा जानवर भी आज लोगों द्वारा शिकार किए जाने वाले सभी जानवरों से अधिक मूल्यवान है। ये वास्तव में दुख की बात है, लेकिन राजा जानवर सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये सामान्य है कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है। पुरानी पीढ़ी ने भी आह भरी। पिछले वर्षों में कई शिकारियों ने जानवरों के राजा को देखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी जानवरों के शावकों को नहीं देखा है। एक जानवर राजा के हाथों से एक जानवर शावक को पकड़ना मुश्किल है। यदि वे एकजुट भी हो जाएं तो भी कोई उम्मीद नहीं है। शिकार के मैदानों में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, जो सभी प्रतिस्पर्धी हैं। इस बार हमने जानवर राजा को देखा, लेकिन दुर्भाग्य से जानवर राजा बहुत शक्तिशाली था। हमने सेना में शामिल होकर केवल उसके फर को खरोंचा, जिससे उसे मामूली चोटें आईं, एक शिकारी ने अफसोस जताते हुए कहा। वे जानवर राजा के घोंसले के पास ही थे, लेकिन किसी ने भी उग्र जानवर राजा को क्रोधित करने की हिम्मत नहीं की। अकेले राजा जानवर शावक को पकड़ना तो दूर की बात है। ओह, संस्कार मंत्री की आंखें चमक उठी, फिर मंद पड़ गईं। जानवर राजा को देखना असामान्य नहीं है। कठिनाई तो राजा जानवर शावक को पकड़ने और उसका पालन पोषण करने में है। ये राजा जानवर का बच्चा इतना कीमती होते हुए भी कैसा दिखता है? किसी ने पूछा, जब उसने पुरानी पीढ़ी को इतनी आहें भरते देखा। झाओ बुजियांग चुपचाप भीड़ के पीछे चला गया। उसने अपनी बाहों से झांकते हुए छोटे जानवर के सिर को दबाया। छोटे जानवर को लगा कि झाओ बुजियांग उसके साथ खेल रहा है और उसने फिर से अपना सिर बाहर निकाला, उत्सुकता से चारों ओर देखा। ये राजा जानवर शावक, अनुष्ठान मंत्री ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। इस अधिकारी को ठीक से याद नहीं है। यह अधिकारी उस समय बहुत दूर खड़ा था और पास नहीं आ सका। मैं केवल इतना देख सका कि यह संभवतः बर्फ सफेद रंग का था। ये बर्फ की तरह सफेद था। पुरानी पीढ़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। यह आदमी एक बूढ़ा राजकुमार था, अच्छी तरह से जानकार और कई अदालती विवादों को देख चुका था। यद्यपि उनके कोई संतान नहीं थी, फिर भी शाही परिवार और अधिकारी उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी अधिकारी झुके। बूढ़ा राजकुमार अपनी बैसाखी पर झुक गया और आह भर कर बोला, इस बूढ़े आदमी ने एक राजा जानवर शावक को देखा था। वयस्क राजा जानवर भयंकर और दबंग होते हैं, जिससे लोग उनके पास जाने से डरते हैं। लेकिन शावक बर्फ की तरह सफेद रोएदार होते हैं और विशेष रूप से प्यारे लगते हैं, जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा या पिल्ला। उनकी चीखें साफ और तीखी होती हैं, अन्य छोटे जानवरों की तरह की नर्म और चिपचिपी आवाज नहीं होती। वे चौंकने पर तीखी आवाज में नहीं चिल्लाते, बल्कि दहाड़ने की हिम्मत करके उन लोगों या चीजों को डरा देते हैं जो उन्हें चौंका देती हैं। दादाजी सम्राट, क्या राजा जानवर शावक की आंखें कांच की तरह बैंगनी हैं? एक राजकुमार ने अचानक पूछा। बूढ़ा राजकुमार आश्चर्यचकित हुआ और उसने दयालुता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुमने सही अनुमान लगाया, राजा जानवर शावक की बड़ी आंखें वास्तव में नीलम की तरह हैं। फिर सवाल पूछने वाले राजकुमार ने सही अनुमान लगाया, क्योंकि उसने झाओ बुजियांग की बाहों से झांकते हुए छोटे जानवर को देखा था। उसने झाओ बुजियांग की ओर इशारा किया, उसका दिल धीरे धीरे भय से भर गया और वह हकलाते हुए बोला, दादाजी सम्राट, वो देखो, झाओ बुजियांग क्या पकड़े हुए है। बूढ़े राजकुमार और अन्य लोगों ने उस दिशा में देखा जिस ओर राजकुमार इशारा कर रहा था और वे सभी दंग रह गए। बूढ़ा राजकुमार अपनी बैसाखी के सहारे उसके करीब झुका, अपनी बूढ़ी आंखों को भारी थैलों से सिकोड़ते हुए और सिर हिलाया, उसकी आंखें दया से भरी थीं। हाँ हाँ, यही है। ये छोटा सा लड़का किसका है? ये राजा जानवर कहाँ से आया है? बूढ़ा राजकुमार बूढ़ा था और उसकी याददाश्त कभी अच्छी और कभी खराब होती थी, जो सभी के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि झाओ बुजियांग की बाहों में छोटा शावक, जो बिल्ली के बच्चे जैसा दिखता था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बूढ़े राजकुमार ने राजा जानवर शावक का वर्णन किया था। हाहा, ये तो बस एक बिल्ली है बूढ़े सम्राट, आप गलत हैं। झाओ बुजियांग ने हंसते हुए राजा जानवर के बच्चे को अपनी बाहों में दबा लिया और उलझने की कोशिश की। हाँ, राजा जानवर के बच्चे ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला। उसने इतने सारे सीधे खड़े वानरों की निगाहों को महसूस किया और कुछ खतरा महसूस किया। एक धमकी भरी दहाड़ लगाई, जैसे कि वह किसी को भी काट लेगा जो मौत के करीब जाने की हिम्मत करेगा। ये धमकी भरी दहाड़ तेज नहीं थी, लेकिन जो छोटे जानवर पकड़े गए थे और जमीन पर पड़े थे, उन्होंने राज जानवर की शक्ति को महसूस किया और भागने की कोशिश में अपने अंगों को जोर से मारने लगे। पूरी जगह अचानक शांत हो गई। पहले हो सकता है कि बूढ़े राजकुमार को गलतफहमी हो, लेकिन अब झाओ बुजियांग की बाहों में छोटे जानवर की दहाड़ ने निस्संदेह उसकी पहचान साबित कर दी थी। किस अन्य पशु शावक में ऐसी शक्ति हो सकती है? ये दहाड़ वैसी ही थी जैसा कि बूढ़े राजकुमार ने बताया था, जो चौंकने पर डरपोक नहीं थी, बल्कि केवल रोकने का साहस रखती थी। चुप्पी के बाद सभी अधिकारी चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ बुजियांग, जो इत्मीनान से दिखता था और जिसके पास कोई फसल नहीं थी, वास्तव में चुपचाप राजा जानवर के शावक को पकड़कर भाग्य बना लेगा, जिसे इतने सारे प्रतिभाशाली युवा पकड़ने में असफल रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ बुजियांग के कपड़े फटे हुए थे जब वह जल्दी लौटा। उसने जानवर राजा से जानवर शावक को पकड़ने के लिए जानवर राजा के साथ बुद्धि और साहस का मुकाबला किया होगा। जैसा बाप वैसा बेटा, एक अधिकारी ने कहा। महामहिम द्वारा नियुक्त राजकुमार पत्नी होने के योग्य, राजकुमार झाओ का प्रिय पुत्र। इस शिकार में वह बहुत आगे है, राजा जानवर शावक को पकड़ रहा है। और भी अधिकारी प्रतिक्रिया देने लगे। वे पहले भी लॉन्ग जान और महामहिम की प्रशंसा करते रहे थे, लेकिन अब हवा बदल गई और वे महामहिम और झेनबेई के राजकुमार की प्रशंसा करने लगे। मैंने झाओ शिजी की प्रतिभा को बहुत पहले ही देख लिया था। बाकी सभी लोग खूनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल झाओ शिजी के दिल में बाघ था और वह गुलाबों की खुशबू सूंघता था। वह घमंडी या उतावला नहीं था, बल्कि स्थिर और सावधान था। उसने अपनी शानदार बुद्धि से राजा जानवर को पकड़ लिया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ शिजी पहले इतने इत्मीनान से थे। ये पता चला कि वह आश्वस्त था। ये बूढ़ा आदमी पहले अंधा था। स्वर्ग महान जिया को आशीर्वाद दे और इसका भाग्य समृद्ध हो। बधाई हो महामहिम। इससे पहले राजकुमार झाओ उत्तरी सीमा पर दमन कर रहे थे और कुछ दिनों पहले उन्हें झाओ शिजी जैसा एक उत्कृष्ट दामाद मिला। ये वास्तव में महान जिया का सौभाग्य है। लॉन्ग झान ने उन लोगों के समूह को घूर कर देखा जो पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अब वे झाओ बुजियांग की प्रशंसा कर रहे थे। वह पहली जगह जो उसने अभी अभी अपने हाथों में ली थी उससे छीन ली गई। मुख्य बात यह थी कि यह व्यक्ति झाओ बुजियांग था जो अचानक प्रकट हुआ था। झाओ बुजियांग ने राजा जानवर शावक को कैसे पकड़ा? वह जानवर राजा द्वारा पूरे रास्ते पीछा किया गया था। वह बहुत परेशान था। झाओ बुजियांग के पास ऐसा कौन सा गुण या योग्यता थी जिससे वह जानवर राजा को पकड़ सके? झाओ बुजियांग द्वारा राजा जानवर को पकड़ना उसकी, लॉन्ग झान की, शर्मिंदगी पर आधारित नहीं होगा, है ना? धिक्कार है झाओ बुजियांग पर। लॉन्ग झान ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि काश वह अपनी तलवार से झाओ बुजियांग को मार डालता। वह आदतन अपनी कमर को छूने के लिए आगे बढ़ा, अचानक स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा, जो पहले से ही उदास था, एक पल में ही मुरझा गया। उसे फिर याद आया, उसकी स्वर्गीय तलवार कहाँ थी? अब तो अच्छा है, बड़ी बहन भी चली जाएंगी। आह, मेरी बड़ी बहन कहाँ है? युन जिनशु मूल रूप से अपने कनिष्ठ भाई लॉन्ग झान से शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ बुजियांग की बाहों में छोटा जानवर वास्तव में एक राजा जानवर का शावक होगा, जिससे झाओ बुजियांग को शीर्ष स्थान जीतने का मौका मिलेगा। और वह, युन जिनशु, वास्तव में झाओ बुजियांग से शादी करने जा रही थी, वह कमीना। इससे उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। TWKANCOM, वह झाओ बुजियांग से बिल्कुल शादी नहीं करेगी, उस कमीने से। उसे मना करने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। मुझे मना करना होगा। कौन किसी लियुजियांग राजकुमारी से शादी करना चाहेगा? वह मेरे लायक क्यों है? एक गिरी हुई राजकुमारी जिसे कोई नहीं चाहता, हमेशा पुरुषों को लुभाने की कोशिश करती रहती है। पहले उसने लॉन्ग झान की तलाश की और जब वह लॉन्ग झान से खुश नहीं हुई तो उसने चाहा कि मैं लॉन्ग झान को संभालूं और उसे भड़काऊं। मेरे मना करने के बाद वह इस भयानक विचार के साथ आई। फिगर और रूप के मामले में उसकी तुलना युन रुई और लियु रुयान से कैसे की जा सकती है? मुझसे शादी करोगी? उसे कौन चाहता है? युन जिनशु ने झाओ बुजियांग की आवाज़ सुनी और वह अविश्वास से झाओ बुजियांग को देखने लगी, जिसने अपना मुंह नहीं खोला था और थोड़ा कठोर दिख रहा था। उसने झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुना। मुख्य बात यह थी कि झाओ बुजियांग उससे भी अधिक अनिच्छुक था। झाओ बुजियांग उससे अधिक अनिच्छुक क्यों था? वह गिरी हुई राजकुमारी जिसे कोई नहीं चाहता। युन जिनशु गुस्से में थी। ये पहली बार था जब किसी आदमी ने उसे इतना नापसंद किया था और यह उसके दिल की गहराई से नापसंदगी थी। आप सभी का धन्यवाद। झाओ बुजियांग का इस युन जिनशु से शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने भीड़ की ओर अपने हाथ जोड़े और ली ज़ायुआन की ओर थोड़ा झुका। मैं अपनी पत्नी ली युनरुई से बहुत प्यार करता हूँ और फिलहाल मेरा कोई रखेल रखने का इरादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस शरदकालीन शिकार के प्रथम पुरस्कार के रूप में लियु जियांग राजकुमारी से शादी करने का मामला रद्द हो जाएगा। ली युनरुई ने झाओ बुजियांग को स्नेह भरी निगाहों से देखा। ली ज़ायुआन ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ बुजियांग राजा जानवर के बच्चे को पकड़कर शीर्ष स्थान जीत लेगा। वह लियु जियांग राजकुमारी को झाओ बुजियांग के पास नहीं भेजना चाहता था ताकि वह उसकी बेटी के साथ पक्षपात के लिए प्रतिस्पर्धा करे। वह झाओ बुजियांग के विनम्र इनकार से सहमत नहीं हुए और उन्होंने लियु जियांग राजकुमारी के साथ विवाह रद्द करने पर सहमति जताई। लेकिन जैसे ही वह हाथ हिलाकर आदेश देने वाला था, युन जिनशु, जिसने इस दृश्य को देखा था, और अधिक क्रोधित हो गई। वह सीधे लाइन से बाहर निकल गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, राजा के शब्द मजाक नहीं होते। पूरा लियु जियांग हमेशा से आपकी प्रशंसा करता आया है। लियु जियांग के दिल में आप लंबे और राजसी हैं और लोगों के साथ दयालुता से पेश आते हैं। आपने दुनिया से किए अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटे। आपने पहले कहा था कि आप शरद ऋतु के शिकार में पहला स्थान मेरे पति के रूप में चुनेंगे और आपके शब्द सोने की तरह हैं। चूंकि झाओ शिजी ने शरद ऋतु के शिकार में पहला स्थान जीता है, इसलिए मुझे युन जिनशु को उससे शादी करनी होगी। ली ज़ायुआन का हाथ जम गया और वह खुद को अकड़ने से नहीं रोक सका। राजा के शब्द मजाक नहीं होते। उसने पहले भी इतने लोगों के सामने ऐसा कहा था, तो क्या अब वह अपनी बात से मुकर सकता है? लॉन्ग झान को झाओ बुजियांग के विनम्र इनकार से राहत मिली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बड़ी बहन झाओ बुजियांग से शादी करने पर जोर देगी। उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। आज क्या हो रहा है? दुर्भाग्य, विश्वासघात और अलगाव। झाओ बुजियांग भी दंग रह गया। इस महिला को क्या हुआ है? उसे मुझसे शादी करनी है। क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? क्या वह बेशर्मी से जिद कर रही है? वह क्या साजिश रच रही है? अपनी अनिच्छा की साजिश रचते हुए, अपनी नाखुशी की साजिश रचते हुए। युन जिनशु ने झाओ बुजियांग के मन की बात सुनी और अपने दिल में ठंडी सांस ली। क्या झाओ बुजियांग उससे शादी करने के लिए अनिच्छुक नहीं था? क्या उसे नहीं लगता था कि वह एक गिरी हुई राजकुमारी थी जिसे कोई नहीं चाहता था? फिर वह आज झाओ बुजियांग को घृणा करेगी। इसके अलावा वांग मेंशन में शादी करने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि लोगों के दिलों की गहन समझ और इतिहास के संदर्भ में वह निश्चित रूप से झाओ बुजियांग जैसे किसी व्यक्ति को संभालने में सक्षम होगी। वह अपनी दो छोटी बहनों को भी बचा सकती थी ताकि उसकी दो छोटी बहनें अब झाओ बुजियांग के बहकावे में न आए। झाओ बुजियांग जितनी अधिक दुखी थी उतनी ही अधिक खुश भी थी। जितना अधिक झाओ बुजियांग उससे छुटकारा पाना चाहता था उतना ही अधिक वह झाओ बुजियांग को परेशान करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि झाओ बुजियांग उसके साथ क्या कर सकता है। क्या वह उससे छुटकारा पा सकता था? क्या वह उसे फेंक सकता था? एक राजा के शब्द मजाक नहीं होते। चूंकि मैंने ये कह दिया है इसलिए मैं कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ली ज़ायुआन राजसी भाव से भरा हुआ था। अपने दिल में पक्ष विपक्ष तौलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया। चूंकि झाओ बुजियांग ने राजा जानवर को पकड़ लिया और पहला स्थान जीता, इसलिए लियू जियांग राजकुमारी यून जिनशु से शादी करने के लिए एक शुभ दिन चुने। धन्यवाद महाराज, यून जिनशु ने यह सुना अपनी भौहें नीची की और सिर हिलाया। उसका स्वर सम्मानपूर्ण था। उसने झाओ बुजियांग की ओर देखा। उसकी भौहें और आंखें गर्व से भरी हुई थी कि उसने झाओ बुजियांग को पराजित कर दिया था। लॉन्ग झान ने भीड़ में ये दृश्य अचंभित होकर देखा। उसे लगा कि आकाश फिर से ढह गया है। उसकी बड़ी बहन, आह, वह एक के बाद एक झाओ बुजियांग की तरफ कैसे भागी। बूढ़े हंस, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? झाओ बुजियांग ने भी आह भरी और अपना माथा रगड़ा, लेकिन वह मना नहीं कर सका। ली ज़ायुआन ने पहले ही यून जिनशु से दोबारा शादी करने पर जोर दिया था, इसलिए वह क्या कर सकता था। ली यूनरुई ने भौहें सिकोड़कर सोचा, पिता सम्राट क्या कर रहे हैं? ये वह कृपा है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ली ज़ायुआन की नज़र झाओ बुजियांग की बाहों में युवा राजा जानवर पर पड़ी। उसे यह युवा राजा जानवर बहुत पसंद आया। अपने मन को मोड़ते हुए उसने दयालु दिखते हुए झाओ बुजियांग से कहा, इस शरदकालीन शिकार में आपने अच्छा काम किया और आपने मुझे निराश नहीं किया। दक्षिया उत्कृष्ट लोगों की भूमि है। ये राजा जानवर प्यारा और राजसी दोनों है, भले ही यह अभी भी युवा है। ये वास्तव में आध्यात्मिक है। झाओ बुजियांग का दिमाग तेजी से घूम गया। वह ली ज़ायुआन के निहित अर्थ को कैसे नहीं समझ सका। ये और कुछ नहीं बल्कि ली ज़ायुआन की बड़ी क्षमता वाले राजा जानवर शावक के प्रति रुचि थी और वह चाहता था कि वह जानबूझकर राजा जानवर शावक को उसे सौंप दे। लेकिन चूंकि राजा जानवर झाओ बुजियांग की बाहों में आ चुका था तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे सौंप सकता था। इसके अलावा ली ज़ायुआन की दयालुता और प्रशंसा अब सिर्फ दिखावा थी, अपने राजा जानवर को पाने की कोशिश कर रही थी। झाओ बुजियांग ने अपनी भौहें नीची की और सिर हिलाया, अपना सिर खुजलाया, बेवकूफ बनने का नाटक किया और कहा, महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ये राजा जानवर शावक वास्तव में आध्यात्मिक है। महामहिम के पास समझदार आंखें हैं और उन्होंने इसे एक नज़र में देखा। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और तब ली ज़ायुआन अवाक रह गया। झाओ बुजियांग को नहीं पता था कि वह वास्तव में मूर्ख था या मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, और उसका इरादा इसे सौंपने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी शादी के दिन मैंने गुप्त रूप से यूनरुई के साथ अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई थी। झाओ बुजियांग जानता था कि ली ज़ायुआन हार नहीं मानेगा और निश्चित रूप से उसे व्यंजनापूर्वक इसे सौंपने के लिए कहेगा या बस दिखावा करना बंद कर देगा और सीधे उसे इसे सौंपने का आदेश देगा। उसे राजा जानवर शावक को रखने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। तो उन्होंने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, इस राजा जानवर शावक को मैंने बहुत प्रयास से पकड़ा है और यह काफी आध्यात्मिक है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का आध्यात्मिक जानवर मेरी पत्नी का साथ दे सकता है। जब वह उग जाए तो उसकी बोरियत दूर कर सकता है और जब वह बड़ी हो जाए तो उसकी रक्षा कर सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, झाओ बुजियांग ने अपने हाथों से रोएदार राजा जानवर शावक को बाहर निकाला और उसे ली यूनरुई को सौंपते हुए स्नेहपूर्वक कहा, एक मुस्कान 100 सुंदरियों को मोहित कर सकती है और हॉल में उपस्थित सभी सुंदरियां अपना रंग खो देती हैं। मेरी पत्नी, मुझे आशा है कि आपको अपने पति का यह उपहार नापसंद नहीं आएगा। ली यूनरुई की आंखें स्नेही थी और उसके मुंह के कोने रोने वाले थे, लेकिन ये दुख नहीं था बल्कि खुशी और आंसू थे। वह सीधे आगे बढ़ी और सबके सामने झाओ बुजियांग को जमकर चूमा। झाओ बुजियांग ने ली यूनरुई को गले लगाया और उसके माथे को चूमा। दोनों के प्रेमपूर्ण दृश्य को देखकर राजपरिवार और अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की। ली यूनरुई ने राजा जानवर शावक को कसकर गले लगाया, ली ज़ायुआन और झाओ टिंगज़ियाओ को प्रणाम किया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और थोड़ा सिसकते हुए ईमानदारी से कहा, धन्यवाद पिता सम्राट और पिताजी उस समय विवाह तय करने के लिए ताकि यूनरुई को ऐसा पति मिले। झाओ टिंगज़ियाओ की आंखें कोमलता से भरी थी और वह अपने बेटे की प्रगति से बहुत प्रसन्न था। ली ज़ायुआन ने अपने दिल में आह भरी और असहाय और दयालुता से मुस्कुराया। राजा जानवर शावक यूनरुई के हाथों में आ गया था, इसलिए क्या वह उसके पिता के रूप में यूनरुई को उसे सौंपने के लिए मजबूर कर सकता था। भूल जाओ शिजी और राजकुमारी का वैवाहिक जीवन सुखमय है और वे बहुत प्यार करते हैं। ये बूढ़ा मंत्री बहुत भावुक है। एक भूरे बालों वाले मंत्री ने अनजाने में बह रहे आंसुओं को पोंछ दिया। उसे अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ गई और अतीत में उसका भी एक मधुर और प्रेमपूर्ण रिश्ता था। क्या वाक्य है, एक मुस्कान 100 सुंदरियों को मोहित कर सकती है और हॉल में सभी सुंदरियां अपना रंग खो देती हैं। महामहिम शिजी की अद्भुत प्रतिभा इस बूढ़े व्यक्ति को आह भरने पर मजबूर कर देती है और वह राजकुमारी के प्रति शिजी के स्नेह पर भी आह भरता है। ये देखा जा सकता है कि शिजी के दिल में राजकुमारी की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। मंत्रियों ने एक के बाद एक चर्चा की। झाओ गुजियांग और ली युनरुई के बीच प्रेम पर आहें भरी, लेकिन जैसे जैसे चर्चा जारी रही विषय में कुछ अन्य विचार भी जुड़ गए। शिजी और राजकुमारी पहले से ही बहुत प्यार करते हैं, कोई भी हस्तक्षेप क्यों करना चाहेगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है? जबरदस्ती से बनाया गया खरबूजा मीठा नहीं होता, फिर इसके मूल रस में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? ये स्पष्ट है कि चीजें बदल सकती हैं और अंत में हर कोई खुश हो सकता है, लेकिन उन्हें एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मंत्रियों की चर्चा फुसफुसाहट में बदल गई, लेकिन फुसफुसाहट पूरी तरह से छिपी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ शब्द व्यक्तिगत रूप से कहना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें कहना पड़ा। यून जिनशु का चेहरा बदसूरत था। ये फुसफुसाहटें और समय समय पर उसे देखने वाली निगाहें उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठी हो। हर शब्द में उसका जिक्र नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि ये मंत्री हर शब्द में उसे डांट रहे थे। मेरी पत्नी और मैं एकदम सही जोड़ी हैं, अब तुम्हारी बारी कैसे आ सकती है राक्षस की? तुम आकर इसे नष्ट कर दो। मुझे बस एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है और मैं तुम्हें हर तरह की डांट फटकार झेलने पर मजबूर कर सकता हूँ। यून जिनशु को अपने दिल में पीड़ा महसूस हुई और उसने अचानक झाओ गुजियांग की ओर देखा। झाओ गुजियांग ने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा और ली युनरुई के प्रति स्नेही था, लेकिन झाओ गुजियांग के आंतरिक विचार उसे सुनाई दे गए। ये पता चला कि यह सब झाओ गुजियांग की गणना में था। किसी को मारने के लिए चाकू का उपयोग करना, वह मूल रूप से झाओ गुजियांग को घृणास्पद बनाना चाहती थी और झाओ गुजियांग के खिलाफ साजिश करना चाहती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झाओ गुजियांग इतनी जल्दी उसके खिलाफ पलटवार करेगा और खुद कोई कार्रवाई किए बिना वह इन लोगों का इस्तेमाल उसे अपमानित करने के लिए करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, झाओ गुजियांग, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। दिन लंबे हैं और जब मैं वांग हवेली में प्रवेश करूंगा तो आपको एक शानदार अनुभव मिलेगा। मंत्रियों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की, प्रेम प्रसंग पर विलाप किया और राजकुमारी लियू जियांग की अनुचित भावनात्मक उलझनों की आलोचना की। ली युनरुई ने अपना गोरा गाल झाओ गुजियांग की छाती पर टिका दिया, उसकी जलन भरी गर्मी को महसूस किया। उसकी आंखें कोमल थीं और उसकी निगाहें झाओ गुजियांग पर टिकी हुई थीं। जब गुजियांग गंभीर होता है तो उसकी तलवार जैसी बहें और तारों भरी आंखें वास्तव में सुंदर लगती हैं। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, वह गुजियांग की आंतरिक आवाज सुन सकती थी, लेकिन ये रुक रुक कर आ रही थी। उदाहरण के लिए, अभी जब राजकुमारी लियू जियांग ने गुजियांग से शादी करने पर जोर दिया तो उसके दिल में विचार आए होंगे, लेकिन वह उन्हें सुन नहीं पाई। TWKANCOM, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे तभी सुन सकती है जब इसका उससे कोई संबंध हो? ली युनरुई की शंकाएं फिलहाल अनसुलझी रहीं। झाओ गुजियांग के विचार जटिल और भारी थे। एक ही चाल से उसने एक पत्थर से दो पक्षियों को मार गिराया, राजा जानवर के शावक के लिए ली ज़ायुआन की लालच को धीरे से खारिज कर दिया और भीड़ के शब्दों से यून जिनशु को अपमानित किया। उसने एक अद्भुत चाल चली, लेकिन इस समय वह शतरंज की बिसात पर खड़ा हुआ एक शतरंज के मोहरे में तब्दील हो गया था। बाहर देखने पर उसे शतरंज का एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। जहां उसकी नजर नहीं पहुंच पा रही थी वहां हत्या का इरादा छिपा हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह उन सभी बातों पर पुनर्विचार करने लगा जो उसने अब तक अनुभव की थी। मूल कहानी के अनुसार उसे सगाई रद्द होने के दौरान बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और उसे शरद ऋतु के शिकार में नहीं दिखना चाहिए था। लॉन्ग जान शरद ऋतु के शिकार का चैंपियन था और ली ज़ायुआन ने लॉन्ग जान को पुरस्कृत किया। ली ज़ायुआन, झाओ गुजियांग की तलवार जैसी भौहें अचानक कांप उठी और उसकी रीढ़ की हड्डी में तेजी से ठंड फैल गई। मूल कहानी की समय रेखा के अनुसार ली ज़ायुआन अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र के कमजोर दौर में प्रवेश करने वाला था। ये झाओ गुजियांग द्वारा नहीं बदला जाएगा, एक ऐसा चर जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। ली ज़ायुआन की ताकत बिल्कुल मजबूत थी। उसने अपने दाव को साबित करने के लिए भावनाओं को काट दिया। उसने अतीत में अपने पिता और भाइयों को मार डाला था, लेकिन वह बुरे सपनों से ग्रस्त था। कुछ समय के बाद वह अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र के कमजोर दौर में प्रवेश करेगा, ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में वापस गिर जाएगा। कमजोर पड़ने की अवधि के दौरान ली ज़ायुआन की ताकत दुनिया के तीन महान ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में केवल थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसका संदेह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। और इस अवधि के दौरान ली ज़ायुआन निर्दयी, उदासीन और बेहद क्रूर था, जो अपने लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के बजाय निर्दोष को मारना पसंद करता था। दूसरे शब्दों में, ली ज़ायुआन द्वारा कमजोर अवधि के दौरान सभी भावनाओं की उपेक्षा करने और झाओ टिंगज़ियाओ, जिसने अपनी वास्तविक शक्ति खो दी थी, और झाओ गुज़ियांग, जिसने ली युनरुई से शादी कर ली थी, के साथ व्यवहार करने की बहुत संभावना थी। उनका, उनके पिता झाओ टिंगशियाओ और वानफू का शांतिपूर्ण और अब कोई विवाद नहीं वाला जीवन वास्तव में एक बुलबुले की तरह था, जो अभी तक चिलचिलाती धूप से प्रकाशित नहीं हुआ था, जो हल्के से स्पर्श से बुझ जाएगा। ली युनरुई को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि झाओ गुज़ियांग का शरीर एक पल के लिए तनावग्रस्त हो गया था। उसने चिंता से पूछा, क्या गलत? बस थोड़ा सा डर लग रहा है। झाओ गुज़ियांग ने ली युनरुई की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा, अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसे ली युनरुई के चिकने माथे पर दबाया। तुम किस बात से डर रहे हो? ली युनरुई ने झाओ गुज़ियांग की आंखों में देखा। तुम्हें खोने का डर? और पिता? झाओ गुज़ियांग ने ली युनरुई को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो कुछ ही दूरी पर ली ज़ायुआन के साथ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और धीरे से अपनी कुछ लाल आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो छिपा हुआ डर गायब हो गया, केवल दृढ़ संकल्प बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाही शहर लौटने के दूसरे दिन लॉन्ग जहान अभी भी चिंतित था। स्वर्गीय तलवार खो गई थी और सीनियर सिस्टर बेवजह झाओ गुज़ियांग से शादी करना चाहती थी। क्या हो रहा था? लॉन्ग जहान परेशान था और यहां तक कि उसकी साधना प्रगति भी अक्सर उसकी भावनाओं के कारण बाधित हो रही थी। जब तक कि दरवाजा धक्का देकर नहीं खोला गया, युन जिनशु, जो राजकुमारी लियोजियांग के रूप में होंगलू मंदिर जिले में रह रही थी, कमरे में दाखिल हुई। वह कल रात ही लॉन्ग जहान को समझा सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर एक रात के लिए लॉन्ग जहान को नजरअंदाज कर दिया और आज सुबह भी वह धीरे धीरे आई। वरिष्ठ बहन, लॉन्ग जहान खड़ी हुई और पूछे बिना न रह सकी, तुम्हें झाओ गुज़ियांग से शादी क्यों करनी है? क्या ये सब तुम्हारे लिए नहीं है? युन जिनशु ने अभी भी लॉन्ग जहान को लियोजियांग साम्राज्य को बहाल करने में मदद करने का विचार नहीं छोड़ा और गहरी आवाज में कहा, यही अवसर है। बाघ की मांद में प्रवेश किए बिना आप बाघ शावक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वरिष्ठ बहन, इस विश्वासपात्र झाओ गुज़ियांग से छुटकारा पाने में आपकी मदद करने के लिए मुझे उसकी और भी बातें समझने की जरूरत है। बड़ी बहन, लॉन्ग जहान अभी भी चिंतित था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। चिंता मत करो, युन जिनशु बहुत आश्वस्त था। मैं रुयान और किंगक्सु नहीं हूँ। इतिहास की किताबों में झाओ गुज़ियांग जैसे कई लोग दर्ज हैं। इतिहास को दर्पण और लोगों को दर्पण के रूप में लेते हुए उनके छोटे विचार मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चले जाओ। झाओ गुज़ियांग ने वानफू गेट को बंद कर दिया और यू जिनशु को अस्वीकार कर दिया जो आया था। जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। वानफू बेकार लोगों का समर्थन नहीं करता। झाओ गुज़ियांग, युन जिनशु ने गहरी सांस ली। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और वानफू में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, लेकिन कौन जानता था कि झाओ गुज़ियांग उसे शुरू से ही रोक देगा। वह गुस्से से बोली, हमारा विवाह महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया गया था। क्या आप शाही आदेश की खुलेआम अवहेलना करने जा रहे हैं? बेशर्म, झाओ गुज़ियांग ने बेबाकी से कहा, अभी शुभ दिन नहीं चुना गया है। तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाओ। हम्फ, मैं अपनी दो छोटी बहनों से मिलने आई हूँ। युन जिनशु ने कारण खोजना जारी रखा। उसे आज इस वानफू में प्रवेश करना ही था। जितना अधिक झाओ गुज़ियांग ने उसे अंदर नहीं आने दिया, उतना ही इसका मतलब था कि झाओ गुज़ियांग वास्तव में अपने दिल में उससे डरता था। ये जानते हुए कि वह बुरी नीयत से आ रही है, उसने उसे देखने के लिए दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। दरवाजे के पीछे झाओ गुज़ियांग का चेहरा सख्त था और ली युरुयान और लिंग किंगक्सु के चेहरे पर भी भद्दे भाव थे। जब से उन्हें पता चला कि युन जिनशु झाओ गुज़ियांग से शादी करने जा रही है, तब से वे बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। क्या होगा अगर युन जिनशु भी झाओ गुज़ियांग के लिए यहां होता? झाओ गुज़ियांग का चेहरा सख्त था। उसे युन जिनशु की चिंता नहीं थी, लेकिन ली ज़ायुआन द्वारा लाए गए संकट की भावना उसके दिल में बनी हुई थी। वह ली ज़ायुआन की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानता था कि वह कब उस पर और उसके पिता पर हमला करेगा। शायद यह एक वर्ष था, शायद ये कुछ महीने थे, शायद ये कुछ दिन थे, या शायद कल। उसे तत्काल अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता थी और युन जिनशु, वह उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। युन जिनशु की समझ और मार्शल आर्ट में प्रतिभा का उपयोग करके उसे अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र को बढ़ाने में मदद कर सकता था। लेकिन जितनी अधिक उसे इसकी आवश्यकता थी, उतना ही अधिक उसे शांत रहना पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, वानफू आलसी लोगों का समर्थन नहीं करता। तुम कमजोर और दुर्बल हो और तुम्हारा मार्शल आर्ट क्षेत्र केवल 9वें स्थान पर है। तुम किस काम के हो? थोड़ा आत्मज्ञान प्राप्त करो, बाहर निकलो। युन जिनशु ने उपहास किया। हे झाओ बुजियांग, आपकी चाल बहुत कमजोर है। आप मुझसे मार्शल आर्ट की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, है ना? दरवाजे के पीछे झाओ बुजियांग ने मुड़कर देखा और चला गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे देखा जाएगा। जिस दिन से यू जिनशु ने कल उससे शादी करने पर जोर दिया, यू जिनशु को आज वांगफू के द्वार में कदम रखने की कीमत चुकानी होगी। वह कई महिलाओं के साथ काम कर चुका था और वह इस तरह की रणनीति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। युन जिनशु ने शुरू में उम्मीद की थी कि झाओ बुजियांग को देखा जाने के बाद वह हताश हो जाएगा, लेकिन उसने धीरे धीरे दूर जाने वाले कदमों की आवाज़ सुनी। झाओ बुजियांग वास्तव में उसे उकसा रहा था, लेकिन साथ ही वह सच भी कह रहा था। वांगफू ने बेकार लोगों का समर्थन नहीं किया और उसे अपनी क्षमता साबित करनी थी। उदाहरण के लिए, जूनियर बहन रुयान की ड्रैगन उठाने वाली पवित्र देह, जूनियर बहन किंगक्सु की शादी की पोशाक दिव्य कला। झाओ बुजियांग, युन जिनशु ने दरवाजे पर दस्तक दी और उत्सुकता से कहा, मैं आपकी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं और मैं आपकी तलवार पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकता हूं। वांगफू के अंदर झाओ बुजियांग रुका, पीछे देखा और लियू रुयान के साथ नजरें मिलाईं। वह दरवाजे के बाहर युन जिनशु के मूड के नीचे गिरने का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां रगड़ी और मन ही मन गिनने लगा। दो सांसों के बाद उसने लियू रुयान को सिर हिलाकर हाँ कर दी। लियू रुयान ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर युन जिनशु थोड़ा नाराज थी कि उसने बहुत देर से बात की थी। ये झाओ बुजियांग सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलता था। जब वह गलत कदम उठाने के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी, तभी दरवाजा धीरे से खुला और उसने दो छोटी बहनों और झाओ बुजियांग को देखा जो दूर जा रहा था। इसके बाद झाओ बुजियांग का अंतिम अल्टीमेटम भी आया, मुझसे मिलने के लिए बगल के आंगन में आओ, तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए बस एक कप चाय जितना समय है। राजकुमार के भवन का पार्श्व प्रांगण। यू जिनशु ने झाओ बुजियांग की उदासीन अभिव्यक्ति पर नजर डाली, इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि झाओ बुजियांग ने वर्तमान में पहल की है, क्योंकि अंत में वह निश्चित रूप से नियंत्रण में होगी। इससे पहले जूनियर भाई लॉन्ग झान भी उसके प्रति बहुत उत्साही नहीं था, लेकिन उसके मार्गदर्शन के बाद उसकी ताकत बढ़ गई और क्या वह अब उसके प्रति अधिक उत्सुक नहीं था। एक बार जब उसने मार्शल आर्ट पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की तो उसने अपनी योग्यता साबित कर दी। झाओ बुजियांग को उसकी पूजा करनी होगी। युन जिनशु ने अपना मुंह खोला। रुयान शिमी की ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर आपके लिए एक बड़ी मदद है ना? लेकिन आपको ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर की अड़चन को महसूस करना चाहिए था। मैं ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता हूँ। मैं आपके सच्चे यांग हॉट सूत्र को और भी मजबूत बना सकता हूँ। शादी के दिन पैतृक दरबार में लॉन्ग झान के साथ आपकी लड़ाई की मेरी समझ और समीक्षा के आधार पर शादी की पोशाक का दिव्य कौशल, जिसे आप और किंगक्सु शिमी एक साथ विकसित करते हैं, वह अभी भी अधूरा है। मेरे पास आपकी तेजी से प्रगति करने में मदद करने के तरीके भी हैं। लियू रुयान और लिंग किंगक्सु ने एक दूसरे को देखा और दोनों के माथे पर बल पड़ गए। झाओ बुजियांग ने उदासीनता से कहा, अभी आपके पास आधा कप चाय का समय है। युन जिनशु ने मन ही मन झाओ बुजियांग को कोसा, उसका चेहरा काला पड़ गया, उसे दिखावा करने का पछतावा हुआ। उसने अपना भाषण तेज कर दिया। ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर का आनंद लेने के लिए सच्चे यांग हॉट सूत्र का उपयोग करना अनिवार्य रूप से एक निश्चित सीमा तक ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर की शक्ति को रोकना है। रुयान शिमी की शक्ति आपके द्वारा बहुत अधिक बाधित कर दी गई है और उसकी अपनी ताकत लगभग स्थिर हो गई है, जबकि आपकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है और आपके क्षेत्रों के बीच का अंतर बढ़ गया है, जिससे ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर आपकी मदद कम और कम कर रहा है। इसलिए आपको शिमी के मार्शल आर्ट क्षेत्र को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वह आपकी शक्ति के अनुकूल हो सके। जहां तक शादी के गाउन के दिव्य कौशल की बात है, आपको और किंगक्सु शिमी को एक दूसरे के साथ वास्तव में ईमानदार होना चाहिए और आपसी समझ होनी चाहिए, जिसके लिए यिन और यांग के संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल यिन और यांग के संतुलन से ही यिन और यांग का मिश्रण हो सकता है। जब आप मुझ में और मैं आप में हो, तो विवाह पोशाक के दिव्य कौशल का उपयोग स्वाभाविक रूप से निर्बाध होगा। हे, लेकिन दुर्भाग्य से किंगक्सु शिमी आपके पक्ष में है, लेकिन वह खुद को आपके भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? बस ये दो बातें ही आपको, कुछ ऐसा कहो जो मैं नहीं जानता। झाओ बुजियांग ने यू जिनशु के दम को बलपूर्वक बाधित करते हुए अपना हाथ लहराया। वह युन जिनशु से और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उसने पहले ही इन दो बिंदुओं का अनुमान लगा लिया था, हालांकि मूल कार्य में इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन उसने खुद ही एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया था। उन्होंने पहले भी लिंग किंगक्सु का परीक्षण किया था, आध्यात्मिक और शारीरिक समलन के विचार का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लिंग किंगक्सु अलग थी और उसने इस शर्मीले विचार को अस्वीकार कर दिया था। आप, युन जिनशु ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसकी राय में झाओ बुजियांग बस उसे मुफ्त में लाभ पहुंचाना चाहता था। अगर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जो झाओ बुजियांग को पता नहीं था, तो झाओ बुजियांग कैसे जान सकता था। अब जब यून जिनशू ने ये कहा है, तो ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक और भौतिक सम्मलन, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वास्तव में सही है। वेडिंग गाउन, अगर यह स्वेच्छा से नहीं है, शरीर आपके नियंत्रण में है और आपका दिल आपके नियंत्रण में है, तो यह वेडिंग गाउन कैसे बन सकता है? यू जिनशू ने आश्चर्य से झाओ बुजियांग को देखा। क्या झाओ बुजियांग वास्तव में जानता था? उसकी मार्शल आर्ट की जानकारी खराब नहीं थी और वह वास्तव में उसे मुफ्त में लाभ पहुंचाने का नाटक नहीं कर रहा था। झाओ बुजियांग, यू जिनशू ने सोचा और धीरे से कहा, शायद आपके पास सचमुच कोई रास्ता हो। हालांकि अगर रुयान शिमी अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है और ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर की शक्ति को बढ़ाना चाहती है, तो इस दौरान आप ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर का आनंद लेने के लिए सच्चे यांगहॉट सूत्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपके क्षेत्र में वृद्धि की दर धीमी हो जाएगी। मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखा सकता हूं जिससे आप अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र में तेजी लाने के लिए ड्रैगन नर्चरिंग सेक्रेट बॉडी को सुरक्षित रूप से उधार ले सकेंगे और साथ ही साथ शिमी की ताकत को भी आपकी शक्ति के अनुकूल होने में मदद मिलेगी। लियु रुयान की आंखों में खुशी दिखाई दी। झाओ बुजियांग के साथ बिताए समय के दौरान उसकी शक्ति वास्तव में हर बार थोड़ी कमजोर हो गई। वह भी खुद को सुधारना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह वैसे भी झाओ बुजियांग को मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार झाओ बुजियांग ने जोर दिया। वह हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यिन और यांग के पारस्परिक पूरकता का तरीका। झाओ बुजियांग को याद आया कि मूल पुस्तक में उल्लेख किया गया था कि यून जिनशू मूल रूप से लॉन्ग झान को यह सिखाना चाहती थी और फिर लॉन्ग झान की शक्ति को खुद में वापस लाना चाहती थी ताकि वह अभ्यास करने में असमर्थता की भरपाई कर सके। लेकिन अब चूंकि यून जिनशू उसके पास आ गया था, इसलिए यह मार्शल आर्ट निश्चित रूप से लॉन्ग झान को फिर से नहीं भेजी जा सकती थी। आपको कैसे मालूम? तुम मेरे झेनबेई राजकुमार के महल की बुद्धिमत्ता को बहुत कम मानते हो, है ना? झाओ बुजियांग ने हल्के से कहा। यून जिनशू पूरी तरह से हैरान था। झाओ बुजियांग को ये तकनीक कैसे पता चली? झेनबेई राजकुमार की हवेली, जैसा कि अपेक्षित था, ये शक्तिशाली है, झाओ बुजियांग ने आग्रह किया। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। यदि तुम दर्जनों गिनती में यिन और यांग पारस्परिक पूरकता के मार्ग को पूरी तरह से समझा सकते हो, तो तुम भविष्य में राजकुमार के महल में आने और जाने के लिए स्वतंत्र होगे। यद्यपि मूल कार्य में इसका उल्लेख था, लेकिन अभ्यास का विशिष्ट विवरण वहां नहीं था और यून जिनशू को इसे स्वयं सिखाना पड़ा। झाओ बुजियांग की आक्रामक पद्धति सुनकर, दर्जनों गिनती, हम, उसने अभी भी उसे बहुत कम आंका है, यून जिनशू, बहुत कम। उसे दर्जनों गिनती की क्या जरूरत थी? यून जिनशू ने एक महिला शिक्षिका के स्वर में प्रश्न पूछते हुए कहा। कान के भीतर यांग, ली के भीतर यिन, यिन और यांग के पारस्परिक पूरकता के मार्ग का मूल ऐसा ही है, क्या आप समझते हैं? समझना, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यून जिनशू उलझन में दिख रही थी। वह जानबूझकर चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी। झाओ बुजियांग को मारना चाहती थी, लेकिन ये बच्चा कैसे समझ सकता था? मैंने केवल 6 शब्द कहे थे, तभी तुम समझ गए। हाँ, ये बहुत सीधा है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, ठीक है, झाओ बुजियांग ने कहा। आप राजकुमार के भवन में आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको राजकुमार के भवन के नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले कि यून जिनशू और अधिक प्रश्न पूछ पाता, झाओ बुजियांग ने पहले ही लिंग किंगक्सू और लियु रुयान की ओर देखा था। आप में से कौन मेरे साथ यिन और यांग पारस्परिक अनुपूरण के इस तरीके को आजमाने के लिए आएगा? लिंग किंगक्सू अभी भी हिचकिचा रहा था। लियु रुयान ने सबसे पहले एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई बोल पाता, चलिए पहले लियु रुयान के साथ प्रयास करते हैं। अगर यह काम करता है, तो यह लियु रुयान को अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है, जिससे ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर को मजबूत किया जा सकता है। लिंग किंगक्सू के लिए, वह ठंडी है, वह निश्चित रूप से आसानी से मेरी मदद नहीं करेगी, इसलिए चलो उसे अभी के लिए अकेला छोड़ दें। ये सोचते हुए झाओ बुजियांग ने सीधे लियु रुयान को खींच लिया। आप, लिंग किंगक्सू को बहुत बुरा लगा। उसे अलग थलग महसूस हो रहा था। वे अकेले ही खेलने जा रहे थे और उन्होंने उसे शामिल होने के लिए भी नहीं कहा। यून जिनशू ने लिंग किंगक्सू के विचारों को समझा। ऐसा लगता है कि शिमी ने झाओ बुजियांग के साथ विश्वास हासिल नहीं किया है। लिंग किंगक्सू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यून जिनशू ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं देर से आया हूँ, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि झाओ बुजियांग, हालांकि थोड़ा दुखी है, वास्तव में उतना असहनीय नहीं है जितना बाहरी दुनिया कहती है। उसके पास कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो एक आदमी के पास होनी चाहिए, इसलिए जो महिलाएं उसके साथ रह सकती हैं, वे सभी उपयोगी होंगी। यू जिनशू का व्यंग्य स्पष्ट था। लियु रुयान के पास ड्रैगन पोषण करने वाला पवित्र शरीर था, जो झाओ बुजियांग को अभ्यास करने में मदद कर सकता था। युन जिनशु विभिन्न मार्शल आर्ट में निपुण थे जो झाओ बुजियांग को प्रबुद्ध कर सकते थे, लेकिन उसके पास, लिंग किंगक्सु के पास, शादी के गाउन के दिव्य कौशल के अलावा और क्या था जिसे झाओ बुजियांग ने कभी कभी इस्तेमाल किया था। लिंग किंगक्सु की अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई और वह तीनों में सबसे अलग भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ बुजियांग भी उसके प्रति बहुत ठंडा था। वास्तव में युन जिनशु ने भी ऐसा ही सोचा था। आखिरकार वह अपनी ताकत के आधार पर पीछे रह गई थी। जब तक वह मार्शल आर्ट की अपनी समझ दिखाती रहेगी, झाओ बुजियांग को उसकी पूजा करनी होगी। शायद भविष्य में उसे ली युनरुई की जगह लेने का मौका मिलेगा और देश को बहाल करने का उसका सपना भी साकार होने का एक बड़ा मौका होगा। लेकिन दूरी में झाओ बुजियांग अचानक चिल्लाया, वैसे अगर आप मुझे सिखाते हैं तो आप लॉन्ग झान को नहीं सिखा सकते, अन्यथा मैं आपको तलाक दे दूंगा। ये कहकर उसने जल्दी से लियू रुयान को कमरे में खींच लिया। आप नहीं, झाओ बुजियांग का क्या मतलब है? क्या उसे उसके प्रति उत्साहित नहीं होना चाहिए और उसका सम्मान नहीं करना चाहिए? युन जिनशु, जो लंबे समय से आत्मसंतुष्ट नहीं थे, तुरंत पीले पड़ गए। कमरे के अंदर झाओ बुजियांग लियू रुयान के साथ यिन और यांग पूरक के महान ताओ की खेती कर रहा था। कमरे के बाहर युन जिनशु ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए आग को हवा देना जारी रखा। किंगक्सु, क्या तुमने रुयान की मोहक कराहें सुनी? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपसे कभी आ सके। रुयान केवल झाओ बुजियांग द्वारा अधिक से अधिक मूल्यवान बन जाएगा, जबकि आप न तो झाओ बुजियांग आपको महत्व देता है, न ही आप अपनी अलग जिद छोड़ने को तैयार हैं। क्या आप अभी भी झाओ बुजियांग के पक्ष में उतने ही आत्मविश्वास से खड़े हो सकते हैं जितने आत्मविश्वास से आपने उस दिन मुझे अस्वीकार किया था? तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांगती, मुझसे, अपनी बड़ी बहन से, उस दिन अपने किए के लिए माफी क्यों नहीं मांगती? और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपनी असली कीमत कैसे दिखानी है। दर्पण पुष्प, जल चंद्रमा तथा दुल्हन के वस्त्र की दिव्य कला जो गुरु ने तुम्हें सिखाई थी, उसमें से तुमने कितनी समझ ली है? विश्वास करें या ना करें, मेरे थोड़े से मार्गदर्शन से आपकी तीव्र प्रगति के बाद झाओ बुजियांग आपको एक खजाने के रूप में मानेंगे। वरिष्ठ बहन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिंग किंगक्सु ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए तैयार हो गई। यह मामला मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं जानता हूं कि क्या करना है। तुम्हें पता है, युन जिनशु का गुस्सा फिर भड़क उठा। ऐसा क्यों था कि किसी ने उसे वांग निवास पर अच्छी तरह से नजर डालने नहीं दिया? वह ठंडी सांस लेकर बोली, अगर तुम्हें सचमुच पता होता तो अब दरवाजे के बाहर रुयान खड़ा होता, तुम नहीं। तुम, लिंग किंगक्सु, बस आत्मधर्मी और अभिमानी हो। जब रुयान की साधना आपसे आगे निकल जाएगी, जब मैं झाओ बुजियांग से शादी करूंगी, तब आप समझ जाएंगी कि उस दिन आपका मुझे अस्वीकार करना कितना दयनीय था। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने झाओ बुजियांग के साथ रहना चुना, बल्कि इसलिए कि आप मजबूर थे, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप अपना मूल्य दिखाना चाहते हैं, झाओ बुजियांग के साथ सहयोग करने के लिए मास्टर के आदेशों का पालन करना चाहते हैं और मास्टर की दयालुता को चुकाना चाहते हैं, लेकिन आप अपना मूल्य नहीं दिखा सकते हैं, आप अवसर को भी नहीं छीन सकते हैं। तुम जूनियर भाई लॉन्ग झान के पास वापस चली जाओ, कम से कम वहां तुम्हें अपनी कीमत दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक शांत सुंदरता, एक गमले में लगे फूल की तरह रहो, बस इतना ही काफी है। लिंग किंगक्सु का चेहरा और भी ठंडा हो गया। युन जिनशु, जूनियर सिस्टर किंगक्सु, युन जिनशु ने अपना मुंह ढक लिया और बहुत प्रसन्नता से हंस पड़ी। वह फिलहाल झाओ बुजियांग को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या वह लिंग किंगक्सु को नियंत्रित नहीं कर सकती थी? जब तक वह वांग निवास में प्रवेश करेगी, दोनों छोटी बहनों को पीछे की सीट लेनी होगी। उसके दिमाग में दो पूरी योजनाएं थीं। पहली यह कि झाओ बुजियांग की कमजोरियों को पूरी तरह से समझ लिया जाए और साथ ही दोनों छोटी बहनों को उनकी गलतियों का एहसास कराया जाए। दूसरा था ली युनरुई का स्थान लेना। झाओ बुजियांग को लियू जियांग को बहाल करने में मदद करने दें। वह झाओ बुजियांग की महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण बनना चाहती थी, दो छोटी बहनों की तरह नहीं। अपनी छोटी बहन के साथ टकराव में युन जिनशु की मौखिक जीत ने उस आक्रोश को काफी हद तक खत्म कर दिया जो उसने उस समय झाओ बुजियांग द्वारा विफल किए जाने से जमा किया था। जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी, अचानक दरवाजा खुल गया और झाओ बुजियांग आधे कंबल में लिपटा हुआ दरवाजे पर खड़ा था। क्या तुमने पर्याप्त शोर मचा दिया है? तुम्हारी आवाज इतनी तेज है कि यह मेरी और रुयान की दोहरी साधना में बाधा डाल रही है। लिंग किंगक्सु वांग निवास में जो करना चाहती है वह उसकी स्वतंत्रता है, आप कौन होते हैं उसे यह बताने वाले कि उसे क्या करना है? लिंग किंगक्सु ने झाओ बुजियांग को अचंभित होकर देखा, उसका दिल नर्म हो गया, उसने अपने होंठ काट लिए और एक तरह की एकत्नीय भावना उमड़ पड़ी। तुम उसकी रक्षा भी कर रहे हो? युन जिनशु का गुस्सा फिर से उभर आया। वांग निवास बेकार लोगों का समर्थन नहीं करता है, यह आपने कहा था। हाँ, झाओ बुजियांग ने सिर हिलाया, वही जो मैंने कहा, यही तो मैंने बाहरी लोगों से कहा था। युन जिनशु अवाक रह गई, उसका हाथ कांप रहा था जब उसने झाओ बुजियांग की ओर इशारा किया। मैं आपकी मंगेतर पत्नी हूँ। सबसे पहले यह एक उपपत्नी है और दूसरी बात, अभी तक इसकी सगाई नहीं हुई है, झाओ बुजियांग ने उदासीनता से कहा। युन जिनशु का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी तरकीबें नहीं जानता? तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो झाओ बुजियांग? क्या आप मुझे मौखिक रूप से दबाने और लिंकिंगक्सु का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि लिंकिंगक्सु आपकी दयालुता को महसूस कर सके? अंत में लिंकिंगक्सु स्वेच्छा से आपके साथ रहती है और आपकी महिला बन जाती है। मैं बुरे आदमी की भूमिका निभाऊंगा और आप अच्छे आदमी की भूमिका निभाएंगे, है ना? तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ लोगों को चुरा नहीं रहे हो? चोरी, झाओ बुजियांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या झाओ बुजियांग को अपनी पसंद की महिलाओं को चुराने की जरूरत है? अगर किंगजू इस समय मेरी दुश्मन होती तो मैं उसे पाने के लिए प्रतिशोधी और बेईमान होता। अब जब वह वांग निवास में है तो मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी पर दबाव डालने या किसी को चुराने की जरूरत नहीं है। लिंकिंगक्सु ने अपने लाल होंठ को कसकर काटा। झाओ बुजियांग के उसके पक्ष में दिए गए उचित तर्कों ने उसके दिल में कड़वाहट की लहर पैदा कर दी। उस दिन जूनियर सिस्टर रुयान के शब्दों की तरह जब उसने युन जिनशु को अस्वीकार कर दिया था, झाओ बुजियांग ने वास्तव में वांग निवास में उनके साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। ये तो बहुत अहंकारी बात है, युन जिनशु ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो फिर जूनियर सिस्टर रुयान की ड्रैगन नर्चरिंग होली बॉडी, आपने उसे शुरुआत में मजबूर नहीं किया, उसने इसे आपको कैसे सौंप दिया? क्या आप उसे वश में करने में सफल रहे? क्या ये तुम ही नहीं थे जिन्होंने उसे मजबूर किया था? उस समय रुयान मेरा दुश्मन था, झाओ बुजियांग ने गहरी आवाज में कहा। मैं, झाओ बुजियांग, हमेशा उन लोगों के बीच अंतर करता हूँ जो मेरे करीब हैं और जो मेरे करीब नहीं हैं। मैं तर्क नहीं करता, मैं केवल भावनाओं के बारे में बात करता हूँ। यदि आपके मन में मेरे लिए भावनाएं हैं तो आप मेरे साथ समझदारी से पेश आएं। युन जिनशु ने निगल लिया, थोड़ा प्यासा महसूस कर रहा था। झाओ बुजियांग के उन लोगों के बीच अंतर करने का वाक्य जो उसके करीबी थे और जो नहीं थे, उसके सभी शब्दों को अवरुद्ध कर दिया। झाओ बुजियांग अपने दुश्मनों और अपने करीबी लोगों के साथ दो अलग अलग तरह से पेश आता था। उसे यह बात बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ बुजियांग ने यह जानने के बाद भी कि मार्शल आर्ट की उसकी समझ उत्कृष्ट है, उसके लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। ये पता चला कि मूल रूप से वह और झाओ बुजियांग अभी भी एक प्रतिकूल स्थिति में थे जिसमें निकटता का कोई संबंध नहीं था। युन जिनशु ने खुद को दिलासा दिया कि भविष्य में बहुत समय होगा। झाओ बुजियांग को नीचे गिराना एक दिन का प्रयास नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक कमरे की व्यवस्था करें। जाओ और उस बूढ़े बटले को खोजो, झाओ बुजियांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। झाओ बुजियांग के लापरवाह रवैये को देखते हुए युन जिनशु ने एक बार फिर लोगों के प्रति झाओ बुजियांग के व्यवहार में अंतर महसूस किया। उसने अपने दिल की बेचैनी को बलपूर्वक दबाया और अपनी आस्तीन झटक कर चली गई। युन जिनशु के चले जाने के बाद झाओ बुजियांग का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। वरिष्ठ बहन किंगक्सु, क्या आप ठीक हैं? लिंग किंगक्सु ने अपनी नजर हटा ली जो झाओ बुजियांग पर टिकी हुई थी, अपने लाल होठों को दबाया और झिझकी। आपका पिछला सुझाव, मैंने उस पर विचार किया है। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, झाओ बुजियांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी कहने से पहले सोच विचार कर लें। हालांकि झाओ बुजियांग ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, वह पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका था और दरवाजा बंद कर चुका था। झाओ बुजियांग को उसकी कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वह जूनियर सिस्टर रुयान के लिए चिंतित था। इस भावना ने अनायास ही उसके आक्रोश को बढ़ा दिया। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, भौहें सिकोड़ते हुए एक गहरी सांस ली और सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वरिष्ठ बहन क्विंगशु, लियू रुयान की आंखें आकर्षक थीं, जैसे ही वह झाओ बुजियांग के साथ कोमल क्षणों को साझा करने वाली थी, अप्रत्याशित रूप से लिंकिंगक्सु ने सीधे दरवाजे को खोल दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसने पहले नहीं दिखाया था। झाओ बुजियांग, मैंने इस पर विचार किया है। लिंकिंगक्सु का स्वर दृढ़ था, उसकी निगाहें अविचल थीं। उसे डर था कि अगर उसने फिर से हिचकिचाहट दिखाई तो वह पीछे हट जाएगी और उसके और झाओ बुजियांग के बीच दरार पैदा हो जाएगी जो धीरे धीरे उन्हें और दूर ले जाएगी। झाओ बुजियांग स्तब्ध रह गया। वह वर्तमान में लियू रुयान के साथ यिन और यांग के दाव का अन्वेषण कर रहे थे। मनुष्य को एक बार में एक ही निवाला चावल खाना चाहिए तथा उसे एक दिन में एक ही रखेल का प्रबंध करना चाहिए। प्रतिदिन 10,000 रखेलों का प्रबंधन करने से थकावट और मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, यह मामला तत्काल जरूरी नहीं है। ये सुनकर लिंकिंगक्सु ने अनुमान लगाया कि झाओ बुजियांग के दिल में उसका महत्व कम हो रहा था। उसे भी वैसे ही प्रयास करना था जैसे जूनियर सिस्टर रुयान ने पहले किया था। गूगल सर्च TWKAN झाओ बुजियांग, क्या आप मेरे साथ दुल्हन की पोशाक की दिव्य कला की साधना करने के लिए तैयार नहीं हैं और केवल ये चाहते हैं कि मैं व्यर्थ में परिश्रम करूं? झाओ बुजियांग ने समझाया, इस पर ज्यादा मत सोचिए, मैं अभी व्यस्त हूं, हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। तो अब क्यों नहीं? लिंग किंगक्सू को यकीन हो गया कि झाओ बुजियांग उसे धोखा दे रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने सीनियर बहन युन जिनशू को धोखा दिया था। झाओ बुजियांग इस बात से पूरी तरह हैरान रह गया और उसने असमंजस में पूछा, ये ठीक है क्या? रुयान, तुम चले जाओ। लिंग किंगक्सू अभी भी पहले की तरह अलग थलग थी, लेकिन इस समय उसमें और भी अधिक दृढ़ता थी। लियू रुयान ने अपनी आंखें घुमाई, सूखी खांसी की और झाओ बुजियांग की कमर से हट गई, खुद से सोचते हुए, क्या ये हो सकता है कि वह झाओ बुजियांग और सीनियर सिस्टर किंगक्सू की छेड़खानी का हिस्सा थी? ब्राइडल गाउन दिव्य कला, एक दूसरे से ईमानदारी से मिले। लिंग किंगक्सू को नहीं पता था कि वह अपनी शर्म को शांत कर रही थी या ब्राइडल गाउन दिव्य कला का सही अर्थ साझा कर रही थी, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी सफेद पोशाक उतार दी। रुयान, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। आह, मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? लियू रुयान ने जवाब दिया। जल्दी से उसे एहसास हुआ कि सीनियर सिस्टर किंगक्सू भी यह ब्राइडल गाउन दिव्य कला उसे देना चाहती थी। यदि वह इच्छुक है तो यह व्यर्थ परिश्रम नहीं है, बल्कि विवाह का वस्त्र है। लिंग किंगक्सू ने यह कहा, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। वह झाओ बुजियांग के पास जाने से कुछ डर रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे, लेकिन अगले ही पल उसकी गोरी त्वचा शर्म से लाल हो गई, उसे झाओ बुजियांग ने खींच लिया। दुल्हन का गाउन दिव्य कला, इच्छुक शरीर व्यक्ति का अपना है और आत्मा हृदय की है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। दोनों ने उफनती हुई लहर की तरह भयानक गति के साथ खेती की। लियू रुयान ने पहले कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी और वह लड़ाई में शामिल हो गई, अपनी वरिष्ठ बहन द्वारा सिखाए गए ड्रैगन पोषण संत शरीर और दुल्हन गाउन शरीर का उपयोग करते हुए झाओ बुजियांग के साथ बहती हुई लहरों के ऊपर चली गई, शिखर पर खड़ी होकर दुनिया को देखती हुई। झाओ बुजियांग की ताकत लगातार बढ़ती गई और वह मार्शल आर्टिस्ट के 5वें रैंक में आधा फुट आगे बढ़ गया। यदि वह लिंग किंगक्सू और लियू रुयान की शक्ति उधार लेने के लिए फिर से ब्राइडल गाउन दिव्य कला का उपयोग करता, तो भले ही अब उसका सामना चौथे दर्जे के मार्शल कलाकार से होता, उसके पास लड़ने की शक्ति मुश्किल से ही होती। ताकत में सुधार से सुरक्षा की भावना आई, जिससे झाओ बुजियांग को अस्थायी रूप से राहत की सांस लेने का मौका मिला। लेकिन ली ज़ायुआन द्वारा दिया गया दबाव बहुत अधिक था। बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन मूल उपन्यास पढ़ने के बाद उन्हें पता था कि ली ज़ायुआन वर्तमान में अस्तित्व में एकमात्र ग्रैंड मास्टर था। यद्यपि एक समय पर उनमें कमजोरी भी थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में फिर भी वे तीनों ग्रैंड मास्टरों से थोड़े अधिक मजबूत थे। इसके अलावा ली ज़ायुआन वर्तमान सम्राट था, उन्होंने सत्ता को चरम पर रखा। वह तो मात्र एक राजकुमार था जिसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। शायद यह उसकी झाओ बुजियांग की नियति थी। भले ही वह शुरू में नहीं मरा, लेकिन बाद में विभिन्न आपदाओं में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने लांग झान के खिलाफ हताश होकर लड़ाई लड़ी, उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन वह ली ज़ायुआन के ठंडे और निर्दयी संदेह में मर सकता था। एक था असीम क्षमतावान भाग्य का स्वामी लॉन्ग झान और दूसरा था भयानक रूप से शक्तिशाली ली ज़ायुआन। वह इन दोनों से कैसे लड़ सकता था? दूसरों का जीवन हमेशा सहज रहा, लेकिन उसके लिए हमेशा जीवन मरण की स्थिति रही। उसके सिर पर दो चाकू लटक रहे हैं। क्या वह अभी भी खेल रहा था? अरे, वह नहीं खेल सकता था। न खेलने का मतलब था मौत का इंतजार करना। यदि ली ज़ायुआन या लॉन्ग झान न होते और उसे केवल एक ही व्यक्ति से निपटना होता, तो वह निश्चित रूप से चिल्लाता, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग में नहीं। लेकिन अब वह सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसे जाने दो। वह सिर्फ पत्नियों और रखेलों का एक समूह रखना चाहता था और एक अमीर आदमी बनना चाहता था। वह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। विद्रोह तो दूर की बात है। दोहरी खेती समाप्त होने के बाद झाओ बुजियांग को नवीनतम समाचार मिला कि ली ज़ायुआन ने पहले ही उत्तरी गैरिसन सेना को उत्तरी सीमा पर वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया था। लॉन्ग झान अब उत्तरी गैरिसन सेना को नियंत्रित करने में असमर्थ था। इस बार जब उत्तरी गैरिसन सेना उत्तरी सीमा पर लौट आई, तो लॉन्ग झान ने उसका पीछा नहीं किया, न ही उत्तरी गैरिसन सेना की सैन्य शक्ति उत्तरी राजा को वापस की गई। उत्तरी गैरिसन सेना के राजधानी छोड़ने से झाओ बुजियांग, जो पहले से ही चिंतित था, और भी अधिक चिंतित हो गया। वह सीधे चांग राजकुमारी के भवन में गया। उन्होंने सीधे मुद्दे पर आकर ली झाओहुआ से पूछा, तुम कब विद्रोह कर रहे हो? ली झाओहुआ उनके सीधे सवाल से आश्चर्यचकित हो गई और अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। छोटे बदमाश, अब बहुत देर हो चुकी है। उत्तरी गैरिसन सेना को स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि उत्तरी गैरिसन सेना के बिना भी यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ खड़े हैं या नहीं? वास्तव में उत्तरी गैरिसन सेना चली गई है। झाओ बुजियांग ने ली झाओहुआ की आंखों में शब्द दर शब्द अत्यंत दृढ़ता से देखा। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। ली झाओ हुआ ने चाय पी, उसकी पतली उंगलियां झाओ बुजियांग के चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। मुझे आपका आत्मविश्वास बहुत पसंद है, लेकिन आप हद से ज्यादा आत्मविश्वासी हैं। तुम यहां आकर भी क्या कर सकते हो? झाओ बुजियांग की आंखें ठंडी थी और उसने गहरी आवाज में कहा, आपने बहुत तैयारी की है, लेकिन अब आप एक महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अवसर ली ज़ायुआन की कमजोरी का दौर है ना? आप, ली झाओ हुआ ने अविश्वास से झाओ बुजियांग को देखा। झाओ बुजियांग को ली ज़ायुआन की असली ताकत का कैसे पता चला, और यह भी कि उसकी कमजोरी का दौर भी था। मुझे डर है कि यह बात झाओ टिंगशियाओ को भी पता नहीं होगी, और वह झाओ बुजियांग को भी नहीं बताएगी। झाओ बुजियांग को कैसे पता चला? जब ली ज़ायुआन कमजोरी के दौर में होता है, तब आप विद्रोह करते हैं, है ना? झाओ बुजियांग ने ली झाओ हुआ का हाथ पकड़ लिया। यह आपके विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने अभी तक फैसला नहीं किया है, क्या आप इंतजार नहीं कर रहे हैं? ली झाओ हुआ को झाओ बुजियांग के विचारों का पता चला और उससे लगातार पूछताछ की गई। उसने अब और दिखावा नहीं किया और ठंडी सांस ली। मैं इंतजार कर रहा हूं, तो क्या हुआ? आप जानते हैं कि उसकी कमजोरी का दौर आता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी कमजोरी का दौर कब आएगा। हे, इस बार हंसने की बारी झाओ बुजियांग की थी। उसने नाक सिकुड़ी और ली झाओ हुआ के दूसरे हाथ से चाय का कप छीन लिया। वह ली ज़ायुआन के विचारों का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सका। जब वह कमजोरी के दौर में पहुंच गया तो क्या वह उस पर और उसके पिता पर हमला करेगा? वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता था, क्योंकि यह मूल पुस्तक में नहीं था। मूल पुस्तक में अंत में ली ज़ायुआन ने लॉन्ग ज़ान के बहकावे में आकर उत्तरी राजा को मारने का आदेश जारी किया। उसका इरादा निश्चित रूप से हत्या करने का था। ली ज़ायुआन की हत्या के इरादे के बिना लॉन्ग ज़ान के लिए उत्तरी राजा को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होगा। एक सम्राट जिसकी हत्या करने की मंशा की पुष्टि हो चुकी थी, वह झाओ बुजियांग जुआ कैसे खेल सकता था? क्या आप शर्त लगा सकते हैं कि ली ज़ायुआन का संदेह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और फिर अचानक उसका दिल नरम हो जाएगा? अपने पूरे परिवार की जान किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसके प्रति हत्या का इरादा रखता हो, मूर्ख। इसलिए उसे ली झाओ हुआ के तैयार विद्रोह पर निर्भर रहना पड़ा। उत्तरी गैरिसन सेना चली गई थी, लेकिन वह अभी भी यहां था। वह मूल पुस्तक को जानता था और तियानियों के 13वें वर्ष में ली ज़ायुआन की कमजोरी की अवधि का विशिष्ट समय जानता था। उसने ली झाओ हुआ की चाय एक ही घूंट में पी ली। ली झाओ हुआ के तिरस्कार को पीते हुए ली झाओ हुआ के जैद हाथ को कसकर पकड़ लिया। इस समय पहल करते हुए उसकी आवाज कर्कश, अत्यंत मोहक और ठंडी थी। अगर मैं आपको ली ज़ायुआन की कमजोरी की अवधि का विशिष्ट समय बताऊं, तो क्या होगा अगर मुझे पता चल जाए? ली झाओ हुआ मूल रूप से झाओ बुजियांग के अहंकारी व्यवहार से परेशान था। उनकी राय में झाओ बुजियांग, जो अतीत में उपयोगी था, को चिढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब जब झाओ बुजियांग उपयोगी नहीं था, तो उसने इतना अज्ञानी होने का साहस किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह झाओ बुजियांग के आत्मविश्वास का स्रोत था। यदि झाओ बुजियांग वास्तव में ली ज़ायुआन की कमजोरी का विशिष्ट समय जानता था, तो उसकी विद्रोह की तारीख पूरी तरह से निर्धारित हो सकती थी और कई तैयारियां सटीक हो सकती थी, जिससे विद्रोह में जीतने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन वह हमेशा सतर्क रही हैं और अब भी अनिश्चित रूप से पूछती हैं। बुजियांग, मैं जानता हूं कि तुम एक बच्चे की तरह गुस्से में बातें कर रहे हो, क्योंकि लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं। तुम खुद को साबित करने के लिए कुछ चौंकाने वाली बात कहना या कुछ चौंकाने वाला करना चाहते हो। आपको ये जानना होगा कि हमारा सम्राट अपनी कमजोरी बहुत अच्छी तरह से छुपाता है और कोई भी नहीं जान सकता। असंभव, समझे? कयुबान वर्ष 2, ली ज़ायुआन की कमजोरी का पहला दौर। झाओ बुजियांग ने विचार मंथन किया। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में पन्ने पलट रहे हों, सरसराहट हो रही हो। मूल कार्य में सभी समय सीमाएं उसके दिमाग में उभर आईं और उसने जल्दी से उन्हें सुलझा लिया। उसकी आभा अधिक से अधिक ठंडी और शक्तिशाली होती गई और उसके शरीर में ली झाओ हुआ के प्रति दमन की एक अदृश्य भावना थी। कायुआन वर्ष 3, आपने पहली बार देखा कि ली ज़ायुआन में कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे और आपका विद्रोही हृदय फिर से जागृत हो गया था। कायुआन वर्ष 4, आपको यकीन था कि ली ज़ायुआन में हर साल कमजोरी की अवधि होती थी और आपने अवलोकन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कायुआन के अंतिम वर्ष तक आपने विद्रोह की योजना की लगभग पुष्टि कर दी थी। तियान्यो प्रथम वर्ष, तुमने तैयारी शुरू कर दी है। 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और आप अभी भी ली ज़ायुआन की कमजोरी की विशिष्ट अवधि का पता नहीं लगा सकते हैं। ये शरद ऋतु हो सकती है, ये कठोर सर्दी हो सकती है, या ये शुरुआती वसंत भी हो सकता है। आप यह नहीं बता सकते कि कमजोरी की अवधि शरद ऋतु से वसंत तक रहती है या केवल एक छोटी सी अवधि तक ही रहती है। आप सही कह रहे हैं, हमारा सम्राट खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपाता है, आप पता नहीं लगा सकते। तियान्यो वर्ष 13 तक महान जिया की नियति का अनुपालन करने के लिए वर्ष को जाई में बदल दिया गया था। तियान्यो तेरह जाई में इन वर्षों के अवलोकन और शोध के बाद आपने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया कि यह इस अवधि के दौरान था, लेकिन आपने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। एक गलती पूरी हार का कारण बन सकती थी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि सर्दियों के महीने के छठे दिन, जब तियान्यो तेरह जाई के जिया चेन ड्रैगन वर्ष में भारी बर्फ गिरती है, तो ये ली जायुआन की कमजोरी की अवधि की शुरुआत होगी, जो तियान्यो चौदह जाई की इसी सांप वर्ष के पहले महीने के छठे दिन तक चलेगी। वह अपना ड्रैगन रूप त्याग देगा और सांप में बदल जाएगा, जो इन 20 वर्षों में सबसे कमजोर समय की शुरुआत करेगा। ली झाओहुआ की सांसें कांप उठी। वह अविश्वास में झाओबुजियांग को घूर रही थी, जो पास ही था। उसका दिल धड़क रहा था। जिस क्षण से झाओबुजियांग ने कयुवान वर्ष 3 की बात कही, वह हर बार और अधिक चौंक गई। झाओबुजियांग ने अपनी विद्रोह प्रक्रिया के बारे में बताया। झाओबुजियांग ने झेनबेई सेना खो दी थी और उसकी नजर में उसका कोई विद्रोही मूल्य नहीं था, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गलत थी, बहुत गलत। उसने हमेशा झाओबुजियांग के शतरंज के मोहरे के मूल्य को नजरअंदाज किया था। सर्दियों के महीने तियान्यो तेरह जाई का छठा दिन अब से सिर्फ एक महीने दूर है। क्या ये समय वाकई सच है? उसने अपना मन शांत करने की पूरी कोशिश की और पूछा, मैं कैसे पुष्टि कर सकता हूं कि आपने जो कहा वह सच है? मानो या न मानो, झाओबुजियांग ने धीरे से अपनी पीठ सीधी की और दमन की प्रबल भावना उसकी हड्डियों में फिर से समा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, आपको इन वर्षों में पता होना चाहिए कि अपनी कमजोरी के दौरान ली जायुआन कितना संदिग्ध है। यदि आप अभी भी इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार करें। ली झाओहुआ की आंखें कांप उठी। जब झाओबुजियांग ने अपनी विद्रोह प्रक्रिया बताई तो उसे विश्वास करना पड़ा। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? ली झाओहुआ ने झाओबुजियांग की ओर देखा। मैं अपनी मदद खुद कर रहा हूँ। झाओबुजियांग खड़ा हुआ और घर से बाहर चला गया। उसने वह सब कुछ कर लिया था जो वह कर सकता था और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दिया था। ली झाओहुआ झाओबुजियांग की पीठ को खाली आंखों से देखती रही। उसे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। उसे पहले बहुत उपयोगितावादी नहीं होना चाहिए था और उसे लगता था कि झाओबुजियांग का कोई मूल्य नहीं है, जिसके कारण दोनों के बीच दरार आ गई। उसे इसकी भरपाई करने के लिए समय निकालना पड़ा। शेन हाओ, ली झाओहुआ ने आह भरी और मेज पर दस्तक दी। राजकुमारी, शेन हाओ ने बगल का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्ण भाव के साथ अंदर प्रवेश किया। ली झाओहुआ ने गहराई से सोचा और अपना मन बना लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैं आपको लिंगनान जाकर झेनान राजा से कहने के लिए परेशान कर रहा हूं कि इस वर्ष सर्दियों के महीने के छठे दिन विद्रोह शुरू करें। शेन हाओ का शरीर अचानक अकड़ गया और उसने गंभीरता से अपनी मुठियां भींच ली। हाँ, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शरद ऋतु की हवा जोर से चल रही थी और घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। लॉन्ग जहान अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपना घोड़ा महल के बाहर खड़ा किया, पहरेदारों का अभिवादन किया और महल की सड़क से होते हुए शाही अध्ययन कक्ष की ओर तेजी से बढ़ गए। ऊंची सिंदूरी दीवारें शरद ऋतु में अधिकांश ठंडी धूप को रोक लेती थीं और गहरे महलनुमा रास्ते का कोई अंत नजर नहीं आता था। इस समय उसका हृदय भी ठंडा, एकांत और भ्रमित है। लंबे रास्ते पर अकेले चलना, एक हताश जुआ, ये समाचार कि झेनबेई सेना को स्थानांतरित कर दिया गया है, उसे ध्यान में स्थिर बैठने में असमर्थ बना दिया। झेनबेई सेना के स्थानांतरित हो जाने के बाद वह उत्तरी सीमा का महान सेनापति और भी नामात्र का हो गया। सम्राट, जिसने हमेशा उसका सम्मान किया था, उससे बहुत निराश हुआ होगा। हाल की लगातार हार, स्वर्गीय तलवार की हानि और उसकी वरिष्ठ बहनों के चले जाने से उसे झाओबुजियांग से पूरी तरह से नफरत हो गई। वह जानता था कि उसे जवाबी हमला करना होगा। चूंकि वह अपनी वरिष्ठ बहनों को नहीं रख सकता था और वे सभी कुत्ते के साथ रहने जा रहे थे, तो उसे लॉन्ग जहान द्वारा रिश्तेदारों के धार्मिक विनाश के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, जिससे आत्मभोगी वरिष्ठ बहनों को परिणाम भुगतना पड़ा। लॉन्ग जहान महल की सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता गया और तिरछी धूप धीरे धीरे शाही अध्ययन की ओर जाने वाली सड़क पर गायब हो गई। शांत इंपीरियल स्टडी के प्रवेश द्वार पर वह एक घुटने पर भारी होकर झुके, उनके शब्द गूंज रहे थे। आपका विषय लॉन्ग जहान महामहिम के समक्ष नतमस्तक है। आपके विषय में रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? बोलो। इंपीरियल स्टडी के अंदर से एक आलसी और उदासीन आवाज आई। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए लॉन्ग जहान ने अपनी भौहें नीची की और सिर हिलाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आपके विषय को पहले ही पता चल चुका है कि क्राउन प्रिंस झाओबुजियांग लिंग किंगक्सु को शरण दे रहा है, वह हत्यारा जिसने राजधानी की शांति भंग की और काओ शियाओलान के परिवार को मार डाला। क्राउन प्रिंस वर्तमान प्रिंस कंसोर्ट और शाही परिवार का सदस्य है। आपके विषय ने शाही छवि को नुकसान पहुंचाने के डर से कुछ समय के लिए जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। मैं हत्यारे और अपराधी को शरण देने वाले झाओबुजियांग को गिरफ्तार करने के लिए शाही आदेश की मांग करना चाहूंगी। इंपीरियल स्टडी में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक शब्द निकला। मंजूर किया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह वान फू पिछवाड़ा झाओ तिंगजियाओ का कमरा। झाओ बुजियांग ने अपनी पीठ सीधी की, घुटनों के बल बैठ गया और फुटोन पर बैठ गया और छोटी चौकोर मेज पर रखी आत्मा की गोली को घूरने लगा। उसके पिता को चांग राजकुमारी के भवन में उसके दौरे के बारे में पता चला और उसके पिता बहुत क्रोधित हुए तथा उसे उसकी गलतियों पर विचार करने के लिए दंडित किया। वह अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि केवल अतीत के बारे में सोच रहा था। आत्मा की पट्टिका उसके पिता द्वारा स्थापित की गई थी जिस पर केवल चार शब्द थे, प्यारी पत्नी याओ फोंग। झाओ टिंगशियाओ एक तरफ बैठ गया, उसके गालों पर गहरी खायों जैसी झुर्रियां थीं जिनमें गुस्सा था। अपनी माँ के सामने ध्यान से सोचो कि तुमने कहाँ गलती की। झाओ बुजियांग ने बिना कुछ बताए अपनी आंखें झपकाई, बस स्पिरिट टैबलेट को घूरता रहा। उसकी माँ कैसी दिखती थी यह उसकी याददाश्त में धुंधला हो गया था, लेकिन वह अभी भी पानी से ज्यादा गाढ़े खून की कोमलता महसूस कर सकता था। झाओ टिंगशियाओ ने बिना कुछ कहे बुजियांग को देखा और मन ही मनाह भरी। बच्चा बड़ा हो गया था और उसके अपने विचार थे, लेकिन ली झाओहुआ के पास विद्रोह करने का दिल था। जब बुजियांग ली झाओहुआ से मिलने गया तो उसे किसी और चीज की चिंता नहीं थी, बस बुजियांग की सुरक्षा की चिंता थी। क्या होगा अगर ली झाओहुआ ने उसे गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया? क्या होगा अगर बड़े भाई को शक हो गया? इन वर्षों में मैंने सुना है कि आप पुरुषों और महिलाओं को धमकाते रहे हैं और राजधानी में अश्लीलता में लिप्त रहे हैं। झाओ टिंगशियाओ के चेहरे पर गुस्सा था। मैं अब वापस आ गया हूं और मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूं? तुम कब बड़े होगे और अपने स्वभाव के अनुसार चलना बंद करोगे? पिताजी, झाओ बुजियांग ने आत्मा की पट्टिका को देखा, उसकी आंखें बिना किसी कारण के कुछ नम थीं, पश्चाताप के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसने मूल कार्य में अपने वफादार पिता के बारे में सोचा जिसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। पिताजी के एक शब्द ने झाओ टिंगशियाओ के गुस्से को काफी हद तक खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी अपना चेहरा सीधा रखा। मैंने तुमसे जो तलवारबाजी का अभ्यास करने को कहा था वह तुमने कहाँ किया है? मार्शल आर्ट के मार्ग में आपको लगन से अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे। अभी तुम तलवारबाजी का अभ्यास करने में ढीले हो और तुमने तलवारबाजी को पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम अपनी तलवार की शक्ति को कब पोषित कर पाओगे? एक आदमी 12 साल की उम्र में अपने पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेता है। मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूं कि मैं परिवार को आपको सौंप दूंगा? झाओ बुजियांग चुप था, अपनी आंखें झपकाने की बहुत कोशिश कर रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से उसके आगे का कोहरा बहुत घना हो गया था और अब उसकी आंखों में बहुत नमी थी। उसके कंधे पर एक गर्म हाथ रखा हुआ था और उसके पिता की आवाज धीमी थी। घुटने टेको और ध्यान से सोचो। उसने उदास भाव से सिर हिलाया, लेकिन वह अपने पीछे अपने पिता की प्रेम भरी निगाहें, बिना हवा के हिलती आस्तीनें और उसके शरीर में प्रवाहित होती कोमल तलवार की ऊर्जा नहीं देख सका। पिता का प्यार मौन है और तलवार की ऊर्जा चुपचाप हड्डियों को पोषण देती है। घोड़ों की टापों की आवाज, कवच के टकराने की आवाज, वानफू के बाहर जिंगझाओ यिन हवेली और शियाओ की शिविर के लोग एकत्र हुए। सैनिकों ने अपने चाकू निकाल लिए। लॉन्ग जान उदास था, घोड़े से उतरा और उसके हाथ में शाही फरमान था। कैपिटल मजिस्ट्रेट कार्यालय और स्विफ्ट कैवलरी बटालियन के सैनिकों ने राजकुमार के भवन को पूरी तरह से घेर लिया था। लॉन्ग जान को पूरा भरोसा था कि उसका अचानक आना उसकी मार्शल बहन लिंग किंगक्सु के लिए अप्रत्याशित था, जिससे बच पाना असंभव हो गया। झाओ बुजियांग अब विरोध नहीं कर पाएगा। शाही हुक्म से मैं अदालत द्वारा वांछित अपराधी लिंग किंगक्सु और उसके साथी झाओ बुजियांग को गिरफ्तार करने आया हूं। लॉन्ग जान ने अपने बाएं हाथ में शाही फरमान पकड़ लिया और दहाड़ते हुए स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन को हवेली का गेट तोड़ने का संकेत दिया। स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के लोग झिझक रहे थे। वे जनरल लॉन्ग जान से नहीं बल्कि इस जगह से डर रहे थे, उत्तरी राजकुमार की हवेली से। उत्तरी सेना के बिना भी उत्तरी राजकुमार अभी भी उत्तरी राजकुमार था। उसकी बची हुई शक्ति ने ही उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं दी। बेकार की चीजें, लॉन्ग जान ने स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के लोगों को एक तरफ धकेलते हुए मन ही मन कोसा। मैं इसे करूंगा। झाओ बुजियांग खड़ा हुआ, अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, मोटे कॉलर्स को सहलाया और धीरे से कहा, पिताजी, मैं इसे संभाल लूंगा, आप आराम करें। उसने धीरे से अपने लबादे का किनारा झटका, अपना सिर उठाया, अपनी छाती सीधी की और हवेली के द्वार की ओर बढ़ गया। तुम बदमाश, झाओ टिंगशियाओ राहत के साथ मुस्कुराया और फ्यूटन पर बैठ गया। वर्षों से सावधानीपूर्वक पोषित की गई तलवार की ऊर्जा से बुजियांग को भरने के बाद वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी ठंडी सफेद भौहें सिकुड़ गई थी। छोटी सी चौकोर मेज पर धूपबत्ती जल रही थी, उसका धुआं उसके चारों ओर उठकर नाच रहा था, उसके माथे को सहला रहा था। एक पुराना मित्र अपने वर्तमान मित्र के माथे पर धीरे से हाथ फेरता है, यह आशा करते हुए कि वह उसके जीवन की आधी कड़वाहट को दूर कर देगा। झाओ बुजियांग कमरे से बाहर निकलकर स्थिर गति से चलने लगा। लिंग किंगसु और लियु रुयान उसकी ओर दौड़े, उनके हाव भाव में जल्दबाजी थी। युन जिनशु दूर खड़ी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या तुम्हें वह जगह याद है जहां हम पहली बार मिले थे? झाओ बुजियांग का स्वर कोमल था क्योंकि उसने लियु रुयान और लिंग किंगसु की भावनाओं को शांत किया था। लियु रुयान की आंखें चमक उठी और उसने लिंग किंगसु को खींचा। मार्शल बहन, चलो चलें। झाओ बुजियांग, लिंग किंगसु की अभिव्यक्ति चिंतित थी। लॉन्ग जान के मुंह से निकले शाही फरमान में झाओ बुजियांग को एक साथी के रूप में लेबल किया गया था। अब तुम्हें मेरी चिंता करनी आती है। झाओ बुजियांग ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए बगल की ओर देखा और अपना हाथ लहराया, जिससे लिंग किंगसु की आंखों में उसकी आकृति गायब हो गई। फिर वह तेजी से हवेली के गेट की ओर चला गया। उसी समय एक जोरदार धमाके के साथ लॉन्ग जान ने हवेली का गेट तोड़ दिया। घुमावदार गलियारों के पार झाओ बुजियांग को कुछ आभास हुआ। उसने दूर से ही मेरी आंखों में आंखें डाल ली। झाओ बुजियांग, विरोध करना बंद करो। राजकुमार की हवेली को घेर लिया गया है। आज एक मक्खी भी नहीं बच सकती। लिंग किंगसु की तो बात ही छोड़ो। युन जिनशु की अभिव्यक्ति भारी थी जब उसने लॉन्ग जान की आवाज की दिशा में देखा। झाओ बुजियांग ने युन जिनशु को जाने के लिए पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि युन जिनशु लिंग क्विंगसु और लियु रुयान का अनुसरण करे। उनके पहले याद दिलाए गए शब्द युन जिनशु से बचाव के लिए थे। जाने दो। युन जिनशु जानती थी कि झाओ बुजियांग उससे सावधान था और उसने ठंडी सांस ली, लेकिन अपनी कमजोर मार्शल आर्ट के साथ वह झाओ बुजियांग की पकड़ से कैसे मुक्त हो सकती थी। वे दोनों लॉन्ग जान की ओर संघर्ष करते रहे। मेरी मार्शल बहन को रिहा करो। सैनिकों का नेतृत्व कर रहे लॉन्ग जान ने देखा कि युन जिनशु को झाओ बुजियांग घसीट कर ले जा रहा है। मार्शल सिस्टर युन जिनशु राजकुमार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उसके महल में आई थी और वह सबसे महत्वपूर्ण गवाह होगी। आज चाहे कुछ भी हो, झाओ बुजियांग इससे इनकार नहीं कर सकता था। झाओ बुजियांग ने मुस्कुराते हुए युन जिनशु को छोड़ दिया। युन जिनशु ने अपनी कलाई रगड़ी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। झाओ बुजियांग, आत्मसमर्पण कर दो। हमारे पास निर्णायक सबूत हैं। लॉन्ग जान ने शाही फरमान को हिलाया। चमकीला पीला रेशम गिर गया। हत्यारे लिंग क्विंगसु और उसके साथी झाओ बुजियांग को गिरफ्तार करें। तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। ली युनरुई अपनी स्कर्ट उठाकर दौड़ी और झाओ बुजियांग के सामने खड़ी हो गई। मैं, राजकुमारी, तुम्हें वापस जाने का आदेश देती हूँ। हे हे, लॉन्ग जान ने व्यंग्य किया। महाराज, मैं केवल आदेश पर काम कर रहा हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एक तरफ हट जाएं, अन्यथा मुझे डर है कि मैं बाद में गलती से आपको घायल कर सकता हूँ। झाओ बुजियांग ने अपने पीछे ली युनरुई की रक्षा की, उसे सांत्वना दी और लॉन्ग जान का सामना किया। एक वांछित अपराधी की गिरफ्तारी का मुझसे क्या संबंध है? आप कहते हैं कि आपके पास पुख्ता सबूत हैं, ये सबूत कहाँ हैं? बस बकवास कर रहे हैं। हम्फ, झाओ बुजियांग, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो आपकी वाकपटुता बेकार है। लॉन्ग जान ने अपना हाथ उठाया और स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन और कैपिटल मजिस्ट्रेट कार्यालय के सैनिक आगे बढ़े। खोज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियुनरुई गुस्से से कांप उठी और उसने लॉन्ग जान की ओर इशारा किया, लेकिन झाओ बुजियांग ने उसे धीरे से पकड़ लिया। झाओ बुजियांग का स्वर शांत था। कमांडर लांग, आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है कि सबूत गढ़कर और एक प्रथम श्रेणी के ड्यूक को फंसाकर आप कौन सा अपराध कर रहे हैं। मुझे जनरल लॉन्ग कहो, लॉन्ग जान ने ठंडे स्वर में कहा और आत्मविश्वास से कहा। उसके पास भागने का कोई समय नहीं है और वह बच नहीं सकती। सैनिक राजकुमार के भवन में घुस आए और झाओ बुजियांग ने ली युनरुई को पकड़कर उन्हें नहीं रोका। लॉन्ग जान, तुम तारांकन कुत्ते तारांकन, हम तुम पर भरोसा करने के लिए अंधे थे। तुम तारांकन। लियु रुयान अपना काम पूरा कर वापस लौट आए और जिस क्षण उसने लॉन्ग जान को देखा, वह गुस्से से भर गई। लियु रुयान चलते समय शाप दे रही थी, वह गुस्से में थी। हालांकि वह पहले झाओ बुजियांग के पक्ष में खड़ी थी, फिर भी उसके मन में एक साथी शिष्य के रूप में लॉन्ग जान के लिए कुछ भावनाएं थीं। अब लॉन्ग जान वास्तव में पुण्य प्राप्त करने के लिए उन्हें धोखा दे रहा था। मैं, लियु रुयान, आज तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ती हूँ। तुम तारांकन। जितना अधिक वह कोसती, यह उतना ही अप्रिय होता जाता और कोसते हुए लॉन्ग जान का चेहरा और भी अधिक उदास हो जाता। लॉन्ग जान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मार्शल बहन, आप ही गिर गई हैं। ये छोटा भाई तो बस गलत को सही कर रहा है। मुझे मार्शल सिस्टर मत कहो, तुम जानवर हो। लियु रुयान की छाती गुस्से से भर गई। झाओ बुजियांग ने उसके साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, ये पुष्टि करते हुए कि लिंग किंगसु रहस्यमय कुत्ते के छेद से बच निकला था। लॉन्ग जान ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। मार्शल बहन, भविष्य में आपको पता चलेगा कि यह छोटा भाई आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। घृणित और बेशर्म, ली युनरुई भी लड़ाई में शामिल हो गई। वह लॉन्ग जान पर हमला नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या वह उसे शाप नहीं दे सकती थी? झाओ बुजियांग, लॉन्ग जान लगातार शापों से टूट गया था। वह गुस्से से दहाड़ उठा। यदि आप में क्षमता है तो किसी महिला के पीछे मत खड़े होइए, झाओ बुजियांग ने उदासीनता से कहा। क्या आपके पास महिलाएं नहीं हैं? एक साधारण वाक्य ने सीधे लॉन्ग जान के बचाव को चकनाचूर कर दिया। उसकी उंगलियां कांप उठी जब उसने झाओ बुजियांग की ओर इशारा किया। बहुत देर तक हकलाता रहा, केवल शक्तिहीनता से क्रोध कर पाया। एक बार जब मैं लिंग किंगक्सू को पकड़ लूंगा तो तुम मर जाओगे। राजधानी मजिस्ट्रेट अपने हाथों को आस्तीन में दबाए आगे नहीं बढ़े, अपने काम में लगे रहे। लॉन्ग जान शाही फरमान लेकर आए थे, वे केवल मामले में सहायता कर रहे थे। झाओ बुजियांग को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी, न ही आगे बढ़कर डांट खाने की कोई जरूरत थी। कुछ ही देर में कैपिटल मजिस्ट्रेट कार्यालय और स्विफ्ट कैवलरी बटालियन के सैनिक रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गए और राजकुमार के महल के सभी परिवार के सदस्यों को साथ ले आए। रिपोर्टिंग, जनरल लांग, हमें अदालत द्वारा वांछित अपराधी नहीं मिला है। लॉन्ग जान का चेहरा काला पड़ गया। उसने राजकुमार के महल के परिवार के सदस्यों पर नजर डाली। उसे यकीन था कि लिंग किंगक्सू के पास भागने का समय नहीं था, इसलिए लिंग किंगक्सू ने राजकुमार के महल के सदस्य के रूप में खुद को छिपाने के लिए मिराफ्लावर वाटरमून का इस्तेमाल किया होगा। वह मिराफ्लावर वाटरमून की खामियों को जानता था, इसलिए उसने अपनी आंखों को स्कैन किया और एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के दुबले पतले आदमी को सीधे बाहर खींच लिया और एक शक्तिशाली ध्वनि हमला किया। हाँ, अधेड़ उम्र का वह आदमी राजकुमार के महल की रसोई से आया था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और मोटे उत्तर पश्चिमी लहजे में अस्पष्ट शब्द बोले। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा, हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी सब्जियां भी नहीं चुनी और तुमने अपने पापा को बाहर खींच लिया। लॉन्ग जान का चेहरा काला पड़ गया और उसने एक बूढ़ी औरत को बाहर खींच लिया, उसकी बारीकी से जांच की, उसकी खामियों को देखने की कोशिश की। वृद्ध महिला ने उत्तराधिकारी की ओर ध्यान से देखा और उत्तराधिकारी की मौन सहमति देखकर उसने असहाय होकर मामले को निपटाने में अधिकारी के साथ सहयोग किया। लॉन्ग जान ने एक एक करके उनकी जांच की, लेकिन लिंग किंगक्सू का कोई सुराग नहीं मिला। उसका मूड और भी उदास हो गया और वह अपने मातहतों पर चिल्लाया। क्या सभी लोग यहाँ हैं? वहाँ अभी भी एक और है। अधीनस्थ ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो फिर तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? लॉन्ग जान दहाड़ा। मैंने तुम्हें पहले कैसे बताया था? तो मैं जाकर राजकुमार को लेकर आऊंगा, स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के अधीनस्थ ने हकलाते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। आ, उसे उत्तरी राजकुमार को पकड़ने दो। लॉन्ग जान का गला रुंध गया, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह झाओ बुजियांग को घूर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, झाओ बुजियांग, तुम सच में छिपाना जानते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छिपा सकते हो? मेरे पास एक गवाह है। ली रुयान और ली युनरुई को तुरंत चिंता महसूस हुई। उन्होंने झाओ बुजियांग के लबादे को कसकर पकड़ लिया। कृपया मार्शल सिस्टर यून को मेरे और लॉर्ड कैपिटल मजिस्ट्रेट के लिए गवाही देने के लिए आमंत्रित करें। लॉन्ग जान ने यून जिनशू की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। मार्शल सिस्टर ने कठिनाई को सहन किया था और अपने समय का इंतजार किया था। अब झाओ बुजियांग को व्यक्तिगत रूप से मारने का समय आ गया था। मार्शल बहन राजकुमार के महल में थी और उसने सुराग पकड़ लिए होंगे। वह निश्चित रूप से जानती थी कि लिंग किंगक्सू कहाँ छिपा है। जब तक वह लिंग किंगक्सू का स्थान बताती रहेगी, वह लिंग किंगक्सू को पकड़ सकती है और झाओ बुजियांग को गिरा सकती है। कुछ ही दूरी पर यून जिनशू खड़ी थी। उसकी आवाज बर्फीली थी तथा उसमें गर्व की भावना झलक रही थी। झाओ बुजियांग, तो आज का दिन तुम्हारे पास है। लियू रुयान और ली युनरुई के दिल डूब गए। लियू रुयान की आंखें याचना कर रही थी, यून जिनशू की ओर सिर हिला रही थी। ली युनरुई की आंखें गुस्से से भरी थी। वह बुजियांग को रखेल रखना स्वीकार कर सकती थी, लेकिन वह ऐसी महिला को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी जो बुजियांग को धोखा दे। लॉन्ग जान बहुत खुश थी। युनशिजी ने वांग निवास पर आकर अपना समय बिताया और बदला लेने की योजना बनाई, जिससे वास्तव में चमत्कारी परिणाम सामने आए। इस महत्वपूर्ण क्षण में युनशिजी सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी। वह देखना चाहता था कि झाओ बुजियांग इस मामले से कैसे बाहर निकलेगा। लॉन्ग जान ने सलामी में अपनी मुट्ठी बांध ली। कृपया शिजी, शाही दरबार के वांछित अपराधी लिंग किंगक्सू का पता बताओ और राजधानी में शांति बहाल करने के लिए उसके साथी झाओ बुजियांग को पकड़ने में हमारी मदद करो। यून जिनशू ने झाओ बुजियांग पर विजयी दृष्टि डाली। झाओ बुजियांग का दिल धड़क उठा। अरे औरत, वह तो वास्तव में एक गुप्त खेल खेल रही है। क्या वह आगे कहेगी, माफ करना बड़े भाई, मैं एक पुलिस हूँ। अगर वह सचमुच मेरी पीठ में छुरा घोंपती है तो मुझे क्या करना चाहिए? सही है, इससे इनकार करो और उस पर मानहानि का मुकदमा करो। यून जिनशू ने झाओ बुजियांग के आंतरिक विचार सुनने के बाद उसकी ओर आंखें घुमाई। यह मरा हुआ आदमी क्या बकवास कर रहा है, कैसी पुलिस और बदनामी। उसने चारों ओर भीड़ की ओर देखा, हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वहां इतना सन्नाटा था कि एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, केवल तनाव के कारण भारी सांसें चल रही थी। यून जिनशु ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला, हैरान होकर, क्या किंगक्सियू? लॉन्ग जान, साथ ही लियू रुयान और ली यूनरुई भी स्तब्ध थे। लिंग क्विंगजू, लॉन्ग जान ने सोचा कि उसने बहुत उत्साह में बोल दिया था और शिजी ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना था, या शायद शिजी झाओ गुजियांग की भावनाओं के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उसने इसे फिर से गंभीरता से दोहराया। यून जिनशु का सुंदर चेहरा उलझन से भरा था। लिंग क्या? लिंग क्विंगजू, लिंग क्या जू, शिजी, तुम? लॉन्ग जान ने आखिरकार पुष्टि की कि यू जिनशु उसके साथ खेल रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। क्या शिजी, तुम्हारा शिजी कौन है? यून जिनशु की झूठी अज्ञानता का सामना करते हुए लॉन्ग जान पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप अंडरकवर एजेंट बनने आए हैं? अब समय आ गया है कि आप झाओ गुजियांग की पीठ में छुरा घोंप दें। तुम उसे चाकू क्यों नहीं मार रहे हो? उसने झाओ गुजियांग को देखा और फिर झाओ गुजियांग के बगल में यून जिनशु को देखा। वह समझ, यहां तक कि यून जिनशु ने भी उसे धोखा दिया था। तुम कुत्ते जोड़े, ठीक है ठीक है ठीक है। यून जिनशु, बेहतर होगा कि आप स्पष्ट रूप से सोचें आप किस तरफ हैं। यून जिनशु की आंखें चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं लियुजियांग साम्राज्य की राजकुमारी यू जिनशु हूं। कृपया कुछ सम्मान दिखाएं, जनरल लांग जान। रिश्तेदारी का दावा करने की कोशिश मत करो, मैं वांग निवास का सदस्य हूं। वांग निवास का एक सदस्य? तो फिर हमारे बीच क्या है? लॉन्ग जान ने अपने दांत पीस लिए। इस महिला ने वास्तव में उनके शिजी शिदी रिश्ते से इनकार किया। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। यू जिनशु ने उपहास किया। हम, योजना बदल गई है, नेट बंद नहीं कर रहे। झाओ गुजियांग की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि संकट को हल करने के लिए बकवास बातें कैसे की जाएं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यून जिनशु अचानक उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या उसे मेरे व्यक्तित्व में रुचि है या मेरे पैसों में? भूल जाओ, शायद उसे दोनों पसंद हैं, झाओ गुजियांग ने मन ही मन निश्चयपूर्वक सोचा। यून जिनशु का सुंदर चेहरा थोड़ा सा हिल गया। सुंदर महिला अवाक थी। क्षमा करें, मुझे दोनों पसंद नहीं हैं, यू जिनशु ने सोचा। जब लॉन्ग जान अपने शिमी लिंग किंगक्सू को गिरफ्तार करने के शाही फरमान के साथ आई तो उसने पहले ही फैसला कर लिया था। उसके और उसके शिमी के बीच मतभेद थे और यद्यपि संघर्ष थे, फिर भी वह अपने शिमी को धोखा नहीं दे सकी। लेकिन लॉन्ग जान की हरकतें निस्संदेह शिमी लिंग किंगक्सू के साथ विश्वासघात थीं। अपने दिल में लॉन्ग जान ने आज लिंग किंगक्सू को धोखा देने की हिम्मत की और कल वह उसे धोखा देने और उसकी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत करेगा और परसों वह संप्रदाय को धोखा देने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा इन दो दिनों तक वांग निवास में रहने के बाद वह पहले से ही अधिक स्पष्ट रूप से सोच चुकी थी। झाओ गुजियांग लॉन्ग जान की तुलना में लियू जियांग को बहाल करने में मदद करने के लिए अधिक उपयुक्त था। झाओ गुजियांग से निपटने के लिए लॉन्ग जान पूरी तरह से सम्राट का अनुचर बन गया था। लीजा युआन द्वारा उसे जितना अधिक महत्व दिया जाएगा उसका आधिकारिक करियर उतना ही समृद्ध होगा, इसलिए वह उसकी इस शिजी की मदद करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। लेकिन झाओ गुजियांग अलग थे। झाओ गुजियांग उसकी तरह लियुजियांग की नामात्र राजकुमारी यून जिनशु के सिर पर एक चाकू लटका हुआ था और यह वर्तमान सम्राट की ओर से आया था। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इसके अलावा उसके और झाओ गुजियांग के बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी और यह भी बहुत संभावना थी कि वे शादी कर लेंगे और उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। मुख्य बात यह थी कि उसे अब यहाँ का माहौल पसंद था। वह हर दिन लियू रुयान और लिंग किंगक्सू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी और यहाँ एक मूर्ख राजकुमारी भी थी। लॉन्ग जान, तुमने एक प्रथम श्रेणी के ड्यूक के बेटे को फंसाया और वांग निवास की शांति भंग की, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? झाओ गुजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास एक शाही फरमान है। लॉन्ग जान को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वह केवल आखिरी तिनके को ही पकड़ सका। वह गुस्से से चिल्लाया, शाही फरमान में लिंग किंगक्सू और तुम्हें पकड़ने का आदेश है। अब तुम फरमान की अवहेलना कर रहे हो। सबूत निर्णायक है या नहीं, ये बहस का विषय है। आपको गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए न्याय मंत्रालय की जेल में वापस ले जाया जाएगा। यदि आप निर्दोष हैं तो आपकी निर्दोषता बहाल करने में देर नहीं होगी। पुरुषों, कार्रवाई करो और झाओ गुजियांग को गिरफ्तार करो। लियू रुयान और ली यूनरुई पहले झाओ गुजियांग को दूर खींचना चाहते थे। यदि लॉन्ग जान ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और गुजियांग को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्याय मंत्रालय भेज दिया तो क्या लॉन्ग जान सच्चाई के बारे में जो चाहे कह नहीं पाएगा? जिंगझाओ प्रांत के लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी तलवारें निकाली और शाही आदेश के अनुसार कार्य करने लगे। जिंगझाओ प्रांत के प्रीफेक्ट ने भयंकर रूप से घूर कर देखा, अपने दांत दिखाए और मन ही मन कोसा। ये मूर्ख, हम नाटक करने के लिए सहमत हुए, क्या आप वास्तव में झाओ गुजियांग को पकड़ने जा रहे हैं? पूर्व झाओ गुजियांग ठीक था। लेकिन वर्तमान झाओ बुजियांग का एक पिता है, झेनबेई का राजकुमार उसका जैविक पिता है। जिंगझाओ प्रांत के लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी का संकेत समझ लिया और तुरंत अपना सिर सिकोड़ लिया तथा आगे कदम नहीं बढ़ाया। आप लॉन्ग झान ने दांत पीसते हुए देखा कि ये अधिकारी गलत इरादे से काम कर रहे थे। ठीक है, हम इसे स्वयं करेंगे। ज़ियाओ की कैंप के लोगों ने एक दूसरे को देखा और अब उन्हें निश्चित रूप से लॉन्ग झान की बात सुननी थी। आखिरकार लॉन्ग झान के हाथ में एक शाही फरमान था, लेकिन जैसे ही वे अपनी तलवारें निकालकर आगे बढ़ने वाले थे, वे सभी वहीं जम गए, क्योंकि झाओ बुजियांग के पीछे एक भारी भरकम व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई रथ चुपचाप उनके दिलों को कुचल रहा हो और शक्ति अंदर आ रही हो। उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये व्यक्ति जिसने 10 वर्षों से अधिक समय तक उत्तरी सीमा पर आतंक मचा रखा था, यद्यपि वह अभी भी 10 कदम से अधिक की दूरी पर था, फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इससे लोगों को घुटन महसूस होती थी, मानो सीमा की लौह रक्तयुक्त हवा और रेत ने उनकी आंखें, कान और मुंह बंद कर दिए हों। शियाओ की कैंप का वह आदमी जिसे पहले लॉन्ग झान ने डांटा था, लड़खड़ाता हुआ आया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जनरल लांग, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और राजकुमार को यहाँ आमंत्रित किया। मैंने आपके तारांकन को आमंत्रित किया। लॉन्ग झान अवाक रह गया, पूरी तरह से टूट गया और इस अधीनस्थ को जमकर लात मारी। मैंने तुम्हें शाही दरबार के वांछित अपराधी लिंग किंगक्सु को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, राजा यम को आमंत्रित करने के लिए नहीं। झाओ टिंगशियाओ धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्विफ्ट कैवेलरी कैंप के लोगों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि लौह रक्त वाले हत्या के इरादे उन्हें प्रभावित करेंगे। नमस्कार महाराज। जबकि झेनबेई का राजकुमार अभी भी कई कदम दूर था, स्विफ्ट कैवलरी कैंप और जिंगझाओ प्रांत के कई लोग दबाव का सामना नहीं कर सके और सम्मानपूर्वक अपनी आवाज में घुटने टेकने में आगे हो गए। एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया घटित हुई और सैनिक हवा में लहराते गेहूं के खेतों की तरह घुटनों के बल गिर पड़े। नमस्कार महामहिम। झेनबेई के राजकुमार के सामने झुकना इन सैनिकों के लिए न केवल दिल से डरने की वजह से था, बल्कि दिल से सम्मान की वजह से भी था। अपने घरों और देश की रक्षा करना, युद्ध के मैदान में लड़ना, कई पुरुषों के दिलों में जुनून था। जिंगझाओ प्रांत के प्रीफेक्ट ने भी सिर झुकाया और मन ही मन खुश हुए कि वह पहले इतना आक्रामक नहीं था और केवल लॉन्ग झान के साथ औपचारिकताएं निभाने आया था। लॉन्ग झान ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली। झेनबेई के राजकुमार की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब जब तीर डोरी पर था और बात यहां तक पहुंच गई थी, तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल पहले सलामी में अपनी मुट्ठी बांध सकता था और फिर खुद को संभाल सकता था और धार्मिक आक्रोश के साथ बोल सकता था, महामहिम लॉन्ग झान पवित्र व्यक्ति के आदेश पर काम कर रहा है ताकि उस हत्यारे की जांच की जा सके जिसने 3 महीने के भीतर लॉर्ड काओ के परिवार का कत्ल कर दिया। अब जांच ने उत्तराधिकारी तक पहुंचाया है जो अपराधियों में से एक है और हत्यारे का साथी है। लॉन्ग झान केवल आदेशों पर काम कर रहा है और वह शाही दरबार के वांछित अपराधी लिंग किंगक्सु को गिरफ्तार करने के लिए राजकुमार की हवेली में आया है, जिसे यहाँ वारिस द्वारा आश्रय दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम सहयोग करेंगे। झाओ टिंगशियाओ एक मजबूत कदकाठी का व्यक्ति था, उसकी निगाहें झुकी हुई लॉन्ग झान की ओर थी, वह भावहीन और उदासीन था। क्या आपको वांछित अपराधी मिल गया है? यदि आपने उसे ढूंढ लिया है और सबूत पुख्ता है, तो मेरे बेटे को ले जाइए। लॉन्ग झान ने सिर झुकाया, उसका चेहरा भद्दा था। उसने अपना मुंह खोला कुछ हिचकिचाते हुए, अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला, और फिर भी आप कहते हैं कि मेरा बेटा एक साथी है। झाओ टिंगशियाओ का स्वर शांत था, लेकिन एक पल में लॉन्ग झान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक संगठित सेना का सामना कर रहा है जिसकी शक्ति उस पर दबाव डाल रही है। महाराज को रिपोर्ट करते हुए लॉन्ग झान का चेहरा और भी भद्दा हो गया, लेकिन वह केवल एक अजीब सी मुस्कान ही दे सका। लॉन्ग झान केवल जांच में सहायता के लिए उत्तराधिकारी को वापस बुलाना चाहता है। शाही हुक्म हाथ में होने पर शाही आदेश की अवज्ञा करना कठिन है। झाओ टिंगशियाओ ने उसकी ओर देखा, आप उसे दूर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। लॉन्ग झान वहीं पर जम गया। वह शाही फरमान को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन झेनबेई का राजकुमार ऐसा तीर नहीं था जिसे वह रोक सके। वर्तमान दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो इस तीर को रोक सकता था वह था ली ज़ायुआन। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आज उसके पास केवल एक ही शाही फरमान है। भले ही वह शाही फरमानों से आच्छादित हो, फिर भी झेनबेई के राजकुमार को रोकना असंभव होगा। लॉन्ग झान ने अनजाने में राजकुमार के महल की शांति भंग कर दी है। मैं किसी और दिन महामहिम से माफी मांगूंगा। आधिकारिक काम निपटाने के लिए लॉन्ग झान पहले विदा लेंगे। लॉन्ग झान ने गहरी सांस ली, सलामी देते हुए अपनी मुठियां कस ली, उनकी मुठियां चरमराने तक बंद रहीं। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने स्विफ्ट कैवेलरी कैंप को पीछे हटने का आदेश दिया। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बदनाम हो गया था। उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। दो कदम चलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और लियू रुयान और यून जिनशू की ओर देखा, जो झाओ बुजियांग के बगल में खड़े थे और ठंडे अंदाज में मुस्कुराया अपने दांत पीसते हुए। वरिष्ठ बहन, मैं इस अवधि की घटनाओं की रिपोर्ट मास्टर को दूंगा। मुझे आशा है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं। लियू रुयान ने लॉन्ग झान की ओर ठंडी नजर से देखा, उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थी। यून जिनशू तो लॉन्ग झान की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। चलो चलें। लॉन्ग झान ने अपनी कमर पर लगी लंबी कृपाण दबाए और गुस्से में चला गया। जिंगझाओ प्रांत के प्रीफेक्ट ने राजकुमार के भवन में उपस्थित लोगों की ओर मुठियां भींची, उनकी मुस्कान सौम्य थी और फिर उन्होंने झाओ टिंगशियाओ को गहरा प्रणाम किया। महाराज, यह अधिकारी आज सचमुच असहाय था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। कल नहीं, आज यह अधिकारी निश्चित रूप से आपसे और उत्तराधिकारी से माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से फिर से आएगा। जिंगझाओ प्रांत के प्रीफेक्ट ने अपनी सलामी समाप्त करने के बाद झाओ बुजियांग की ओर अपनी मुठियां भींच ली। उनकी आंखें चमक रही थी, मानो कह रहे हों, कृपया उत्तराधिकारी से कहें कि वह उनकी ओर से राजकुमार से बात करें, ताकि लॉन्ग झान इस छोटे से बदमाश को थप्पड़ मारने के बाद वह उसे थप्पड़ न मारे। तभी जिंगझाओ प्रांत के प्रीफेक्ट ने मुड़कर हाथ हिलाया और जिंगझाओ प्रांत के लोगों को वहां से चले जाने को कहा। चलो चलें, चलो चलें, इसे शांत रखें। जिंगझाओ प्रांत के लोग राजकुमार के भवन के बाहर नम्रतापूर्वक निकल पड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजकुमार के भवन के द्वार पर लगे पेंट पर खरोंच न लग जाए। जिंगझाओ प्रांत और स्विफ्ट कैवेलरी कैंप के लोगों के चले जाने के बाद झाओ बुजियांग ने धीरे से पुकारा, पिता, मैं महल जा रहा हूँ। झाओ टिंगशियाओ ने भौहें सिकोड़ ली। आज की घटनाओं ने उसके दिल में कथनीय क्रोध भर दिया। जब झाओ बुजियांग ने सुना कि उसके पिता महल जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम क्या करने जा रहे हो? अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करो और जल्दी करो और अपने पिता को एक बड़ा मोटा पोता दो। झाओ टिंगशियाओ अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर राजकुमार की हवेली से बाहर चला गया। बूढ़े बटलर झाओ मनफू ने पहले ही क्षण एक घोड़ा तैयार कर लिया था और राजकुमार की हवेली के बाहर इंतजार करने के लिए दौड़ पड़ा। झाओ बुजियांग ने अपने पिता की पीठ की ओर देखा। वह अपने पिता के दिल में दबा हुआ गुस्सा महसूस कर सकता था। महल की यह यात्रा शायद शांतिपूर्ण नहीं होगी। उसे चिंता थी कि ली ज़ायुआन उसके पिता के लिए प्रतिकूल होगा। केवल एक ही बात के लिए आभारी होना चाहिए कि ली ज़ायुआन अभी तक अपने पतन के दौर में नहीं पहुंचा था और उसकी भावनाएं अभी तक इतनी बेकाबू नहीं थी। लॉन्ग जान वास्तव में घृणित है, ली यूनरुई ने अपने होठों को दबाया अन्याय की भावना से बोलते हुए। ये बग हमेशा आपको ही क्यों निशाना बनाता है? झाओ बुजियांग ने आह भरी। अंदाजा लगाओ क्यों? लॉन्ग झान के पीछे कौन है? मूर्ख लड़की, लॉन्ग झान के पीछे तुम्हारे शाही पिता हैं। आपके शाही पिता के गुप्त निर्देश और समर्थन के बिना लॉन्ग झान को शाही फरमान कैसे प्राप्त हो सकता था और वह राजकुमार की हवेली में आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लियोनरुई झाओ बुजियांग को घूर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें धुंध से भरी हुई थीं। क्या यह उसका शाही पिता था जो पर्दे के पीछे से लॉन्ग झान का समर्थन कर रहा था? क्या यह उसका शाही पिता था जो झाओ बुजियांग को निशाना बना रहा था? उसके शाही पिता ऐसा क्यों कर रहे थे? वह झाओ बुजियांग को क्यों निशाना बना रहा था? झाओ बुजियांग उनके पति थे। झाओ बुजियांग ने क्या गलती की थी? और यह उसका शाही पिता ही क्यों था जो गुप्त रूप से उसे निशाना बना रहा था? क्यों? ली यूनरुई की आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखें नम हो गईं। झाओ बुजियांग ने उसे धीरे से गले लगाया और आह भरी। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, ली यूनरुई ने सिसकते हुए कहा। मैं भविष्य में आपकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। ठीक है, मार्शल आर्ट सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। झाओ बुजियांग ने धीरे से मुस्कुराया। ली यूनरुई, यह मूर्ख लड़की, मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी और उसकी रक्षा करना चाहती थी। यह इरादा रखना ही काफी था। यूनरुई कठिनाई सहन नहीं कर सकती थी। मार्शल आर्ट सीखना इतना आसान नहीं था। बिना किसी प्रतिभा के वह केवल साधारण बन सकती थी। शाही महल, शाही अध्ययन। ली ज़ायुआन को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था और उसने अभी भी गर्म चाय को, जिसे पीने का उसे समय नहीं मिला था, आगे बढ़ा दिया। तुम्हारा मुझसे मिलने आना इतना दुर्लभ क्यों है? भाई, जब झाओ टिंगशियाओ ने आज जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा तो उसने अपना गुस्सा दबा लिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। आपको लॉन्ग झान को हवेली में आने और बुजियांग को ले जाने की अनुमति देने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। तुम सिर्फ इसके लिए आए हो? ली ज़ायुआन मुस्कुराया और सांत्वना दी। इस मामले के लिए मैंने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था, जिसमें लॉन्ग झान को जांच करने का आदेश दिया गया था, जो अदालत के सभी अधिकारियों को पता है। लॉन्ग झान केवल आधिकारिक व्यवसाय के अनुसार कार्य कर रहा है। मैं भी मानता हूँ कि बुजियांग निर्दोष है। लॉन्ग झान को उसे वापस ले जाने दो, सारी प्रक्रिया पूरी करो, जांच करो और फिर उसे सुरक्षित तरीके से राजकुमार की हवेली में वापस भेज दो। इससे मुझे दूसरों को भी स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा, है ना? आप मेरे बड़े भाई हैं। झाओ टिंगशियाओ का स्वर हृदय विदारक था। तुम्हें ये समझना चाहिए कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, अब वह आपका दामाद है। आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए और आपको लोगों को उसे जांच के लिए ले जाने नहीं देना चाहिए, अन्यथा न्यायालय के अधिकारी, दुनिया के वे लोग ये कैसे नहीं देख पाते कि वह आपके संरक्षण में नहीं है, आपके पक्षपात में नहीं है? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? बुजियांग और युनरुई क्या सोचेंगे? मैं सम्राट हूँ। ली ज़ायुआन का चेहरा उतर गया और वह धार्मिक आक्रोश के साथ बोला, दुनिया के सभी लोग मेरे बच्चे हैं। ड्रैगन सिंहासन पर बैठकर मुझे सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष और निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। टिंगशियाओ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। अंधा पक्षपात उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। ये देखकर कि ली ज़ायुआन अभी भी ऊंची आवाज वाले आधिकारिक लहजे में बोल रहा था, उसने ली ज़ायुआन को शब्द दर शब्द घूर कर देखा। भाई, क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने तुम्हारे लिए दुनिया जीतने की लड़ाई लड़ी थी तो तुमने मुझसे क्या वादा किया था? झाओ टिंगजियाओ, ली ज़ायुआन की आवाज ठंडी हो गई, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। भाई, शायद महाराज भूल गए हैं। झाओ टिंगशियाओ का स्वर थकावट से भरा था। आपने मुझसे वादा किया था कि आप बुजियांग को अपने बेटे की तरह पालेंगे। क्या आप लोगों को सेना का नेतृत्व करने देंगे अपने ही बेटे की जांच करने के लिए? ली ज़ायुआन का चेहरा पूरी तरह से डूब गया। स्मारक को पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति निकल रही थी। बकवास बंद करो टिंगशियाओ, क्या तुम भूल गए हो? झाओ टिंगशियाओ ने चाय का प्याला कसकर पकड़ते हुए कहा। युद्ध के मैदान की लौह रक्त वाली आभा पूरे शाही अध्ययन कक्ष में फैल गई। कमरे में रखी स्मारक और प्राचीन पुस्तकें बेतहाशा फड़फड़ा रही थी, सरसराहट कर रही थी। दोनों आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे और हिंसक मार्शल आर्ट की आभा मेज के उस पार एक दूसरे से भिड़ रही थी, जैसे दो ड्रैगन बिजली गरज और उग्र लहरों के बीच नदी के उस पार एक दूसरे से भिड़ रहे हों। अगले ही क्षण दोनों पुरुषों ने एक दूसरे पर हथेलियां से प्रहार किया। शाही अध्ययन कक्ष के अंदर ली ज़ायुआन और झाओ टिंगजियाओ अपनी आंतरिक शक्ति के साथ भिड़ गए। हिंसक आभा कमरे के भीतर गरजती हवा की तरह गरज रही थी। प्राचीन वस्तुएं बिखर गईं, लकड़ी की कुर्सियां टूट गईं तथा मेज पर रखी स्याही उलट गई, जिससे फर्श पर स्याही फैल गई। उनके बीच रखा चाय का प्याला और उसमें रखी चाय तुरंत धूल में बदल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। तूफान के कारण कमरे के दरवाजे और खिड़कियां चरमराने लगी और कराहने लगी तथा बाहर प्रतीक्षा कर रहे खोजे सम्राट को पुकारने लगे तथा उसे बचाने के लिए अंदर की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते वे प्रचंड बिजली से उड़ गए तथा फूलों की क्यारियों से टकराकर खून की खांसी करने लगे और बेहोश हो गए। मुख्य खोजे चेन झेंग हुआ, जो आंतरिक प्रांगण के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे, ने उनकी हथेलियों के बिखरे हुए बल को झेलते हुए निकट आने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे घुरघुराने लगे और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। ये पुस्तक सर्वप्रथम TWKNCOM पर प्रकाशित हुई है। झाओ टिंगशियाओ के लंबे बाल बिखरे हुए थे, उसकी ठंडी सफेद लंटें पीछे की ओर उड़ रही थी, उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंतरिक ऊर्जा उफान पर थी और उसने खुद को संभलने के लिए कई कदम पीछे हटे। ली ज़ायुआन का जेड मुकुट केवल थोड़ा तिरछा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, झाओ टिंगशियाओ, ये पहली बार है जब तुमने मुझसे सीधे तौर पर मुकाबला किया है। मुझे आशा है कि यह आखिरी बार होगा, अन्यथा हमारे पिछले रिश्ते की अनदेखी करने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। हाँ महाराज, झाओ टिंगशियाओ ने एक गहरी सांस ली, उमड़ती हुई ऊर्जा को दबाया, अपनी आस्तीनें झटकी और जाने के लिए मुड़ा। ये बूढ़ा मंत्री आज्ञा का पालन करता है। मुख्य खोजे ने उत्तरी रक्षक राजा को शाही अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते देखा, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और हर तरफ से हवाएं आ रही थी। उसका चेहरा भयभीत था। वह आज जो कुछ हुआ उसे अपने दिल की गहराई में ही दफना सकता था। फिर उसने और भी अधिक भयावह दृश्य देखा। सम्राट, जिसका चेहरा उदास था, उत्तर रक्षक राजा के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक कराह उठा और उसके मुंह और नाक से खून की कुछ धारें बहने लगी। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ली ज़ायुआन की नज़र और भी ठंडी हो गई और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही इतना कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि गिरावट का दौर नजदीक आ रहा था और कुछ योजनाओं को तेज करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वांग निवास के अंदर झाओ बुजियांग और ली युनरुई का दुल्हन कक्ष। कक्षा शुरू हो गई है, चलो हाजिरी शुरू करते हैं, झाओ बुजियांग ने सीधे चेहरे से कहा। ली युनरुई, यहाँ। ली युनरुई ने अपना हाथ ऊपर उठाया, झाओ बुजियांग के चारों ओर चक्कर लगाया। उन दोनों को देखकर एक मूर्ख पत्नी और एक अनाड़ी पति का एहसास हो रहा था। बहुत बढ़िया, सभी लोग उपस्थित हैं, चलो कक्षा शुरू करते हैं, झाओ बुजियांग ने सूखी खांसी के साथ कहा। चूंकि आप मेरी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सच्चा यांग हॉट सूत्र दूंगा, एक मार्शल आर्ट जिसे मैंने कई वर्षों से संजोकर रखा है। ली युनरुई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या महिलाएं भी सच्चे यांग हॉट सूत्र का अभ्यास कर सकती हैं? मैं तुमसे कह रहा हूं, हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं, ली युनरुई ने अपना सिर खुजलाया। अलग थलग येन उत्पादन नहीं कर सकता, अकेला यांग विकसित नहीं हो सकता। झाओ बुजियांग ने सच्चे यांग हृदय सूत्र का सार बताना शुरू किया। चूंकि वह उसकी अपनी पत्नी थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया और तुरंत मूल मंत्र से शुरुआत की। यिन और यांग परस्पर विरोधी और अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग के साथ एक हैं। सच्चा यांग पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक ऊर्ध्वगामी बल है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? ली युनरुई ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर तुम नहीं समझते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत समय है, झाओ बुजियांग ने खुद से कहा। वह ली युनरुई की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उसे मार्शल आर्ट सिखा रहा था। आखिरकार उसकी मूर्ख पत्नी उसकी रक्षा करना चाहती थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था, है ना? क्या यह ऐसा है? ली युनरुई ने झाओ बुजियांग द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अपने हाथों से एक गहरा कदम उठाया और उसकी आभा अचानक बहुत मजबूत हो गई। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वास्तव में ये कारगर है। झाओ बुजियांग ने महसूस किया कि ली युनरुई की आभा एक पल में मजबूत हो गई और वह भी बहुत आश्चर्यचकित था। उसने सीधे हाथ बढ़ाया और ली युनरुई के शरीर को छुआ। तुमने ये कैसे किया? मेरे बोलने के तुरंत बाद ही तुम साधना में सफल हो गए। हिस, लेकिन आपकी यह सच्ची यांग शक्ति सही नहीं है। ये थोड़ा यिन और ठंडा क्यों लगता है? इतना मजबूत चरम यिन आभा और अंदर यह झुलसाने वाली यांग ऊर्जा नहीं है, बल्कि यिन ठंडा है। झाओ बुजियांग हैरान था। उसने कुछ देर सोचा और जल्दी से यून जिनशु को बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे चिंता थी कि ली युनरुई ने अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में कोई गलती की है। यून जिनशु अनिच्छा से कमरे में आई। वह झाओ बुजियांग और ली युनरुई की छेड़खानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और औपचारिकता निभाकर इसे खत्म करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने ली युनरुई के शरीर में यिन और ठंडी आंतरिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से जाना, तो वह इतनी हैरान हुई कि वह काफी देर तक बोल नहीं सकी। बोलो, क्या युनरुई खतरे में है? झाओ बुजियांग ने यून जिनशु को हिला दिया। यून जिनशु ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुस्से से कहा, मुझे लगता है कि आप खतरे में हैं। उसने गहरी सांस ली, फिर भी वह अपना आश्चर्य और ईर्ष्या नहीं छिपा सकी। ली युनरुई एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है। एक दिन के लिए शांति से साधना करना सामान्य लोगों के कई महीनों या एक साल तक काम करने के बराबर है। जैसा कि अपेक्षित था, नायिका की क्षमता बहुत बड़ी है। वह मेरी झाओ बुजियांग की महिला बनने के योग्य है। झाओ बुजियांग को सुखद आश्चर्य हुआ। ली युनरुई ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाते हुए गर्व से कहा। यून जिनशु को जलन हुई और उसने भी ठंडे चेहरे से ठंडा पानी डालते हुए नाक सिकुड़ी। दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन अनगिनत प्रतिभाशाली लोग पालने में ही मर जाते हैं। वह कितनी दूर तक जा सकती है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। पहले उसकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करें। मुझे लगता है कि युनरुई पहले से ही आपसे कमजोर नहीं है। झाओ बुजियांग ने सोचते हुए अपनी थोड़ी को सहलाया। यून जिनशु ने झाओ बुजियांग की ओर घूर कर देखा। ली युनरुई ने अभी अभी अभ्यास करना शुरू किया है, उसके पास इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, मैं कई वर्षों से 9वीं रैंक में डूबा हुआ हूँ। मेरा इंतजार करो। झाओ बुजियांग ने कुछ देर सोचा, जल्दी से घर से बाहर भागा, लकड़ी का प्रशिक्षण डमी लाया और ली युनरुई से कहा, इसे आजमाएं पूरी शक्ति से। ली युनरुई ने धीरे धीरे तथाकथित आंतरिक शक्ति के प्रवाह को महसूस किया और फिर हथेली से प्रहार किया और लकड़ी का पुतला जमीन पर गिर गया। लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और उसका केवल आधा शरीर बचा। झाओ बुजियांग ने हौंफते हुए कहा, यह हथेली कम से कम एक सातवें रैंक के मार्शल कलाकार की ताकत है और यह अभी भी ली युनरुई का मार्शल आर्ट में पहला प्रवेश था। यून जिनशु ने लकड़ी की डमी को देखा जिसका केवल आधा शरीर बचा था और फिर ली युनरुई को देखा, अपना मुंह खोला, बोलने में असमर्थ। उसका दिल पहले से ही सदमे, ईर्ष्या और जलन से भर गया था। लकड़ी का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। ली युनरुई को विश्वास नहीं हुआ, क्या यह उसकी हथेली की शक्ति थी? वह खुशी से उछल पड़ी और झाओ बुजियांग की बांह पकड़ ली। बुजियांग, क्या तुमने वह देखा? क्या तुमने वह देखा? झाओ बुजियांग ने सिर हिलाया, उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। मैंने देखा, मेरी पत्नी सचमुच अद्भुत है। यून जिनशु भी सदमे से बाहर आ गई और खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन बोली, मैंने तुम्हें कम आंका था। ली युनरुई, आप में ग्रैंड मास्टर बनने की क्षमता है, शायद इतिहास में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने की भी। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी पत्नी आप तीनों बहनों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। झाओ बुजियांग की आंखें चमक उठी। महान जिया राजवंश में वह केवल 3 ग्रैंड मास्टर्स के बारे में जानता था जो उनकी दुर्लभता को उजागर करता है। ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए अवसर और प्रतिभा दोनों अपरिहार्य थे। यहां तक कि सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओ हुआ भी कई वर्षों तक ग्रैंड मास्टर स्तर से पहले ही अटकी रही, जबकि कई लोग अपने पूरे जीवन में इस सीमा को पार करने में असमर्थ रहते हैं। यून जिनशु ने झाओ बुजियांग की ओर देखा और झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों ने उसे असहज कर दिया। उसने हल्के से कहा, अच्छी तरह से खेती करो, और फिर जाने के लिए मुड़ गई। झाओ बुजियांग को यून जिनशु के जाने की परवाह नहीं थी। उसे याद आया कि मूल कहानी में ली युनरुई का पालन पोषण ली जा युआन ने किया था, लेकिन अब जब ली युनरुई उसकी पत्नी बन गई थी और उसके साथ खड़ी थी तो संदिग्ध ली जा युआन के लिए उसे फिर से पूरे दिल से पालना असंभव था। ऐसा माना जा सकता है कि ली युनरुई ने ग्रैंड मास्टर ली जा युआन के कारण उनसे व्यक्तिगत रूप से पोषित होने का अवसर खो दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह उसका पालन पोषण करने का अपना तरीका ढूंढ सकता था। अभी अभी उसने ली युनरुई के शरीर में यिन शीत की शक्ति को महसूस किया। अगर वह कोई ऐसी मार्शल आर्ट खोज पाता जो इससे मेल खाती हो तो यह निश्चित रूप से ली युनरुई के विकास को गति प्रदान करेगी। यिन शीत, झाओ बुजियांग का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उसे दाओ संप्रदाय के नेता शी युहिंग की याद आई, जिन्होंने एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र के साथ ग्रैंड मास्टर स्तर में प्रवेश किया था और 3 ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे। अब चूंकि शी युहिंग प्रकट नहीं हुआ था और उसका ठिकाना निश्चित था, इसलिए उसके लिए उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन यून जिनशु एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र को जानता था। शी युहिंग ने यून जिनशु को पोषित करने के लिए उसके लिए दुनिया की सभी मार्शल आर्ट की प्रतियां एकत्र करने की कोशिश की थी। उसे यून जिनशु से एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र प्राप्त करने का रास्ता खोजना था। मन में एक विचार रखते हुए झाओ बुजियांग ने ली युनरुई को निर्देश दिया कि वह अच्छी तरह से साधना करे और यून जिनशु का पीछा करने से पहले अपनी मार्शल आर्ट की दुनिया को मजबूत करे। वह विन को जोड़ने वाले गलियारे के साथ साथ चला और उसने अपने पिता की आकृति को कुछ ही दूरी पर देखा, जिसके साथ बूढ़ा बटलर झाओ मनफू भी था। पिता, झाओ टिंगशियाओ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सिर हिलाया, उसका चेहरा सख्त था। अपने कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करें, अपना समय बर्बाद न करें। झाओ बुजियांग ने जवाब दिया, लेकिन उसके पास अब कोई खाली समय नहीं था। वह जल्दी से गलियारे के साथ उस दिशा में चला गया जहां यून जिनशु गायब हो गया था। झाओ टिंगजियाओ ने आह भरी। बूढ़े बटलर ने देखा कि उसके मालिक के मन में कुछ चल रहा है और उसने पूछा, मास्टर, क्या मनफू को युवा मास्टर की रक्षा करनी चाहिए? पहरेदारी बेकार है। झाओ टिंगशियाओ की तलवार जैसी भौहें गहरी से कुड़ गईं। तुम जाओ और कैंगलांग तथा अन्य लोगों को वापस आने के लिए कहो। बूढ़े बटले की वृद्ध आंखें कांप उठी और उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। गुरु ने गुप्त रूप से 3 महान सेनापतियों कैंगलांग, चिंग और मोडियाओ को प्रशिक्षित किया था, जिनके बारे में बाहरी लोगों को कभी पता नहीं चला। उन्होंने उत्तरी सीमा पर विदेशी दुश्मनों से बचाव में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो, गुरु उनका इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। अब वह वास्तव में कैंगलांग और अन्य लोगों को वापस लाने वाला था। अरे, एक मिनट रुको। झाओ बुजियांग ने यून जिनशु को पकड़ लिया। यून जिनशु ने चलना नहीं रोका। तुम फिर क्या चाहते हो? झाओ बुजियांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया और बर्खास्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यून जिनशु अभी भी झाओ बुजियांग के विचारों से परेशान था। वह क्रोधित और नाराज दोनों महसूस कर रहा था। झाओ बुजियांग मुस्कुराए, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके अलावा हम जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे, एक ही घर में रहेंगे। बस इतना बताओ कि तुम और क्या जानना चाहते हो? यून जिनशु ने सीधे मुद्दे पर बात की। झाओ बुजियांग की मुस्कान ने उसे महसूस कराया कि वह कुछ गलत करने की फिराक में था। झाओ बुजियांग जरूर कुछ पाना चाहता होगा। क्या ये कोई चाल थी या चोरी? लेकिन झाओ बुजियांग की मुस्कुराहट ने भी उसके मूड को थोड़ा हल्का कर दिया और वह अपने दिल में खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था कि झाओ बुजियांग अभी भी उसका महत्व जानता था। झाओ बुजियांग ने अपनी आवाज धीमी की, एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र। हम, यून जिनशु दंग और आश्चर्यचकित था। तुम्हें एक्सट्रीम यिन हॉट सूत्र के बारे में कैसे पता? यहां तक कि मेरी छोटी बहनें भी इसके बारे में नहीं जानती होंगी। इस बात की परवाह मत करो कि मुझे कैसे पता है, मेरे पास और भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। झाओ बुजियांग ने यून जिनशु को धक्का दिया। हम सब एक ही पक्ष में हैं, क्या आप इसे देंगे या नहीं? अब हम एक ही तरफ हैं। यून जिनशु ने व्यंग्य करते हुए अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। वह इसे देना नहीं चाहती थी, या यूं कहें कि वह इसे झाओ बुजियांग को इतनी आसानी से नहीं देना चाहती थी। झाओ बुजियांग ने तुरंत कहा, आप झाओ बुजियांग की महिला हैं, आप एक ही पक्ष में नहीं तो और क्या है? एक आदमी का चेहरा। यून जिनशु का कमरा कई पुरानी किताबों से भरा हुआ था और मेज पर कई स्याही से बनी पेंटिंग्स थीं। उसने लापरवाही से एक पुरानी किताब उठाई, उसे पलटा, एक तरफ फेंका और फिर कागज को चिकना करने के लिए एक पेपरवेट उठाया। मेरे लिए स्याही पीसो। झाओ बुजियांग ने स्याही पीसने के लिए आगे बढ़कर प्रशंसा की। आपकी सुलेख कला आपकी तरह ही सुंदर है। ओह, मेरे कंधे में दर्द है, यून जिनशु कुर्सी पर बैठते हुए जानबूझकर बोला। झाओ बुजियांग मुस्कुराया और धीरे से यून जिनशु के कंधों की मालिश करके उसके दर्द को दूर किया। यून जिनशु थोड़ा आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। उसने अपने पैरों पर जोर से प्रहार किया। मैं अभी ली यूनरुई के कमरे में गया था और इतनी दूर तक चला आया। मेरे पैर और पंजे दर्द कर रहे हैं, मैं अपने पैर धोना चाहता हूँ। तुम जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ, ये धोने और आराम करने का समय है। झाओ बुजियांग पैर धोने का पानी लाने वाला था। यून जिनशु सिर्फ झाओ बुजियांग का परीक्षण कर रही थी और उसे शर्मिंदा कर रही थी। ये देखकर वह और भी क्रोधित हो गई। क्या आप वास्तव में ली यूनरुई के लिए इतना कुछ करने को तैयार हैं? झाओ बुजियांग उदासीनता से मुस्कुराया। एक महान आदमी झुक सकता है और खींच सकता है, किस तरह का आदमी थोड़ी सी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकता? इसके अलावा अपनी औरत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी शिकायत वाली बात नहीं है। ये सुनकर यून जिनशु ने अपने दिल में आह भरी। वह ली यूनरुई से और अधिक ईर्ष्या करने लगी, जिसके पास इतनी बेहतरीन मार्शल आर्ट प्रतिभा थी और उसके पास झाओ बुजियांग भी था। लेकिन अगर ली यूनरुई इसी तरह आगे बढ़ती रही तो झाओ बुजियांग के दिल में उसकी जगह और भी ऊंची होती जाएगी। क्या भविष्य में उसकी तीन बहनों के लिए भी जगह होगी? यून जिनशु ने गहरी आवाज में कहा। तो अगर यह मेरे लिए है यून जिनशु, तो आप क्या करने को तैयार हैं? झाओ बुजियांग ने अपनी छाती की मांसपेशियों को जोर से थपथपाया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मुझे बताओ। सब ठीक है, यून जिनशु के चेहरे पर चंचल भाव था। हाँ, झाओ बुजियांग ने गंभीर होकर सिर हिलाया। यून जिनशु ने झाओ बुजियांग को कुर्सी पर दबाने का मौका लिया, फिर झाओ बुजियांग की गोद में बैठ गई। उसके पतले हाथ झाओ बुजियांग की गर्दन के चारों ओर लटके हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखें कांप रही थीं, जो आकर्षण और उत्तेजना से भरी हुई थीं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, अपना शरीर दे दो। यून जिनशु झाओ बुजियांग के ऊपर बैठी थी, उसकी आवाज प्रलोभन और उत्तेजना से भरी थी, उसकी आंखें उसकी ओर टिकी हुई थीं। झाओ बुजियांग, क्या तुम्हारे हाथों का भी एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है? ये देखकर कि झाओ बुजियांग हिल नहीं रहा था, यून जिनशु ने अपना सिर झुकाया और उनके चेहरों को करीब लाया, इतना करीब कि वे एक दूसरे की बढ़ती हुई भारी सांसों को महसूस कर सकते थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हाथ कहाँ रखना है? झाओ बुजियांग ने एक मासूम कुंवारी की तरह व्यवहार किया और अजीब तरीके से यून जिनशु की कमर पर अपने हाथ रखे। यून जिनशु छोटी सी थी, फिर भी उसके शरीर के कर्व्स बहुत खूबसूरत थे। उसकी कमर पतली थी और झाओ बुजियांग नीचे बढ़ती हुई अतिरंजित और चुलबुली सनसनी को महसूस कर सकता था। मुझे गुस्सा दिलाने के अलावा तुम्हारा मुंह और क्या कर सकता है? यून जिनशु की नजरें झाओ बुजियांग के होठों और आंखों के बीच घूम रही थीं, उसके उत्तेजक स्वर में छेड़खानी का रंग था। वह धीरे से झुकी और उसे चूमा, उसके कष्टप्रद मुंह को बंद कर दिया। उनकी सांसें टकराईं और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी, उसके गाल तुरंत लाल हो गए। लेकिन झाओ बुजियांग की प्रतिक्रिया के कारण उसके लिए अपने होंठ अलग करना असंभव हो गया। अगर आप बाघ की मांद में नहीं घुसेंगे तो आप बाघ के बच्चों को कैसे पकड़ पाएंगे? क्या यह मेरा शरीर बेचना नहीं है? मैं बस इसे सहन कर लूंगा। अचानक उसने झाओ बुजियांग की वीर और धार्मिक आंतरिक आवाज सुनी। उसका शरीर उसके साथ था, लेकिन उसका दिल बहुत ईमानदार था। वह अपने अंदर बढ़ते आक्रोश और गुस्से को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। वह पहले ही खुद को पेश करने की हद तक जा चुकी थी, फिर भी यह कमीना फायदा उठा रहा था और दुखी व्यवहार कर रहा था। क्या वह वाकई इतना दुखी था? इससे उसे क्या हुआ यून जिनशु? उसने झाओ बुजियांग को धक्का दिया और गुस्से से डांटा। भाड़ में जाओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी तक कार में भी नहीं बैठा हूँ। झाओ बुजियांग हैरान था। उसने अपनी पैंट ऊपर खींची और सूखी खांसी में बोला, ऐसा लगता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने शरीर को जैद की तरह संजोता है। यून जिनशु अवाक रह गई। उसे झाओ बुजियांग के अपने शरीर को जैद की तरह संजोने का कोई संकेत नहीं मिला। उसने पहले ही अपनी सभी छोटी बहनों को नुकसान पहुंचाया था, फिर भी उसने अपने शरीर को जैद की तरह संजोने का दावा किया। यदि आप चरम यिन हृदय सूत्र जानना चाहते हैं तो आपको मेरी एक विनती माननी होगी। यून जिनशु के सुंदर चेहरे पर अभी भी लाली छाई हुई थी और उसने ठंडे चेहरे से कहा, जहां तक बात है, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। झाओ बुजियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जब तक मैं अपने आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक सब कुछ ठीक है। वह काफी वफादार और धर्मी है। यून जिनशु ने झाओ बुजियांग को एक नई रोशनी में देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत नर्म हो गई। मैं जाकर ली यूनरुई को चरम यिन हृदय सूत्र सिखाऊंगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि ली यूनरुई इसे साधना कर सकते हैं या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंपीरियल पैलेस। ली ज़ायुआन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे लॉन्गज़ान की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है, तुम इतनी छोटी सी चीज भी नहीं संभाल सकते। ये व्यक्ति अपनी गलती जानता है। लॉन्गज़ान ने अपना सिर नीचे कर लिया। उत्तरी सीमा की सैन्य शक्ति, मैं इसे पहले वापस ले लूंगा। ली ज़ायुआन की आंखें चमक उठी। तुम्हें अभी भी संयमित रहने की आवश्यकता है। किसी और विषय पर बात करने से पहले अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान दो। लॉन्गज़ान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपनी मुट्ठी बांधकर बोला, यह विषय आज्ञा का पालन करता है। लॉन्गज़ान का सिर और भी नीचे झुका हुआ था, लगभग शाही महल की ठंडी जमीन को छू रहा था। भले ही उसे एहसास होने में देर हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि ली ज़ायुआन हमेशा से उसका इस्तेमाल कर रहा था। ली ज़ायुआन वास्तव में सैन्य शक्ति को खुद वापस लेना चाहता था, लेकिन इसे सीधे वापस लेना आसान नहीं था और उसे और अधिक कारणों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए सैन्य शक्ति अपने हाथों में रख ली। इस समय के दौरान ली ज़ायुआन का महत्व झाओ हुज़ियांग से निपटने और झेनबेई के राजकुमार को दबाने के लिए उसे मोहरे के रूप में उपयोग करने के बारे में अधिक था। अपनी स्वयं की शक्ति ही एकमात्र सच्ची शक्ति है। क्या सम्राट, क्या वरिष्ठ बहन, वे सभी बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे लॉन्गज़ान को एक मोहरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह लॉन्गज़ान हमेशा से मानता आया है कि वह दूसरों से कमजोर नहीं है, तो क्यों ना वह खुद ही मास्टर बन जाए। लॉन्गज़ान की आंखें और भी दृढ़ हो गईं। वह उन सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहता था जिनका वह उपयोग कर सकता था, बजाय इसके कि दूसरे उसका उपयोग करें। वह भी ली ज़ायुआन के साथ आज्ञाकारिता का दिखावा करेगा। वह नए सिरे से शुरुआत करेगा। उसके पास अभी भी सबसे बड़ी राजकुमारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए चिप्स थे, जिनका उपयोग वह बेहतर पैर जमाने में कर सकता था। उसने अपने घोड़े को तेज किया और सतर्कतापूर्वक सर पर दौड़ने लगा, जब तक कि वह सबसे बड़ी राजकुमारी के भवन के पास नहीं पहुंच गया, जहां वह घोड़े से उतर गया। कृपया घोषणा करें कि लॉन्गज़ान आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहा है। गेट पर खड़े पहरेदारों ने लॉन्गज़ान को ठंडी निगाहों से देखा। वे सबसे बड़ी राजकुमारी के वफादार सेवक थे और दूसरों को नहीं पहचानते थे। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं मिली थी कि लॉन्गज़ान आ रहा है। लॉन्गज़ान सबसे बड़ी राजकुमारी के गुट का दरबारी नहीं था। कौन नहीं जानता था कि लॉन्गज़ान सम्राट का मूल्यवान व्यक्ति था। कृपया चले जाए, गार्ड उदासीन था। लॉन्गज़ान की स्थिति चाहे जो भी हो, उनके लिए उनसे आगे निकल पाना असंभव था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके पास ऐसा करने की ताकत है। लॉन्गज़ान अनिच्छुक था। जब सबसे बड़ी राजकुमारी उसे पहले भर्ती करना चाहती थी, तो ये गार्ड ऐसे नहीं थे। उसने असहाय होने का नाटक किया, अपनी मुट्ठी बांधी, अपने घोड़े पर वापस चढ़ा और चला गया। फिर उसने अपना घोड़ा एक सुनसान जगह पर रोक दिया। वह चुपचाप सबसे बड़ी राजकुमारी की हवेली की बाहरी दीवार के पास आया, अपने हल्केपन के कौशल का इस्तेमाल किया, ऊंची बाहरी दीवार पर चढ़ गया और हवेली में हल्के से उतरा। वह परिचित भाव से बड़ी राजकुमारी के कमरे की ओर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक देने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे की दरार से आती हुई सुगंधित हवा की गंध महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरार के माध्यम से उसकी आंखें दृश्य पर टिकी हुई थीं। उसने कमरे में स्क्रीन पर लटके हुए एक खूबसूरत आंतरिक वस्त्र को अस्पष्ट रूप से देखा। स्क्रीन के दूसरी तरफ वह स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी राजकुमारी की सुंदर आकृति को देख सकता था। वह बहुत ही उपयुक्त समय पर पहुंचा था। सबसे बड़ी राजकुमारी वास्तव में स्नान कर रही थी। बिल्कुल सुडौल, आत्मा को झकझोर देने वाला सुंदर सिलहूट। लॉन्गज़ान ने दस्तक नहीं दी। उसने कमरे के अंदर धुंधली आकृति को देखा, वह आकृति जो धुंधली होने के बावजूद भी सुंदर थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि राजकुमारी अपने सामान्य ढीले वस्त्रों के नीचे कितनी सुडौल और सुडौल थी। यदि वह राजकुमारी जैसी आकर्षक महिला को जीत सकता है, तो उसके पास सैन्य शक्ति और संबंध दोनों होंगे, साथ ही बिस्तर में मादक आनंद भी होगा। लेकिन उसकी कल्पनाएं और जलती हुई निगाहें तुरंत ही ठंडे पानी के वाष्प के कारण भंग हो गईं। पानी की भाप दरवाजे की दरारों से रिसकर बाहर निकली, जिसमें अपार शक्ति थी। वह चौंक गया और एक तरफ हट गया, लेकिन अभी भी कुछ जल वाष्प उसके शरीर पर लगी हुई थी और उसके कपड़ों के नीचे की त्वचा में तेज दर्द हुआ। ये है, लॉन्गज़ान की भौहें अचानक फड़क उठी। क्या ये राजकुमारी की शक्ति थी? इतनी शक्तिशाली राजकुमारी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? बचे हुए जल वाष्प से दरवाजा चतुराई से खुल गया और ली झाओ हुआ अपने पैरों को पार करके स्नान वस्त्र पहने हुए कुर्सी पर बैठ गई, लॉन्गज़ान को ठंडी नजर से देखते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस राजकुमारी को नहाते हुए देखने की हिम्मत की? लॉन्गज़ान ने ली झाओ हुआ की गीली जैद जैसी टांगों से अपनी नजर हटा ली। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और समझाया, राजकुमारी, मैं लॉन्गज़ान आत्मसमर्पण करने आया हूँ, लेकिन आखिरकार मैं बाहरी तौर पर सम्राट का आदमी हूँ। छिपे हुए इरादों वाले लोगों की नजरों से बचने के लिए मुझे यहां आने के लिए दीवार फांदनी पड़ी। दुर्भाग्य से मैं आपको नहाते हुए देख लिया। क्या ऐसा है? ली झाओहुआ ने अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस करके भारी दृश्य का समर्थन किया। जो व्यक्ति महान कार्य करता है वह तुच्छ मामलों में नहीं उलझता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लॉन्ग जान उसे नहाते हुए देख रहा है। उसने केवल ये सवाल किया कि लॉन्ग जान आत्मसमर्पण करने क्यों आया? तुमने अचानक मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में क्यों सोचा? लॉन्ग जान ने धीमी आवाज में सच कहा। ईमानदारी से कहूं तो ली झाओहुआ की मेरे प्रति प्रशंसा केवल इसलिए है क्योंकि उसने हमेशा मुझे झेनबेई वांग वंश से निपटने के लिए एक मोहरे के रूप में देखा है। मैं निराश हूं। एक बुद्धिमान पक्षी बैठने के लिए एक पेड़ चुनता है। ली झाओहुआ की आंखें गहरी थी और वह अपने दिल में व्यंग्य कर रही थी। लॉन्ग जान मूल रूप से एक मोहरा था और मोहरा एक मोहरा है। ली झाओहुआ द्वारा मोहरे का उपयोग करने में क्या गलत है? क्या मोहरा स्वयं भी यह नहीं जानता और फिर भी निराश है? लॉन्ग जान के पास केवल महत्वाकांक्षा है और वह मोहरा नहीं बनना चाहता, तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। ली झाओहुआ ने व्यंग्य किया। आप मोहरा नहीं बनना चाहते तो क्या आप मालिक बनना चाहते हैं? आज तू मेरे सामने आत्मसमर्पण कर रहा है, क्या एक दिन तू भी मेरे सिर पर सवार होना चाहता है? लॉन्ग जान के विचार स्पष्ट हो गए और उसकी आवाज भी ठंडी हो गई। राजकुमारी, आप नहीं चाहती कि सम्राट को शहर के बाहर आपकी सैन्य तैनाती के बारे में पता चले, है ना? लिंग किंगसु ने उसे धोखा देने से पहले उसे बताया था कि ली झाओहुआ गुप्त रूप से शहर के बाहर एक छोटे से गांव में सेना तैनात कर रहा है। पूर्व लिंग किंगसु को झाओ गुजियांग द्वारा मोहित नहीं किया गया था, इसलिए उसने निश्चित रूप से उससे झूठ नहीं बोला। उसने हमेशा इस मामले को याद रखा था और ली झाओहुआ को नियंत्रित करने के लिए इसे सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल किया था। जब ली झाओहुआ ने यह सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। विश्वास करो या न करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। बेशक मुझे विश्वास है कि राजकुमारी आप में ये ताकत है, लॉन्ग जान ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन अगर मैं राजकुमारी की हवेली से बाहर नहीं निकल पाया तो मेरे अधीनस्थ आपके मामलों को सार्वजनिक कर देंगे। ली झाओहुआ ने नागभान से कुढ़ी और लॉन्ग जान के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई, लेकिन लॉन्ग जान ने उसे धमकी दी। उसी समय हवेली के बाहर वह गार्ड जिसने पहले लॉन्ग जान को ठंडे दिमाग से भगा दिया था अब चापलूसी से भर गया था, अपनी मुट्ठी बांधकर अपने सामने खड़े सुंदर युवक को सलाम कर रहा था। महाराज, राजकुमार, धन्यवाद, धन्यवाद। झाओ गुजियांग ने उन्हें दो पैसे के बैग सौंपे। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, पहरेदारों ने तुरंत मना कर दिया। झाओ गुजियांग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसे राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया था और वह राजकुमारी की हवेली में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। मौसम ठंडा हो रहा है, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ शराब खरीदने के लिए पैसे ले लो ताकि तुम हवेली की बेहतर सुरक्षा कर सको। झाओ गुजियांग ने पैसे के बैग गार्ड के हाथों में थमा दिए और फिर हवेली की ओर चल दिया। पहरेदार आभारी थे। अधीनस्थों के रूप में उन्होंने सुना था कि झाओ शिजी ने एक तलवारबाज को जबरन बचाया था जिसने कार्य करते समय गलती की थी। झाओ शिजी अपने अधीनस्थों की परवाह करता था और दयालु था। झाओ गुजियांग के मन में कुछ छुपी हुई चिंताएं थीं। वह राजकुमारी के महल में फिर से इसलिए आया था क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट की दुनिया 5वीं रैंक तक पहुंच गई थी। 5वीं रैंक तक पहुंचना अच्छी बात थी, लेकिन ये 5वीं रैंक बहुत जल्दी आ गई और यह उसकी अपनी साधना से संबंधित नहीं थी। इसके बजाय उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपनी शक्ति उसमें डाल दी थी। यदि उन्हें ये चिंता न होती कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे और इससे उनकी मार्शल आर्ट की नींव को नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसा लगता था कि उनके पिता और भी अधिक मदद करते, और यह व्यवहार उनके पिता की मार्शल आर्ट की नींव के लिए हानिकारक था। इससे उसे बुरा लगा। उसके पिता बहुत चिंतित लग रहे थे, उसे बड़ा होते देखना चाहते थे। कोई बड़ी घटना होने वाली थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसके पिता ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके पिता ने सोचा होगा कि समय सही नहीं है और वे अभी उसे नहीं बता सकते। लेकिन उसे अपनी तैयारी स्वयं करनी थी और ली झाओहुआ का विद्रोह निस्संदेह उसके सहायकों में से एक था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अनजाने में ली झाओहुआ के कमरे से ज्यादा दूर नहीं चला गया। इस समय ली झाओहुआ को नहाना चाहिए, है ना? ली झाओहुआ हर दिन लगभग उसी समय नहाता हुआ दिखाई दिया जैसे पिछली बार नहाया था। झाओ गुजियांग कमरे के दरवाजे पर चला गया और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लॉन्ग जान ली झाओहुआ के कमरे में क्यों था? लॉन्ग जान और ली झाओहुआ ने भी झाओ गुजियांग को देखा। लॉन्ग जान दंग रह गया। झाओ गुजियांग अंदर कैसे आया? वह उसकी तरह दीवार पर नहीं चढ़ सकता था, है न? लेकिन रास्ता गलत था, ये स्पष्ट रूप से मुख्य प्रवेश द्वार से आ रहा था। गार्ड झाओ गुजियांग को कैसे अंदर आने दे सकते थे? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। झाओ बुजियांग मुस्कुराया, उसकी मुस्कान चंचल थी। जनरल लांग, आप यहां राजकुमारी को नहाते हुए देखने के लिए भी नहीं आए होंगे, है ना?